شکریہ بھائی آرمن، خداوند آپ کو برکت دے۔ دوستو صبح خیر، آج صبح پھر یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ غیر متوقع طور پر آ گیا ہوں اور یقیناً جماعت بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہے۔ میں ایسے ہی پڑھے جا رہا تھا اور شکریہ بہن کہ خداوند نے کوئی بات میرے دل میں ڈالی جو مجھے کلیسیا کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور میں نے سوچا کہ اسے بیان کرنے کا یہی وقت ہے۔ اور اب جب میں پہنچا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ اس اتوار ہم یہاں ہوں گے، بہرحال میں نے یہاں پہنچ کر اعلان کر دیا کہ کلیسیا کے لیے میرے پاس ایک پیغام ہے، اور اگر خدا کی مرضی ہوئی تو میں اس پیغام کو اگلے اتوار پیش کروں گا۔ وہ بہت طویل وقت لینے والا پیغام ہے، اس طرح یہ غالباً 12:30 بجے تک ختم نہیں ہوگا، یہ شاید 1 ہی بج جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ یہ بات کافی عرصہ سے میرے دل میں تھی کہ میں لوگوں کو بتانے کا ذمہ دار ہوں کہ اب میں سرے میدان کام کرنے میں ہوشیار کیوں نہیں رہا۔ میں نے ہر جگہ اس کی منادی کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بات ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ اسے کہاں ہونا چاہیے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو اگلے اتوار وقت لوں گا اور اس کے اسباب سامنے لاؤں گا اور کلام مقدس میں سے آپ کو دکھاؤں گا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ سمجھے، یہ سب کچھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد شاید میں کسی دوسری جگہ غالباً بیرون ملک چلا جاؤں۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ خدا کس طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ آخری 2 راتیں یا 3 راتیں پہلے مجھے تقریباً آدھی رات کے وقت ایک فون کال موصول ہوئی اور ایک عورت کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا جو کہ ہسپتال میں پڑی تھی، اور انہوں نے مجھے فون پر دعا کرنے کے لیے کہا۔ میں بھول گیا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیا نام بتایا تھا، جو کہ وہ بیمار عورت مسز جیمز بیل کی سہیلی تھی جو کہ ہماری کلیسیا کی بڑی وفادار اور اچھی سیاہ فام بہن ہے، بہت ہی اچھی خاتون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے مجھے شیفرڈ نام بتایا تھا۔ بس میں بستر سے اٹھ گیا اور گھٹنوں کے بل جھک گیا اور میں نے اپنی بیوی کو بتایا۔ فون کی گھنٹی کی آواز سے وہ بھی بیدار ہو گئی تھی اور میں نے کہا ہمیں شیفرڈ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ شیفرڈ مسز جیمز بیل کی سہیلی ہے جس کا فون آیا ہے۔ بس ہم اس کے لیے دعا کر کے پھر بستر پر لیٹ گئے، لیکن اگلے روز 10 یا 11 بجے مجھے ایک اور کال موصول ہوئی۔ یہ کال بلی کی تھی اور اس نے بتایا مسز شیفرڈ نہیں تھی بلکہ مسز بیل خود تھی، نہ کہ مسز بیل کی دوست تھی بلکہ یہ مسز بیل ہی تھی۔ وہ ہسپتال میں تھی بہت ہی زیادہ نازک حالت میں، اور ہم ہسپتال کی طرف بھاگے لیکن وہ ختم ہو چکی تھی۔ خداون نے مسز بیل کو ان کے گھر بلا لیا تھا۔ مسز بیل کئی سالوں سے کلیسیا میں ایک وفادار ساتھی رہی تھی۔ ان کا خاوند جیمز اور میں بہت سال پہلے میرے والد کے ہمراہ کام کیا کرتے تھے۔ باہر جاتے ہوئے میرا خیال ہے 30 یا اس سے زیادہ سال پہلے ہم پینسلوانیا سے کولگٹس میں سامان لایا کرتے تھے۔ ہم بہن بیل کو بہت چاہتے تھے، وہ بڑی عظیم شخصیت تھی۔ مجھے علم ہے کہ انہیں پتے کی بڑی تکلیف تھی، اور وہ ان کا معالج جو معاملہ کی نزاکت کو پوری طرح سمجھتا تھا، اس وقت وہ شہر سے باہر تھا اور ایک نیا معالج اسے دیکھنے کے لیے آیا اور ہنگامی آپریشن تجویز کیا، لیکن وہ زندہ نہ رہ سکی۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں اس کا میں اسے اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا مستقل معالج موجود ہوتا تو آپریشن کا کبھی بھی تجویز نہ کرتا، کیونکہ وہ باری وجود کی تھی اور ان کے پتے میں خرابی تھی اور پتھریاں بھی موجود تھیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ اور بھی خرابیاں تھیں اور خداوند ان پر رحم کرتا تھا۔ ان پر پہلے بھی کئی بار اس تکلیف کا حملہ ہو چکا تھا اور ہر بار خداوند نے ان کو اس تکلیف سے خلاصی بخشی تھی، لیکن یہ شاید اسی طرح ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بات کو پوری طرح تول کر لائیں تو یہی کہیں گے کہ خدا نے بہن بیل کو بلا لیا ہے اور اس کا یہی طریقہ کار ہے، آپ سمجھ گئے؟ اور یہ کس طرح بھول ہوئی؟ میرا خیال تھا وہ مس شیفرڈ تھی، میں مس شیفرڈ کو نہیں جانتا تھا۔ وہ خاتون اس وقت یہاں موجود ہو سکتی ہے، اور اگر میں ان کو روبرو دیکھوں तो शायद पहचान लूं, लेकिन मुझे यही कहा गया था कि वो मिसिज शेफर्ड थी और उस वक्त बस इसी तरह हुआ था। और इस तरह अगर मुझे इलम होता कि मिसिज बेल ऐसी हालत में है तो शायद मैं खुद उसके पास चला जाता, शिफायत करता। और फिर देखें, जैसा कि शायद खुदा ही ना चाहता था कि ऐसा किया जाए, इस तरह हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और मुझे यकीन है बहन बेल खुदावन से मोहब्बत करती थी, वो बहुत अच्छी खातून थी। अब वो हम में से एक थी। हमारे दरमियान रंगो नस्ल की तकसीम नहीं है, खुदा के खानदान में रंगो नस्ल का इम्तियाज नहीं है। ख्वाह हमारा रंग सफेद, सुर्ख, बूरा, काला या पीला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मसीही हैं और बहन भाई हैं। और इस तरह हम उस बहन से मोहब्बत करते थे और इस टैबरनेकल में उसकी कमी महसूस करेंगे। मुझे बहुत कमी महसूस होगी कि बहन बेल कैसे कोने में बैठी और अपने बारी बुलंद आवाज में आमीन कहा करती थी, और जब वो अपने घर जाती तो वो खुदावंद यीशु की बातें किया करती थी। और अगर मैं ठीक तौर पर समझता हूँ, लेकिन चंद लम्हे पहले तक मुझे इलम ना था, लेकिन मैं समझता हूँ उनके जनाजे की इबादत इस चर्च में होगी आने वाले मंगल को 1 बजे, और मैं समझता हूँ मैं और आप तमाम इसमें शिरकत करेंगे, इस जनाजे की इबादत में। लेकिन आज सुबह हमारी जमात बहन बेल के मौजूद ना होने के बायस एक शख्स की कदर के बराबर कमजोर हो गई है। आइए चंद लम्हों के लिए बहन बेल की याद में अपने पांव पर खड़े होकर अपने सरों को झुकाते हैं।
गॉड ऑफ लाइफ,
जिंदगी के खुदा, तू जो जिंदगी का देने वाला और लेने वाला है, जैसे कि बहुत पहले अय्यूब ने कहा था, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। चंद साल पहले तूने बहन बेल को भेजा हमारे दरमियान ताकि खुदा की अजीम दौलते मुश्तरका में हमारे साथ एक शहरी बने। हम हर रूहानी जोशो जज्बे के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो उनके गीत गाने और गवाही सुनाने से हमें हासिल होता था। वो रूह में इस कदर भर जाती थी के बुलंद आवाज से ललकारने लगती, और वो यीशु मसीह की अंजील से शर्माती ना थी, क्योंकि उनकी नजर में निजात के लिए खुदा की कुदरत थी। जब हम देख रहे हैं कि उनके बरसों का शुमार पूरा हो गया, तो वो वक्त आ रहा है जब हम सबको भी जवाब देना पड़ेगा। आज सुबह तू इसे हमारे दरमियान से अपनी हजूरी में ले गया है, क्योंकि दर हकीकत जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं तो तेरी हजूरी में पहुँच जाते हैं। ऐ खुदावंद, हम सब के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हमारी दुआ है कि तू उसके खावन मेरे दोस्त जेम्स को और उसके बेटे और बेटियों को बरकत दे, उन तमाम को बरकत दे। हम जानते हैं कि उसका बेटा जो फौज में है, जर्मनी से हवाई जहाज के जरिए घर वापस आ रहा है, ताकि अपनी मरहूम वालदा के लिए इस जमीन पर आखिरी अदाब पेश कर सके। उस नौजवान का दिल आज सुबह किस कदर फड़क रहा होगा। खुदावन, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन तू उसे बरकत दे, जिमी को बरकत दे, और वो जो अपने खानदान की कफालत के लिए कई कई घंटे थका देने वाला काम करता है, मेरी दुआ है अजीम खानदान बिखरने ना पाए, बल्कि दूसरी तरफ की सरजमीन में भी खानदान का पहिया गैर शिकस्ता रहे। बख्श दे खुदावंद कि अब हम अपने रूहानी हथियार और कमरबंद को कस लें और कुछ ज्यादा अपनी कमर कस लें और दुश्मन के साथ लड़ने को निकल खड़े हों, क्योंकि पिछले हफ्ते की निस्बत हमारे पास वक्त कम रह गया है। हम दुआ करते हैं कि जब हम आगे बढ़ें तो तू हमारी मदद और हमायत करे, और शायद किसी रोज हम एक बार फिर दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। हम ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
Now may the soul of our departed sister rest in peace.
अब हमारी मरहूम बहन की रूह अमन और सलामती में रहे। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बहन के जनाजे की इबादत इतवार के रोज या मंगल को यहाँ होगी, और हम चाहेंगे हर शख्स जो आ सकता है हम उसे खुश आमदीद कहना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि भाई नेवल ने सारा इंतजाम कर लिया होगा और आप भी उनमें होंगे। अब आज देखें, आज यहाँ इतने ज्यादा लोग नहीं, बस अगर कोई कुर्सी खाली हो तो भाई स्लॉटर और बहन स्लॉटर के लिए ले जाएं। मुझे आपकी कॉल मौसूल हुई थी बहन स्लॉटर, और मैंने दूसरी बहन स्लॉटर, बहन जेन स्लॉटर के लिए दुआ की थी, जिसे टिप्पे खरगोश था। वो बुरी तरह से बीमारी में मुब्तला थी, लेकिन हम खुदा पर भरोसा करते हैं कि वो ठीक हो गई होगी। अब हम कलाम मुकद्दस में से कुछ पढ़ना चाहते हैं, और आज मैं अपने वक्त को तालीमी पैगाम पर सर्फ करूंगा, क्योंकि जब से मैं एरिजोना से वापस आया हूं, ठीक उस वक्त से मेरा गला खराब है। और अब अगले इतवार को फरामोश ना करना, और मेरा ख्याल है कि बिली ने पहले ही इश्तहारात बांट दिए होंगे। हम यकीन करते हैं कि ये बहुत तवील इबादत होगी, इसलिए जहाँ तक हो सके जल्दी आने की कोशिश करना। मैं 9:30 या मेरा मतलब है 10 बजे तक शुरू करना चाहता हूँ, और शायद याद रखें तकरीबन 1 बजे, शायद 12:30 बजे तक या 1 बजे तक तकरीबन 3 या 4 घंटे का प्रोग्राम होगा या इससे भी ज्यादा। मैं कलाम के हवाला जात लेकर बयान करता जाऊँगा। आप अपने कागज और पेंसिल हमरा लाएं और आप इसे तहरीर करते जाएं, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप पूछना, आप समझना, मैं इसका जवाब भी दूंगा, ताकि हम हर तरह से मदद आपकी कर सकें। आइए पहले अब कलाम मुकद्दस का हिस्सा तलावत करें। मैं बाइबल में से 3 मकामात से पढ़ना चाहता हूँ, और उनमें से पहला, अगर आपके पास पेंसिल है और आप निशान लगाना चाहते हैं, और आज सुबह मैं कलाम मुकद्दस के बहुत से हवाला जात इस्तेमाल करना चाहूँगा, या बहुत सारे हवाला जात, बल्कि मैं उनको पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले पहला पत्रस 5:5-10 है, फिर इफ्सियों 6:10-17, और दानियल 12:1-14। अब हम तलावत पर वक्त सर्फ करें, और अब तकरीबन सब लोग ठीक तरह से बैठ गए हैं। अब सिर्फ चंद ही हैं जो पीछे इस तरफ खड़े हैं। जितनी तेजी से मुमकिन हो मैं इसे मुकम्मल करने और आपको रुख्सत करने की कोशिश करूंगा। फिर हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। आज सुबह एक खातून यहाँ लेटी हुई है जो सख्त बीमार है। मैं समझ गया हूँ कि कल वो बहुत ज्यादा अलील थी, और मैं चाहता हूँ वो आज सुबह का पैगाम सुने, इससे पहले कि मैं उसके लिए दुआ करूँ।
And I know the conditions of the little lady, and she's very sick.
मैं खातून की हालत से आगाह हूँ कि वो नहायत अलील है, लेकिन हमारा आसमानी बाप बहुत अजीम है, तमाम बीमारियों पर फाते है। और मैंने एक मजमून हासिल किया। मैंने मिसिज वुड से पूछा अगर वो इसे पढ़ेंगी, लेकिन उसने इसे पढ़ने से माजरत की। ये मजमून एक तिब्बी डॉक्टर के मुतालिक है, जो कि इलाही शिफा पर तनकीद करने वाला था, यहाँ तक कि वो अपने दफ्तर में किसी को इस मौजू पर बात भी ना करने देता था, और उसकी नर्स भी ऐसा ही करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके पास कैंसर का एक केस आ गया। ये बहुत बड़ा कैंसर था, वो इससे कोई वास्ता ना रखता था, सो उसने इसे एक और क्लिनिक में भेज दिया। इस तरह उन्होंने भी इसे छेड़ना ना चाहा, और मरीजा को वापस उसी के पास भेज दिया। इस तरह वो, और कैंसर पस्तान के ऊपर था और बहुत बुरी हालत में था। उसने तमाम गोश्त को खा लिया था, और कैंसर छाती के नीचे पसलियों तक पहुंच गया था। मेरा ख्याल है कि आप मेरा मतलब समझ गए हैं। नॉर्वे का वो डॉक्टर दोस्त आज सुबह यहाँ मौजूद है। उसने अपने तमाम औजार तैयार कर लिए थे, क्योंकि उसने बताया कि मरीजा चाहती थी कि उसका पस्तान काट दिया जाए। ये बहुत खूनी काम था, और उसने अपना तमाम सामान पास रख लिया, और जो जरूरी चीजें थी नर्स ने मरीजा को तैयार कर लिया और उसे ऑपरेशन रूम में ले आई। फिर वो उन औजारों को भी लेने गई जो पस्तान काटने के लिए डॉक्टर और उसके असिस्टेंट ने इस्तेमाल करने थे। बस उन्होंने उसके ऊपर तौलिए और दीगर अशिया डाल दी, और जब वो ऑपरेशन शुरू करने को थे, जब वो ऑपरेशन शुरू करने लगे, उसका खावन चाहता था कि उसे कमरे के आखिर में बैठकर दुआ करनी दी जाए, और होलीनेस का खादम था, बेड के पास बैठ गया, दुआ करने लगा। बेशक डॉक्टर इससे मुतमिन ना था, आप जानते हैं, और वो वहीं मौजूद भी था, लेकिन जो ही ये दुआ हुई उसे इससे कोई तकलीफ ना हुई। क्यों? मेरा ख्याल था कि सब ठीक था, जिसने उसे नडाल ना किया। सो जब ये दुआ हो रही थी तो कमरे में फड़फड़ाहट हुई, और वो जो डॉक्टर अपने औजारों से मरीजा का पस्तान काटने वाला था, जैसे ही वो पस्तान काटने को बढ़ा, उसके 14 तबक हिल गए, क्योंकि छाती पर कैंसर का दाग तक ना था बल्कि एक धब्बा तक बाकी ना रहा था। उसने कहा, क्या 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 ये टल गया? और हैरान हो गया। उसने नर्स को अपनी गवाही पेश की और वो दोनों बाहर गए और पेंटिकॉस्टल बन गए, रूल कुछ से मामूर हो गए और खुदावंद की खिदमत शुरू कर दी, कोई धब्बा तक बाकी ना रहा। डॉक्टर हॉल ब्रोक ने खुद गवाही सुनाते हुए कहा, एक मिनट पहले वो औरत वहाँ लेटी हुई थी और नर्स भी मौजूद थी और उसके पस्तान में बहुत बड़ा कैंसर मौजूद था, लेकिन एक मिनट बाद कैंसर यूं गायब हो गया कि निशान तक बाकी ना रहा। ये अमेरिका के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक है। उसने बताया कि वो उसी वक्त कायल हो गया और वो अभी एक कलीसिया का डीकन है, समझे? देखें, लोग गिरजाघर को ऐसी जगह समझते हैं जहाँ वो जाकर हो अच्छा इंसान या ऐसी कोई चीज बन सके। अजीजो, ये ऐसे नहीं है। नहीं, खुदा खुदा है और वो आज भी इतना ही अजीम है जितना वो पहले कभी था, और वो हमेशा एक सा रहेगा, और वो है, हम पूरे दिल से उससे मोहब्बत करते रहें। अब हम पहला पत्रस 5:8-10 से 10 तक पढ़ना चाहते हैं। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का सरचश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। खुदा की बेहद तारीफ हो। अब इफ़सियों की किताब में से, अब हम इफ़सियों की किताब में से 6:10-17 तक की तलावत करेंगे। मैंने इन पर निशान लगा रखा है। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकमों और उन शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं।
Wherefore take unto yourself the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day.
इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर,
above all things the shield of faith wherewith ye shall be able to quench all the fiery
और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो और जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सको, और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो।
Now, over in the book of Daniel, I would like to read some more.
अब दानियल की किताब में से मैं मजीद पढ़ूंगा। अब दानियल 12 मैं पहली आयत से शुरू करना चाहता हूं और इसके लिए एक तवील हिस्से का मुतालिया करेंगे और आयत बा आयत तलावत करेंगे। और उस वक्त मिकाइल मुकर्रम फरिश्ता जो कौम के फरजंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अकवाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, और बाज हयाते अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिलते अब्दी के लिए, और अहले दानिश नूरे फल्क की मानी चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक होंगे सितारों की मानी अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू ए दानियल, इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। बतेरे इसकी तफ्तीशों तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। फिर मैं दानियल ने नजर की और क्या देखता हूँ कि दो शख्स और खड़े थे, एक दरिया के उस किनारे पर और दूसरा इस किनारे पर। और एक ने उस शख्स से जो कतानी लबास पहने हुए था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजाइब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लबास पहने था जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हय्यल कयूम की कसम खाई और कहा, एक दौर और दो दौर और नीम दौर, और जब वो मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब मैं यहीं बस करूंगा, और अगर मैं इसे मजमून कह सकूं तो यहां से अपना मजमून लेना चाहता हूं, जिसको मैं इस उन्वान पर मुंतखिब करूंगा, सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई। आज मेरा मतन यही होगा। अब इस मतन को आज सुबह हासिल करने के बाद हमें वापस यहां आना पड़ा, कलीसिया के दो बा एतमाद शख्स और मैं खुद एरिजोना में थे, और हम फीनिक्स में बाई शेरिट के साथ वाकया ही उसके टैबरनेकल में एक इबादत करने के लिए गए थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि उस शहर में एक बाई साहिबान में इबादत करा रहा था, तो फिर मैंने मीटिंग करना मुनासिब ना समझा। मैंने सोचा अगर मैं इतवार को पिछले पहर इबादत कराऊं तो शायद लोग अपने गिरजाओं से इधर आना गवारा ना करें। लेकिन मुझे पता चला कि वो भाई इसी तरह पिछले पहर इतवार को इबादत कराएगा, लेकिन मैं एक इबादत कराने में फिक्रमंद था। बस हम भाइयों ने शिकार में वक्त गुजारने की बजाय शहर में भाई एलन की इबादत में जाने की तैयारी कर ली। भाई ए वहाँ इबादत करा रहा था। बस हम इबादत में गए और भाई एलन ने बड़ा अजीम पैगाम दिया। हमने भाई एलन को सुनने में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। वो बड़े अच्छे अच्छे गीत गाते थे और इसी तरह वो बुलंद आवाज से ललकारते थे, और यूं ये इबादत बड़ी अजीम थी। फिर हम रास्ता भर में खुदावंद के हाथ को देखते रहे। हम जहां भी गए खुदावंद यीशु हमसे मिला। और घर से बाहर बियाबानों में होने में भी एक बात है। वो बात कुछ यूं है कि अगर कभी आप इस तरह तन्हा हो तो कोई चीज आपको खींच रही होती है। शायद एक सबब यही है कि मैं बैरूनी मकामात पर जाना पसंद करता हूँ। इस तरह आप दुश्मन के इख्तियार से बाहर हो जाते हैं। बस जितना मसला हमें यहाँ होता है शायद बैरूनी मकामात पर नहीं होता। उसकी निस्बत शैतान तकरीबन बेअसर हो जाता है, क्योंकि उसे कोई चीज नहीं मिलती जिसके अंदर वो काम कर सके। क्या आपको वो बदरूहें याद हैं जिन्हें उस पागल शख्स में से निकाला गया था? वो पहले से भी ज्यादा शरारत करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सूरों के अंदर जाना चाहा। बस शयातीन को कोई चीज चाहिए जिसके अंदर काम करें, कोई शख्स जिसके जरिए वो काम कर सकें। और खुदा भी इसी तरह काम करता है। वो हमें लेता है और हमारे जरिए काम करने के लिए हम पर इंतजार करता है। जब हम इस दौरे पर थे तो बहुत से लोग अपने ख्वाब लेकर आए, और खुदावंद यीशु कहीं भी नाकाम ना हुआ, बल्कि हर ख्वाब की ताबीर बिल्कुल दुरुस्त तौर पर बयान की। और फिर उसने हमारे साथ हमारे शिकार में रहनुमाई करके भलाई की और हमें बताया कि ये कहाँ पर था। और आप जानते हैं कि यूँ घूमना फिरना कितना अजीब होता है। सब लोगों से दूर, मीलों मील दूर, हम रात आग के पास बैठकर गुजारते और चट्टानों के किनारों पर हम टिमटिमाती आग को देखते, और ये बहुत शानदार वक्त था। वहाँ एक भाई था जो अपनी बीवी के सबब से बड़ी तकलीफ में था, जैसा कि बहुत साल पहले मैं वहां एक इबादत करा रहा था और उस औरत ने अपना सर उठाया और मैंने लोगों से कहा था कि कोई अपना सर ना उठाए। प्लेटफॉर्म पर एक औरत को एक बुरी रूह छोड़ नहीं रही थी और उस खातून ने गुस्ताखी करके किसी भी तरह अपना सर उठाया। तब बुरी रूह ने प्लेटफॉर्म वाली औरत को छोड़कर उस खातून में दाखिल हो गई। और 14 साल तक उसमें रही और वो औरत बड़ी खराब हालत में रही, हत्ता के ज़हनी लिहाज से भी। यहाँ तक वो ऐसे काम करने लग गई जो कि किसी तौर पर भी दुरुस्त ना थे। मसलन अपने खावन की बीवी होते हुए उसने उसे छोड़कर एक और शख्स से शादी कर ली और दावा ये करती रही कि वो नहीं जानती कि उसने क्या किया है। बस उन्होंने उसका मुआयना शुरू कर दिया। आप इसे क्या पुकारते हैं? जब आप क्या निसियान, भूल जाने की बीमारी, इसे मेरे ख्याल में यही इसका नाम है। मेरा ख्याल है यही दुरुस्त है डॉक्टर साहब, लेकिन ये निसियान ना था, ये बुरी रूह थी। अगरचे वो खातून मुझसे पहले मानूस थी, लेकिन उस दिन से वो ज़हनी तौर पर मुझसे नफरत करने लग गई थी। बिला शुबा आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज थी। फिर जब उसका खावंद आया और दुआ के लिए घुटनों के बल झुके तो रूह कुछ उतर आया, ये बात थी। तब खुदावन रात को उसके पास ख्वाब में आया। वो ख्वाब लेकर फिर वापस आया। उसका ख्याल था शायद ये कोई मजाक है, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये उसकी बीवी की शिफा का ऐन ख्वाब था। कैसे रूह कुछ ने उसके साथ बर्ताव किया। ट्यूसान में भाई नॉर्मन और उन दीगर भाइयों के साथ खुदावन ने कैसे काम करना शुरू कर दिया। वहाँ खुदावन ने दोबारा अजीम और कुदरत वाले काम करना और चीजों को जाहिर करना शुरू कर दिया। एक रात मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मैं भाई वुड और भाई सॉथमैन के साथ खड़ा था और हम ये रात के 10 बजे का वक्त था और मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि मुझ पर खौफ तारी हो गया और मैंने कहा देखो यह है अजीम आसमानी लश्कर। फिर मैंने कहा देखो हर चीज मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त से चल रही है। और भाई वुड ने कहा मैं दो सितारों को देख रहा हूँ, वो एक दूसरे के इस कदर करीब हैं कि एक रोशनी की मानित दिखाई देते हैं। मैंने कहा लेकिन भाई वुड आप जानते हैं साइंस के मुताबिक दुबे अकबर के सितारे जो एक दूसरे से 2 इंच दूर भी नहीं आते, वो एक दूसरे से इससे कहीं ज्यादा फासले पर हैं, जितने दूर हम से हैं। और अगर वो कई हजार मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ चलना शुरू कर दें, तो उन्हें जमीन तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। और मैंने कहा इतने बड़े वसी निजाम में जैसा कि साइंसदान दूरबीनों से देखकर हमें बताते हैं कि वो 120 मिलियन नूरी साल फासले तक देख सकते हैं और वहाँ तक भी उन्हें सितारे और चांद नजर आते हैं और इन तमाम में से हर एक को खुदा ही ने बनाया है और वो इनके दरमियान बैठा है। और मैंने कहा एक दफा मैंने एक रसद गाह में मुंतकता अल बुरुज का मुशाहदा किया था जो एक कुंवारी दोशीजा से शुरू होता है और शैतान के दौर से गुजर कर बिल आखिर बुर्ज असद यानी बब्बर शेर पर खत्म होता है। मसीह की पहली आमद कुंवारी से थी, दूसरी आमद में वो यहूदा के कबीले का बब्बर बनकर आएगा। फिर मैंने कहा मैंने मुंतकता उल बुरुज को देखने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं ना देख सका, लेकिन तो भी वो मौजूद है। माहिर लोग जानते हैं कि ये वहाँ मौजूद है, अयूब ने इसे देखा था, बहुत लोग इसे देखते रहे हैं। ये भी एक दौर की बाइबल थी। लेकिन अरबों और खरबों साल से खुदा उनके दरमियान बैठा रहा है और नीचे देख रहा है। पालूस वहाँ मौजूद है, मेरी वालदा भी वहाँ कहीं बैठी नीचे देख रही है। मैंने आसमानी लश्कर की तरतीब के मुतालिक सोचा, उनमें से कोई भी बेमकाम नहीं है, हर एक अपने वक्त को पूरी तरह कायम रखता है। ये खुदा की अजीम फौज है। मैंने उन सिपाहियों के बारे में सोचा, अगर चांद ही अपने काम की तरतीब को छोड़ दे तो जमीन बिल्कुल उसी तरह कुछ ही मिनटों में पानी से छुप जाएगी, जैसे ये उस वक्त थी जब खुदा ने हमें इसके ऊपर रखने का फैसला किया। ये बेशक्लो सूरत थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, पानी ने जमीन को चारों तरफ से डांक रखा था। अगर चांद कभी हट जाएगा तो दोबारा वही कुछ होगा। जब चांद जमीन के किसी हिस्से से दूर हटता है तो मध्य जजर की लहरें बुलंद हो जाती हैं। जब ये नीचे जाता है तो लहरें इसके साथ ही जाती हैं। ये खुदा का अजीम लश्कर है। और फिर जब मैंने खुदा के अजीम लश्कर के मुतल्लक सोचो विचार शुरू की, फिर जब हम बिस्तरों पर लेट गए तो मैं सोचने लगा कि इनमें से किसी ने अपना मकाम नहीं छोड़ा, वो सब अपने मकाम पर कायम हैं। अगर इनमें से किसी किस्म की हरकत पैदा हुई तो इसका कोई सबब होगा और इसका असर जमीन पर पड़ेगा। हमने हाल ही में इनके असरात देखे हैं। जब इनमें से कुछ ने दूसरे मकामात की तरफ हरकत की, ये असर पजीर चीज है, इसका असर हर चीज पर पड़ता है। फिर मैंने सोचा, जब ऐसे बड़े लश्कर के लिए ये लाजिम है कि इसकी हर चीज अपने मकाम पर है ताकि हर चीज बाज़ाब्ता रहे, तो फिर जमीनी लश्कर की बेतरतीबी का क्या कहा जाए? क्योंकि जब कोई एक भी तरतीब को तोड़ता है तो इसके सबब तमाम बाकी चीजों की तरतीब भी टूट जाती है। जबकि कोई एक रुकन अपना मकाम छोड़ता है तो खुदा के सारे प्रोग्राम में गड़बड़ पैदा हो जाती है। हमें रूह के जाब्ता को कायम रखने की मुसलसल जांफशानी करते रहना चाहिए। आज सुबह मैं खुदा से ये चाहूंगा कि हमारी आज की इबादत हकीकी शिफाया इबादत बन जाए। हम इस हिस्से को, हम इस जमात को आज सुबह इस छत के नीचे जो जमा हुई है ऐसे इकट्ठा कर लें कि रूल कुछ मसीह के बदन के हर रुकन को आज सुबह इस तरह से इकट्ठा कर दे कि रूह और बदन खुद ब खुद शिफा पा जाएं। बस हमें सिर्फ इसमें कायम रहना है। अब जैसा कि मैंने आगाज में कहा कि जिस औरत के कैंसर वाले पस्तान को डॉक्टर हॉल ब्रुक काटने लगे थे, लेकिन खुदा ने उस क्लिनिक में फड़फड़ाने की आवाज पैदा की और कैंसर यूं उड़ा दिया कि कैंसर का निशान तक बाकी ना रहा, क्या आप महसूस नहीं करते कि वही खुदा यहाँ है?
And the only thing that he is waiting for is for his
खुदा सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा है कि उसके लश्कर के अरकान अपने मकाम संभाल लें, जैसे सितारों ने अपने मकाम संभाल रखे हैं। अब क्या आप जानते हैं कि हमें जंगों पर जंगें और जंगों की अफवाहें मिलती रहती हैं, और अगर जमीन कायम रहेगी तो अभी बहुत सी लड़ाइयां होंगी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कायनात में सिर्फ दो ही ताकतें हैं? हमारे तमाम कौमी सतह और इनफरादी सतह के इख्तलाफात बिलाखर दो ताकतों पर ही मुंतखिब होते हैं। दो ही ताकतें और दो ही बादशाहियां हैं, दो ताकतें और दो ही सल्तनतें हैं। बाकी तमाम छोटी छोटी चीजें इनमें से किसी एक के साथ मुंसलिक होती हैं, और ये ताकतें हैं खुदा की ताकत और शैतान की ताकत। यही सबब है हर लड़ाई और हर बेतरतीबी और हर चीज जो वकू में आती है, या वो खुदा के कंट्रोल में होती है या शैतान के कंट्रोल में होती है, इसलिए कि सिर्फ दो ही ताकतें मौजूद हैं, और इनमें एक ताकत जिंदगी की है और एक मौत की। अब बस ये दो ही ताकतें हैं, और शैतान के पास उसकी जितनी भी ताकत है वो खुदा की ताकत का उलट है, और कोई हकीकी ताकत नहीं है। हर चीज जो शैतान के पास है वो खुदा की कुदरत का उलट है। मौत जिंदगी का उलट है, झूठ सच की गलत बयानी है, समझे? हरामकारी एक जायज अमल का गलत इस्तेमाल है, समझे? हर चीज जो शैतान के पास है वो किसी ना किसी चीज का उल्ट है, मगर ये एक ताकत है।
And we are today sitting here and one or the other power is
आज जबकि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो दोनों में से कोई ताकत हमें कंट्रोल कर रही है. बस आइए शरीर को निकाल दें, आइए आसमान के सितारों की तरह अपना मकाम संभालें. जैसा कि बाइबल कहती है कि वो आवारा गर्द सितारे हैं, यहूदा के खत में बाइबल ऐसा ही कहती है, जो कि अपनी शर्मिंदगी की जाग उड़ाते हैं. और हम ऐसे आवारा गर्द सितारे नहीं बनना चाहते. हैरत है अगर ये दुरुस्त है, हैरत है अगर वो दुरुस्त है, हैरत है अगर ये होगा, हैरत है ये कैसे हो सका. मत आवारा गर्द हो आसमान के सितारों की तरह, जो हकीकी सिपाहियों की तरह अपना फर्ज अदा करते हैं. ईमान के साथ खड़े रहें, मौत और जिंदगी. अब एक फौज, जब वाकई एक फौज या जब कोई कौम दूसरी कौम के खिलाफ चढ़ाई करने के लिए तैयारी करती है, तो पहले उसे बैठकर हिसाब लगाना चाहिए कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत, और क्या वो दूसरी कौम के खिलाफ जंग करने की सलाहियत रखती है या नहीं. यीशु ने ये सिखाया था. अगर लोग ऐसा करें, अगर अकवाम दोनों तरफ बैठकर पहले इस तरह से गौर व फिक्र कर लें, तो हमारे यहाँ कभी जंग नहीं होगी. अब देखें कि अगर इंसान ऐसा ना करे, कि अगर किसी कौम के सरबरा पहले बैठकर ये गौरोखोज ना कर लें कि क्या वो हक पर हैं और उनके मंशूरों मकासद दुरुस्त हैं और क्या दूसरी फौज पर गलबा पाने के लिए उनके पास काफी ताकत है और मजबूती है, तो फिर वो यकीनन आजाद होंगे. यही मकाम था जहाँ जनरल कस्टर्ड ने जानलेवा गलती की.
General Custard, as I understand, had
जहाँ तक मुझे इल्म है, जनरल कस्टर्ड को हुकूमत से हुक्म मिला था कि वो स्यूज की सरजमीन में दाखिल ना हो, क्योंकि ये उन लोगों का मजहबी वक्त था, ये उनकी इबादत का वक्त था और वो ईद मना रहे थे. लेकिन कस्टर्ड ने शराब के नशे में कि वो हर सूरत में आगे बढ़ेगा और सरहद पार करेगा, खा उसे हुक्म मिला है या नहीं. और फिर उन्होंने कुछ मासूम लोगों पर गोलियां चलाई. मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनको निशाना बनाया. ये कुछ स्काउट थे जो बाहर खुराक के लिए शिकार कर रहे थे अपने इन लोगों के लिए जो इबादत में मशगूल थे. कस्टर ने सरहद पार करते हुए सोचा कि वो उनके मुकाबला के लिए आए हैं, बस उन्होंने उन स्काउट्स पर फायर कर दिया. स्काउट्स बचकर वापस चले गए. उन्होंने क्या किया, वो असले से लेस होकर वापस आए और जनरल कस्टर अपने अंजाम को पहुंच गया, इसलिए कि उसने पहले बैठकर गौर फिक्र ना किया था. उसका वहां कोई काम ना था, उसे वहां जाने का कोई हक हासिल ना था. वो इंडियन को मशरकी साहिल से मगरबी साहिल तक रगेदता आया. उन्होंने एक मुआहदा किया था और उसने उस मुआहदे को तोड़ दिया, और जब उसने सुलह का मुआहदा तोड़ दिया तो जंग हार गया. बस जब कोई फौज लड़ाई के लिए जाने की तैयारी करती है, तो पहले कुछ सिपाही भर्ती करती है. उन्हें जंग का लिबास पहनना पड़ता है, जंग की तरबियत हासिल करनी पड़ती है. और मुझे यकीन है कि सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई, वो अब अमली तौर पर शुरू होने वाली है. मुझे यकीन है कि खुदा अपने सिपाहियों का इंतखाब करता रहा है. मुझे यकीन है कि वो उन्हें वर्दी पहनाता और तरबियत देता रहा है. अब महाजे जंग तैयार हो चुका है और लड़ाई शुरू होने वाली है. सबसे अजीम पहली जंग जो कभी लड़ी गई आसमान पर शुरू हुई, जब मिकाइल और उसके फरिश्ते अबलीस और उसके फरिश्तों से लड़े. ये पहली जंग आसमान पर हुई. बस गुनाह का आगाज जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर हुआ. फिर उसे आसमान पर से गिरा दिया गया, उसे आसमान से निकाल कर जमीन पर आदमियों की तरफ फेंक दिया गया. फिर फरिश्तों की जंग आदमियों की जंग बन गई और शैतान खुदा की मखलूकात को फना करने के लिए आ गया. जो कुछ खुदा ने अपने लिए बनाया था, जो कुछ उसने बनाया, शैतान उसे बर्बाद करने को आ गया. یہی اس کا مقصد تھا کہ مخلوقات کو برباد کرے. پھر جنگ زمین پر اور ہمارے اندر آ گئی اور یہ ابھی تک غیظ و غضب میں ہے. اب اس سے پہلے کہ کسی لڑائی کی صف ارائی کی جائے، پہلے کسی میدان کا انتخاب کیا جاتا ہے یا جہاں دونوں افواج لڑ سکیں. پہلی جنگ عظیم ایسی جگہ جہاں انسان رہائش پذیر نہیں ہوتے اور دیگر مقامات پر لڑی گئی، اس کے لیے انہیں جگہ کا انتخاب کرنا پڑا. جیسے بنی اسرائیل جب فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے گئے تو وہاں وہ اکٹھے ہوئے، اس کے دونوں طرف پہاڑی سلسلہ تھا، وہیں جولیت نکل کھڑا ہوا اور اسرائیل کی فوجوں کو للکارا. اسی وادی میں داؤد اس کے مقابلہ میں آیا جب اس نے پتھر اس کی پیشانی میں اتار دیا. وہ انہی دونوں پہاڑیوں کے درمیان بھاگا گیا اور پتھر اکٹھے کیے. کسی میدان کا انتخاب لازم تھا اور جنگ عظیم اوول میں مقابلے کا ایک میدان جہاں انسان رہائش پذیر نہیں ہوتا بنا، جہاں دونوں گروپ آپس میں لڑے. ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک لڑائی یہاں لڑی اور ایک وہاں، ایک کسی اور جگہ. انہوں نے ایک محاذ چناؤ کیا جہاں انہوں نے اپنی اپنی طاقت کا امتحان کیا، جہاں ایک ملک کی فوج دوسری ملک کے مقابلے میں اپنی طاقت کی مضبوطی کو آزماتی ہے. وہ مقابلے کا کوئی میدان ہوتا ہے. اب اسے سمجھنے سے قاصر نہ رہیں، جب عظیم جنگ زمین پر شروع ہوئی تو اس مقابلے میں کسی میدان کا ہونا ضروری تھا. جنگ کے آغاز کے لیے کسی جگہ کا انتخاب لازم تھا جہاں مقابلہ کیا جا سکے، اور یہ میدان جنگ انسانی ذہن کے اندر شروع ہوا. جنگ یہاں سے شروع ہوئی. انسان کا ذہن میدان جنگ کے لیے منتخب کیا گیا جہاں لڑائی شروع ہوئی، اور یہی سبب ہے کہ تمام فیصلے سر یعنی دماغ کے اندر ہوتے ہیں. اب انہوں نے اس کا آغاز ہرگز کسی تنظیم سے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی یہ کبھی کسی مشینی معاملے سے شروع ہوئی. وہاں کبھی میدان نہیں بنا. اسی لیے تنظیم کبھی بھی خدا کا کام نہیں کر سکتی، کیونکہ میدان جنگ جہاں آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ذہن کے اندر ہے. آپ کو کسی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، یہ آپ کے مقابل آتا ہے. میں چاہتا ہوں جو لڑکی سخت بیمار ہے وہ پورے یقین کے ساتھ نہایت غور سے سنیں. فیصلے سر یعنی ذہن کے اندر ہوتے ہیں. یہی شیطان آپ سے ملاقات کرتا ہے اور یہی فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اسی طور کا بنایا ہے. اب اگر میرے مسودہ کو دیکھیں تو یہاں ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے. کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے اسے یہاں بورڈ پر استعمال کیا تھا. انسان بالکل گندم کے دانے کی طرح بنایا گیا ہے. یہ بھی ایک بیج ہے اور انسان بھی ایک بیج ہے. جسمانی لحاظ سے آپ اپنے باپ اور ماں کے بیج ہیں. زندگی باپ سے آتی ہے اور بیزا ماں سے آتا ہے. پس دو اکٹھے انڈا اور خون مل جاتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور خون کے خلیے کے اندر زندگی ہوتی ہے اور وہاں سے بچے کا جسم بنتا ہے. اور ہر بیج کے گرد ایک کھول ہوتا ہے، اندر گودا ہوتا ہے، اور گودے کے اندر زندگی کا جرثومہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، ہم اسی طریقے سے بنے ہیں. ہم جسم، جان اور روح پر مشتمل ہیں. باہر جسم یعنی کھول ہے، اور اس کے اندر شعور اور باقی چیزیں اور جان ہے، اور جان کے اندر روح ہے، اور روح باقی سب پر حکومت کرتی ہے. اب جب آپ گھر جائیں اور بیٹھ کر تین چھوٹے دائرے کھینچیں تو آپ دیکھیں گے کہ بیرونی بدن پانچ حواس سے منسلک ہے، یعنی دیکھنا، چکھنا، چھونا، سونگھنا اور سننا. یہ پانچ حواس انسانی جسم کو کنٹرول کرتے ہیں. بدن کے اندر جان ہے، اور جان کو تصور، شعور، یاداشت، منطق اور جذبات کنٹرول کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو جان کو کنٹرول کرتی ہیں. لیکن روح کی طرف ایک ہی حس ہے. روح، آئیے اسے سمجھ لیں. روح کی صرف ایک ہی حس ہے، اور یہ حس ہے जो इस पर गालिब आती है, यानी या तो ईमान रखें या शक करें, एन यही चीज है। इसके लिए सिर्फ एक ही रविश है, यानी आजाद मर्जी का मालिक होना। आप या तो शक को कबूल कर सकते हैं या ईमान को, जिस किसी के साथ भी आप काम करना चाहें। इसलिए शैतान ने इस बड़े हिस्से पर काम करना शुरू किया, ताकि इंसान की रूह में खुदा के कलाम पर शक पैदा करने का सबब बने। खुदा ने इस बड़े हिस्से पर काम करना शुरू किया कि रूह के अंदर अपना कलाम रखे, ये रहे आप, और यही कुछ है। अगर हमारी कलीसिया के लोग बाहम यूं इकट्ठे हो जाएं कि सब अफराद एक ही नज़म के अंदर आ जाएं, यूं कि शक का साया कहीं बाकी ना रहे, तो हमारे दरमियान अगले 5 मिनट में ही कोई फर्द कमजोर ना रहेगा, यहाँ कोई पाक रूह का प्यासा बाकी ना रहेगा, इसलिए कि वो सबको मिल जाएगा। मगर जरूरत इस बात की है कि आप इस खास नुक्ते पर ठहर जाएं। अब यही वो मामला है जिस पर हमारे जहन में जंग छिड़ती है। अब याद रखें कि ये मसीही फलसफा नहीं है। अब किसी मामला पर सोचो बचार की जाए, ऐसा कि मसीही जहन जिंदगी को कबूल करता है जो कि खुदा का कलाम है, और ये जिंदगी को लाता है। ये महज हमारी सोच नहीं, बल्कि खुदा का कलाम इसे हमारी सोच में लाता है। समझे, ये सोच नहीं होती जैसा कि मसीही फलसफा इसे बनाता है कि मामले पर सोचो बचार की जाए। नहीं, ये ऐसी चीज नहीं है, लेकिन हमारा जहन इसे कबूल करता है और गिरफ्त में ले लेता है। हमारे जहन को कौन कंट्रोल करता है? हमारी रूह, और खुदा के कलाम को पकड़ती है, और कलाम ही के अंदर जिंदगी पाई जाती है। यूं जिंदगी हमारे अंदर आ जाती है। ओ मेरे भाइयों, जब यूं हो जाए, जब कलाम इस तौर से हमारे अंदर आ जाए, तो हमारे अंदर से कलाम का जहूर होता है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर इससे क्या होता है? दिल के दरमियान से, जो के जान है, तमाम रास्तों को खुराक की बाहम रसाई होती है। इसमें मुश्किल दरपेश ये है कि हम बेशुमार शक के साथ यहाँ खड़े खारजी चीज को कबूल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें इसको रोकना है और खुदा के सच्चे कलाम वाले रास्ते पर आना होगा, और फिर शक खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। ये सारा मामला अंदर का है, सारा मामला अंदर की चीज का है। शैतान की रसाई अंदर होती है। अब आप कहते हैं, मैं चोरी नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं इन कामों को नहीं करता। ये कुछ बात नहीं है। देखें, ये अंदर का मामला है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बा इखलाक हैं, कितने सच्चे हैं। ये चीजें काबिले कदर हैं, लेकिन यीशु ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। समझे, ये एक ऐसी चीज है जो अंदर वाके होती है। अगर आप ऐसे ना हो तो फिर आप मसनूई हैं, क्योंकि आपके दिल की गहराइयों में इसकी ख्वाहिश मौजूद है। इसे मसनूई नहीं होना, बल्कि हकीकी होना है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे ये आ सकती है, और वो है आपकी आजाद मर्जी, जिससे ये आपकी सोच के जरिए आपकी जान के अंदर आए। जैसे कोई शख्स अपने दिल में सोचता है, वो खुद ऐसा ही होता है। अगर तुम इस पहाड़ से कहो, उखड़ जा, और अपने दिल में शक ना करो, बल्कि ईमान रखो, तो जैसा कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ गए? ये है आपका मकाम, समझे? ये मैदान जंग है। अगर हमने इसका आगाज पहले कर लिया हो, तो हम इन बातों को होता देखने के लिए बेकरार हैं। हम खुदा के काम करने के लिए बेताब हैं। ये खातून बेकरार नहीं है, कोई शक नहीं कि ये खातून भी जिंदा रहने के लिए बेकरार है। वो तंदुरुस्त हो जाना चाहती है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं जो सेहत याब होना चाहते हैं, और जब हम डॉक्टर के वाकया जैसा कोई वाकया किसी मुर्दा के जिंदा होने, खुदा के अजीम कामों के बारे में जो हमारे खुदा ने किए हैं सुनते हैं, तो बेकरार हो जाते हैं। और मामला ये है कि हम इन हवास के जरिए जमीर जैसी चीज तक पहुंचते हैं, और इस पर ग्रिफ्ट डालने की कोशिश करते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत से लोग कलाम को गलत समझ लेते हैं, और मजबा पर बलाहट के मामले में लोग मुझे गलत समझते हैं। मैंने कहा था, मेरे ख्याल में ज्यादा अहमियत मजबा पर बुलाने को नहीं है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था कि आप किसी को मजबा पर ना बुलाएं। लेकिन जब कोई आदमी किसी दूसरे को बाजू से पकड़े और कहे, ओ भाई जॉन, क्या आप जानते हैं क्या करना चाहिए? हम दोनों शुरू से हमसाए हैं, आइए मस्बा पर जाएं, सिजदा रेज हो। वो क्या कर रहा है? अगर यहाँ तख्ता स्याह होता तो मैं वजाहत करता कि वो क्या कर रहा है। वो उसकी जान के जरिए जज्बात पर काम करने की कोशिश कर रहा है। इससे काम ना होगा, ये रविश नहीं है। यकीनी तौर पर ये ऐसा नहीं है। शायद वो काम कर रहा हो किसमें? यादाश्त में, जो उसकी जान की एक हिस्सा है। ओ भाई जॉन, आपकी वालदा बहुत जबरदस्त थी। बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, वो फोत हो गई। ये यादाश्त है, समझे? आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको आजाद मर्जी की पटरी पर आना होगा। आप खुद खुदा के कलाम को काम करने दें। आपके आने का सबब ये नहीं होगा कि आपकी वालदा बड़ी अच्छी खतून थी। आपके आने की बुनियाद ये नहीं कि आप अच्छे हमसाए हैं। आप इसलिए आते हैं कि खुदा आपको बुलाता है और आप इसे उसके कलाम की बुनियाद पर कबूल करते हैं। ये सब कामों का करने वाला कलाम ही है, वही कलाम। और अगर हम शाऊर और हवास जैसी चीजों को कलाम के रास्ते से हटा दें और कलाम को अंदर आने दें, तो ये कलाम एन उसी तरह की चीज पैदा करेगा। क्या यहाँ आप समझ गए हैं कि इस पर कौन सी चीज पर्दा डालती है? आप कहते हैं ठीक है, अब आप कहते हैं ठीक है, ये तमाम शाऊर और हवास जैसी चीजों का इसके साथ क्या वास्ता है? भाई ब्रैनम, यकीनन वास्ता है। अगर आप कलाम को अंदर आने दें और शाऊर को इस पर हावी होने दें, तो ये परवरिश नहीं पाएगा, ये बिगड़ा हुआ कलाम होगा। क्या आपने कभी देखा है कि गंदुम के दाने को जमीन में बो दें और इसके ऊपर छड़ी रख दें, तो वो टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। कोई भी बेल, कोई भी चीज इस तरह उगेगी, इसलिए कि उसके रास्ते में रुकावट थी। ठीक है, बस यही मसला आजकल हमारे पेंतिकोस्टल ईमान के साथ है। हमने इसके रास्ते में बहुत सी रुकावटों को काम करने दिया। जो ईमान हमें सिखाया गया है, जो पाक रूह हमारे अंदर बस रहा है, हमने बहुत सी चीजों को काम करने दिया है और किसी दूसरे की तरफ देखते हैं। और शैतान हमेशा किसी नाकाम हो जाने वाले शख्स की तरफ इशारा कर देता है, लेकिन हकीकी और असली गवाही से दूर रखने की कोशिश करता है। और बाज़ औक़ात आपका किसी रयाकार की तरफ ध्यान करा देता है कि कभी नकल करता हुआ बाहर निकल गया और इस तरह ना कर सका क्योंकि वो निकाल था। लेकिन अगर वो खुदा के कलाम के दुरुस्त मकाम, आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरा कलाम कभी ना टलेगा के मुताबिक हो तो कायम रहेगा। बहन जी, क्या आप समझ गई हैं? पहले इसे ज़हन से कबूल किया जाता है, फिर दिल से इस पर ईमान लाया जाता है, फिर खुदा का कलाम एक हकीकत बन जाता है, फिर पाक रूह से बदन और रूह के तमाम हवास दूर हो जाते हैं। तब आप खुदा की हिस्से होते हैं, आप खुदा का शौर होते हैं। दीनदारी की हर चीज आपसे बहने लग जाती है, कहीं कोई शक बाकी नहीं रहता, कोई सर उठाने वाली चीज बाकी नहीं रहती। फिर कोई चीज यादाश्त में उबर कर ये नहीं कहती, ठीक है मुझे याद है कि मिस जोन्स ने खुदा पर भरोसा करने की कोशिश की और फलां फलां मिस ने ये भी इसी तरह किया। मिस डो ने शिफा के लिए एक बार खुदा पर भरोसा किया और वो नाकाम हो गई, समझे? लेकिन अगर ये साफ और खाली होकर रुलकुस से भर जाए तो फिर ये बातें यादाश्त में नहीं आएंगी। मिस जोन्स की बात नहीं कि उसने क्या किया, ये आपका और खुदा का मामला है, इकट्ठा मामला है, ये किसी और का नहीं, आप दोनों का मामला है। ये है आपका मकाम, ये है आपकी जंग। इसे शुरू ही में मार डालें, उसके आगाज ही में उसे हलाक कर दें। ये कोई बात नहीं कि आपने इस जंग में कितनी देर लगाई, लेकिन अब ये बंद हो जाएगी। अगर आप आगे आ जाएं और फिर इन यादों और शाऊर और बाकी सब चीजों को कायम रखें और इनके मुतल्लिक सोचें, ठीक है मैं शायद नाकाम हो जाऊं, शायद ये दुरुस्त ना हो, ऐसा कोई काम हरगिज ना कीजिए। हर चीज को परे फेंक दें और इस रग को खाली करके कहें, ए खुदा, तेरा कलाम ता अब तक सच्चा है और ये मेरे लिए है। खा तमाम कलीसिया नाकाम हो जाए, खा तमाम दुनिया नाकाम हो जाए, तो भी मैं नाकाम नहीं होऊंगा, इसलिए कि मैं तेरे कलाम को ले रहा हूँ। यही जंग है, यही बात है। क्यों कादरे मुतली खुदा ने एक औरत की छाती से कैंसर को बगैर कोई निशान छोड़े खत्म कर दिया, और क्या एक बच्चे को मरने देगा? नहीं जनाब। कुछ अरसा हुआ कि हाई स्कूल से एक छोटी सी लड़की यहाँ आई। उसकी वालदा ने फोन पर मुझे कहा, भाई ब्रैनम, मेरी लड़की को हाजकन की बीमारी हो गई है, ये गिल्टियों की शक्ल में कैंसर है। डॉक्टरों ने इसके गले में फूटने वाली एक गिल्टी का टुकड़ा काट कर भेजा और ये मुकम्मल तौर पर हाजकन की बीमारी थी। बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद अगली गिल्टी इसके दिल पर बन सकती है और जू ही वो बनेगी ये लड़की मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा ये लड़की जिस तरह से ये गिल्टी बन रही है, इस हिसाब से ये लड़की तकरीबन 3 माह तक जिंदा रह सकेगी। उसकी माँ ने कहा, तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसे स्कूल जाने दूँ? उसने कहा, इसे जाने दो क्योंकि शायद वो अचानक मरेगी। और फिर कहा, इसे जाने दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे आम जिंदगी गुजारने दीजिए और इसे इसके मुतालिक कुछ ना बताया जाए। इस तरह उस औरत ने मुझसे कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, इसे लेकर आइए और दुआया कतार में खड़ा कीजिए। मैंने कहा, आप इसके साथ आए। मुझे कुछ मजाया सा एहसास हुआ। और फिर जब उस सुबह वो लड़की यहाँ आई तो उसके होंठ मेकअप के बाइस नीले हो रहे थे, जैसे कि वो स्कूलों में होती हैं। और इसी तरह वो लड़की यहाँ आ गई। मैं उसे इससे पहले नहीं जानता था जब उसने मुझे फोन पर मुखातिब किया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सुबह खैर बहन जी। वो वहीं थी और उसकी हालत सामने आ गई। मैंने चंद ही लम्हों में दोनों माँ बेटी का हाल मालूम कर लिया। वो दोनों खुदा से खाली मसीह के बगैर थीं। मैंने कहा, आप इन हालात में क्यों कर शिफा की तवक्को कर सकती हैं? क्या आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगी? मैंने कहा, क्या आप इस तालाब की तरफ आएंगी और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगी? उन्होंने कहा, हम ये करेंगी। ओ, आप जानते हैं क्या हुआ? वो खातून आज सुबह यहाँ मौजूद होगी। आप में से बहुत से लोग इस वाक्य को जानते हैं। भाई माइक एगान यहाँ के जिम्मेदार शख्स हैं। ये वाक्य उन्होंने देखा था। ये 4-5 साल पहले वाक्य हुआ था। लड़की को दोबारा डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन इस लड़की के अंदर हाजकन की बीमारी की अलामत तक न थी। ये क्या मामला था? पहले आपको रग खोलने की जरूरत है। खुदा के कलाम को कबूल करने से पहले आपको सिपाही यानी रूल कुछ को महाजे जंग में हासिल करना चाहिए। वो कलाम है और वो वहाँ खड़ा हो जाता है और फिर उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। अब बाकी कोई चीज नहीं रह जाती। बाकी तमाम रगें भी साफ हो चुकी होती हैं, जैसे किसी पुराने हमाम की चिमनी अगर बंद हो चुकी हो और आप इसके नीचे आग जला दें तो वो आपकी चीज को फूंक देगा। यही मामला बहुत से जले हुए मसीहों के साथ है कि वो पहले रगों को साफ नहीं करते, वो अंदर नीचे तक नहीं जाते। आपको लाजिम है कि शाऊर, यादाश्त, ख्यालात, तमाम चीजों को साफ करें और खुदा के पाक दामन कलाम के साथ, जो के सच्चाई है, अंदर से बाहर की तरफ आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आज 10,000 भरोसा रखते हुए इस तरफ गिर जाएं और 10,000 भरोसा रखते हुए कल उस तरफ गिर जाएं, लेकिन इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अलग फर्द हूँ। मैं भरोसा रखने वाला शख्स हूँ। मैं इस पर ईमान रखने वाला हूँ। और हम माजी में देखते हैं, अगर हम अपनी रगों को खोलना चाहें, अगर हम ऐसा कर सकें और देखें, तो हम कभी कुछ देखते हैं और कभी कुछ, कभी किसी को और कभी किसी को, हजारों लोगों को गवाही देते हुए देखते हैं। लेकिन शैतान वापस आने की भरपूर कोशिश करेगा। देखें, अगर इसे वहाँ दाखिल होने का मौका मिल गया तो वो आपकी फौज को शिकस्त दे देगा। अगर आपके देखने, चखने, छूने, सूंघने और सुनने के आवाज दुरुस्त हैं, तो भी उन पर भरोसा ना करें जब तक वो कलाम के साथ मुत्तफिक ना हो। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो कलाम के साथ मुत्तफिक नहीं तो उनकी मत सुने। अब इसी तरह अगर तसव्वुर, शऊर, यादाश्त, मंतक और जज्बात अगर कलाम के साथ मुत्तफिक हों तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका जज्बा कलाम के साथ इत्तफाक ना करे तो इससे निजात हासिल करें। इसे फौरन अपने अंदर से निकाल दें जितनी जल्दी हो सके, समझे? अगर आपका मंतक कलाम से अदम इत्तफाक करे तो इससे दूर हो जाएं, यही दुरुस्त है। अगर आपकी यादाश्त, अगर आपके तसव्वुरात, अगर आपका शऊर, कोई भी चीज, गर्ज आपके अंदर कोई भी चीज कलाम के साथ इत्तफाक ना करे तो इससे छुटकारा हासिल करें। तब आपको क्या मिला? आपको निजामे शमसी मिला है। हालेलुया। खुदा ने सितारों को तरतीब से कायम किया और कहा, यहाँ मोलक रहो जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। वो वहाँ खड़े हैं, कोई उन्हें नहीं ला सकता। खुदा उस वक्त किसी आदमी को अपने हाथ में ले सकता है जब वो तमाम हवास, शऊर और बाकी सब साफ हो जाए, और जब तक वो रूह में खुदा के साथ खड़ा रहे तब कोई शैतान अंदर आकर शक पैदा नहीं कर सकता। ये सच है। अगर वो आकर कहे, तुझे कुछ फाका महसूस नहीं हो रहा, तो भी आपका शऊर उसकी नहीं सुनेगा। रगे ऐसी साफ होंगी कि वो पुकार उठेंगी, हालेलुया, मुंह पुकार उठेगा, खुदा को जलाल मिले। ये यकीनन आवाज देगा और ऐसा साफ होगा कि खुदा का कलाम खुदा की कुदरत के साथ इसके अंदर से काम कर सकेगा, समझे? सबसे अहम बात यही है। ये आपका मैदान जंग है। आपका मैदान जंग शुरू से यही है। ये आपकी जान के अंदर है, आपके जहन में है। जहन जान का बल्कि रूह का फाटक है। आपका जहन खुलता है तो रूह को कबूल करता है या ये रूह को रद्द करता है। आपके अंदर थोड़े से शाऊर, थोड़े से हवास और थोड़े से एहसासात और बाकी चीजें हो सकती हैं, जिनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये महज नन्हे से एहसासात और दूसरी चीजें हैं, लेकिन जब ये हकीकत तक पहुंचता है तो आपका जहन खोल देता है, तब आपका जहन इसे कबूल करता है या फिर रद्द करता है। बस मेरे अजीजों, यही बात है। खुदा बख्श दे कि इनमें से कोई इसे खो ना दे। देखें, ये आपका जहन है जो दरवाजा खोल देता है या दरवाजा बंद कर देता है। ये आपके शाऊर, आपकी यादाश्त और आपके जज्बात की आवाज सुनता है। लेकिन जब जहन अपने दरवाजे को इन चीजों की तरफ से बंद कर लेता है और खुदा को यानी उसके कलाम की रूह को अंदर आने देता है, तो फिर ये बाकी तमाम चीजों को बाहर निकाल देता है। हर शक निकल जाता है, हर खौफ दूर हो जाता है, शक का हर अज़्तिराब निकल जाता है, हर एहसास निकल जाता है। वहाँ खुदा के कलाम के अलावा और कोई चीज खड़ी नहीं होती और शैतान भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। नहीं जनाब, शैतान खुदा के कलाम के साथ नहीं लड़ सकता। अब हम जानते हैं, ये सच्चाई है। इंसानी जहन के अंदर ये जंग बागे अदन के वक्त से बशिद्दत जारी है। इसका आगाज शैतान ने किया। जब वो हवा से मिला तो उसने क्या किया? उसने खुदा के कलाम का इनकार किया, बल्कि उस पर सफेदी फेरी। उसने कहीं भी कुछ रगों को बंद कर दिया। उसने कहा, यकीनन खुदा ने कहा है, पदेश 3:1, समझे? यकीनन खुदा वो सब चीजें जिनका उसने 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 वादा किया है, वो जानता था कि कलाम सच्चा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि इसे बुलंद आवाज धमाके से फटा सके। उसने 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 इस पर चीनी का मलमा चढ़ाया। जैसे हमारी वालदा हमें दुआई दिया करती थी, वो कस्टर्ड ऑयल में माल्टे का जूस मिलाकर देती थी। अजीजो, वगरना आपको कस्टर्ड ऑयल माल्टे के जूस के बगैर लेना पड़ेगा। कोई भी चीज जो रयाकारी से है, समझे? वो हम रात को गले की खराबी के बाइस उठ जाते और हमारी वालदा हमें कोल ऑयल दे देती गले की खराबी के लिए। वो कोल ऑयल डालकर उस पर चीनी डाल देती। देखें, ये रयाकारी की किस्म है, लेकिन जब चीनी उतर जाए तो ये नीचे जाते हुए ये गले को जलाती जाएगी। ठीक है अजीजो, ये इस तरह से है। शैतान इसके लिए रयाकारी करने की कोशिश करता है। वो आपको कदरे बेहतर एक सहल तरीका, ज्यादा काबले फहम मंसूबा बताता है, लेकिन कोई मंसूबा इससे ज्यादा काबले फहम नहीं जो खुदा ने इब्तदा में दिया था, यानी उसका कलाम। इसके कलाम को पकड़ लीजिए, इसे अपनी गिरफ्त में लीजिए, इसे अपने ऊपर गिरफ्त डालने दीजिए, इसके साथ खड़े रहिए। यही यही जरूरी बात है। जंग उस वक्त शुरू हुई जब हवा ने दलाइल सुनने के लिए अपने जेन को खोला, मवाद को रास्ता मिल गया। उसके दलाइल ने उसे रगों के अंदर पहुंचा दिया। उसने अपनी जान के अंदर बहस की। उसने अपनी आंखों की नजर से सांप को देखा। वो खूबसूरत, वजी और उसके अपने खावंद से कहीं बेहतर था। वो तमाम दस्ती जानवरों से ज्यादा चलाक था। गालबन वो उसके खावंद से ज्यादा मुनासिब मर्द था। वो एक अजीम नर जानवर की तरह वहाँ खड़ा था। वो बड़ा अजीम था और वो हवा को बता रहा था कि ये कितनी अजीम बात थी। और हवा का पहला काम ये था कि उसने अपना जहन खोल दिया, और जहन के खुलने से इंसानी मंतक ने उसे पकड़ लिया। क्यों? क्या ये सनसनीखेज बात ना होगी? और वो आज कल भी औरतों के साथ ऐसा ही कर रहा है। कोई औरत जिसका छोटा सा प्यारा सा खावंद हो, उसे अगर कोई अजीम बड़ा जसीम मर्द मिल जाए, तो वो मर्द इंसानी दलाइल इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। याद रखें, ये शैतान है, इब्लीस, या फिर इसका उलट भी हो सकता है कि उस औरत की जगह मर्द और मर्द की जगह औरत हो जाए। किसी भी तरीके से हो सकता है। उसने क्या किया था? उसने मंत की कुव्वत पर काम किया, उस शऊर के अंदर जहाँ कोई चीज जुम्बश खाने लगती है। लेकिन खुदा के कलाम को अव्वल मकाम दीजिए। इंसान कभी नहीं आ सकता, वो गुनाह नहीं कर सकता। हालेलुया, ये यहाँ है, ये बात बिल्कुल ताज़ा है। कोई इंसान उस वक़्त तक गुनाह नहीं कर सकता जब तक वो पहले खुदा के कलाम को एक तरफ ना रख दे। वो गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि गुनाह बेएतकादी है। जब तक वो पहले खुदा के कलाम को और खुदा की हजूरी से छुटकारा हासिल ना कर ले, वो गुनाह नहीं कर सकता। हवा भी उस वक्त तक गुनाह ना कर सकी जब तक उसने खुदा के कलाम को एक तरफ ना रख दिया, अपनी रग दलाइल जान के लिए खोलकर दलाइल देना शुरू ना किया। क्यों? यकीनन ऐसा हुआ। मेरे खावंद ने तो ये बातें मुझे कभी नहीं बताई, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम, उसने तो मुझे बताया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम जानते हो कि तुमने इसे हकीकत बना दिया है और बिल्कुल वाजे कर दिया है। मुझे यकीन है कि ये हैरत अंगेज बात होगी, क्योंकि तुमने इसे मेरे लिए बिल्कुल साफ कर दिया है। देखें, यही पहली जंग थी, और इसी जंग के जरिए हर जंग का सबब पैदा हुआ और हर खून रेजी का सबब यहाँ अदन से शुरू हुआ। हवा ने खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखा था, और अगर खुदा के कलाम के एक जरा पर ईमान ना रखने से ये सारी मुसीबत पैदा हुई है, तो हम खुदा के कलाम पर ईमान ना रख कर कैसे वापस जाएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इन तमाम दूसरी चीजों, शऊर, यादाश्त और कहीं दलाइल और तमाम दूसरी चीजों को बंद कर देना होगा कि बहस खत्म हो जाए। हम इस पर हरगिज कोई बहस नहीं करते, किसी पर भी नहीं। हम सिर्फ इस बुनियाद पर, खुदा ने इस तरह कहा, कलाम को कबूल करते हैं, और इससे आपके और खुदा के दरमियान एक दारा बहने लगता है, तब आप और खुदा के दरमियान तमाम रगें खुल जाती हैं। ये जंग थी, ये एन पहला हरावल दस्ता था। आइए 22 बोर की राइफल पर भरोसा ना करें, बल्कि आइए एक एटम बम हासिल करें, आइए काम को दुरुस्त करें, आइए खुदा का आइटम बम हासिल करें। भाई ब्रैनम, ये क्या है? FAITH, इसके कलाम पर यानी ईमान रखें, ये खुदा का आइटम बम है, और ये बीमारियों और शैतान को दाएं बाएं गिरा देता है, ये उनमें तफरीक डाल देता है और उनका सत्यानाश कर देता है। ओ, ये इनको बिल्कुल तबाह कर देता है, ये बेदीनी की हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब ईमान का बम खुदा के कलाम की हमायत के साथ गिरता है, तो हर बदरू, हर मर्ज और हर बीमारी को उड़ा देता है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या ये दुरुस्त है? फिर ये कुछ लोगों पर तो होता है और कुछ पर नहीं, क्यों? क्योंकि ये रास्ते का फर्क है। आप बाहर रहकर इसे देख तो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ये आपके अंदर मौजूद हो और इस रास्ते से नजर आए। आपको बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर देखना चाहिए, समझे? आप मंतक के जरिए अंदर नहीं आ सकते, आप दूसरी चीजों के जरिए नहीं आ सकते, आपको खुदा के मुकर्रर रास्ते पर ठीक जान के अंदर आना होगा। और आप ये किस तरह करेंगे? आखिरी रास्ता क्या है? ये मंतक दिलाइल देता हुआ आएगा। आप कहते हैं, हवास, ओ मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, जी हाँ, ये मौजूद है, ओ हो ओ, मैं शायद इसे सूंघ सकता हूँ, ओ इसी तरह शायद कुछ और, ये चीजें मौजूद हैं, जी हाँ। अगली दलील आप ये देंगे, ठीक है, यूँ लगता है इसे समझने की जरूरत है कि ये क्या कह रहा है। डॉक्टर कहता है मैं ठीक नहीं हो सकता, यूँ होना चाहिए। आप देखें, आप यहाँ बिल्कुल गलती पर हैं। ये शैतान के कयाम का वक्त है। शैतान आपके जहन में ऐसी बातें डाल रहा है, इनका यकीन ना करें। हालेलुया, खुदा के कलाम ने कहा था, सब चीजों से बालातर मैं ये चाहता हूँ कि तुम सेहत में तरक्की करो। ये सच है। आप अच्छे सिपाही क्यों नहीं बन सकते? देखें, मैं ये चाहता हूँ तुम सेहत में तरक्की करो। ये मौजूद है, ये ठीक है, उन रगों के पास मौजूद है। अगर आपने रगों को खोल दिया है, तो इन्हें छोड़कर गुजरने की ख्वाहिश ना करें। तब अगर शैतान वहाँ तक पहुँच जाए, अगर वो शऊर और दीगर हवास तक रसाई हासिल कर ले, तो वो ठीक जान के सिरे पर जहन में दाखिल हो जाता है। अब अगर शैतान आप तक पहुँच सकता है, आप उस वक़्त तक किसी हिस्से पर ध्यान नहीं दे सकते जब तक पहले शैतान को अंदर ना आने दें। पहले आप शैतान को अंदर दाखिल होने देंगे, और फिर जब वो अंदर दाखिल हो जाता है, तो वो फिर कंट्रोल संभाल लेता है। फिर वो क्या करता है? वो शऊर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वो उसको इस्तेमाल करता है, वो उस निकास को इस्तेमाल करता है। ये क्या है? देखना, चखना, छूना, सूंघना और सुनना, ये तसव्वुरात, शऊर, यादाश्त, मंतक और जज्बात, जब वो इनमें दाखिल हो जाता है, तो वो इन छोटी नालियों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उससे पहले आपके जहन में दाखिल होना पड़ता है और आपको उसे कबूल करना पड़ता है। इसे गौर से सुने, वो आपको कुचल तो सकता है, लेकिन जब तक आप उसे कबूल ना करें, आपके अंदर नहीं आ सकता। जब शैतान हवा की तरफ गया और बोला, तुम जानती हो कि ये फल खुशनुमा है, और वो एक लम्हा के लिए रुक गई। हो, जब वो एक लम्हा के लिए रुकी, तो यहीं पर गलती कर चुकी थी। किसी बात पर मत रुकिए। आपने पैगाम हासिल कर लिया है, यीशु जिंदा है, खुदा शाफी है, यही पैगाम है। किसी बात पर मत रुकिए, ना किसी मंतक के लिए और ना किसी और चीज के लिए। लेकिन वो एक लम्हा के लिए रुक गई, यही वो घड़ी थी जब शैतान हवा के जहन में दाखिल हो गया, और वो कहने लगी, ठीक है, ये माकूल बात लगती है, ओ ऐसा मत कीजिए, जो खुदा ने कहा था उसी को पकड़े रखें। अगर इब्राहिम उस वक्त दलाइल के बाईस रुक जाता तो क्या होता? जब खुदा ने उसे बताया कि उसके सारा से बेटा होगा, जबकि सारा की उम्र 65 बरस और इब्राहिम की 75 बरस थी, और जब वो 100 बरस का हो गया और सारा 90 बरस की हो गई, वो तब भी इकरार करता था कि खुदा का कलाम सच्चा था, और वो इन चीजों को जो मौजूद ना थी यूं समझता था कि वो मौजूद हैं। समझे? उसके पास अब भी उम्मीद है। क्या कोई उम्मीद बाकी थी? वो उम्मीद को भी इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है, आप कहते हैं मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उम्मीद है कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं पाक रूह हासिल कर लूंगा, उम्मीद करता हूं कि मैं एक मसीही हूं, उम्मीद है कि मैं ये करता हूं। आप ये ख्वाहिश ना करें। इब्राहिम ने कभी इसकी तरफ नहीं देखा था। आमीन। उम्मीद के बरक्स वो खुदा के कलाम पर सख्ती से ईमान रखता था। ईमान उम्मीद से बालातर है। ईमान अंदरूनी तरफ से आता है। ईमान की जगह यही है। वो कैसे अंदर दाखिल हुआ? उस जहन के जरिए, उस दरवाजे से। वो महाजे जंग पर खड़ा हुआ। अब जब आप जंग का आगाज कर चुके हैं, अब आज सुबह शैतान हर दिल के अंदर बैठा हुआ है। वो एक छोटी लड़की के दिल में बैठा हुआ है, वो आपके दिल में बैठा हुआ है, वो हर जगह बैठा हुआ है। वो कह रहा है, हो, मैंने पहले भी इसकी कोशिश देखी है, मैंने पहले भी सुना है। इसे बाहर निकाल दें, यही काफी है। इसे बाहर निकाल दें। बाइबल ने हमारे मजमून में यही कहा था, इसे बाहर निकाल दें, ये दुरुस्त है, इसे बाहर निकाल दें। हम तरबियत याफ्ता हैं। मैं सोचता हूँ हम मनादों के साथ क्या मसला है। मैं हैरान हूँ हमने किस किस्म की तरबियत हासिल कर रखी है। इस अजीम जंग के लिए खुदा की तरबियत की जरूरत है। मत्ती 24 में और दानियल 12 बाप में कहा गया है, वो वक्त ऐसी तकलीफ का होगा जो कभी जमीन पर नहीं आया। और अब हम इस वक्त में रह रहे हैं जब तहजीब, तालीम और दीगर चीजों ने खुदा के कलाम का गला घोंट दिया है और मंतक और दीगर बातों में फंस गए हैं। जंग अब हो रही है। कौन खड़ा रहेगा? हालेलुया। जंग दाखले के लिए तैयार है। जंग का दौर जारी है। देखें कि हमारा मुखालिफ ग्रोह कितना बड़ा है। कौन दाऊद की मानिंद होगा और कहेगा, क्या तुम उस नामखदूम फलस्ती को जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करने दोगे? मैं उससे लड़ने के लिए जाऊंगा। आमीन। खुदा आज ऐसे मर्दों और औरतों को चाहता है जो खड़े होकर कहें, मैं खुदावंद को उसके कलाम से कबूल करूंगा। आमीन। इससे बेगर्ज के क्या कहा गया है, फलाने क्या कहा और फलाने क्या किया, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसाउल और दीगर ऐसे लोगों, अगर तुम उससे खौफ ज़दा हो तो वहीं चले जाओ जहाँ से थे, लेकिन खुदा की फौज आगे बढ़ेगी। आमीन। अहले जज्बा, अहले ईमान, अहले ताकत, अहले दानिश, इन्हें खूबसूरत बनने की जरूरत नहीं है, इन्हें तलीम याफ्ता बनने की जरूरत नहीं, इन्हें रगों की जरूरत नहीं। खुदा इन छोटी रगों को कबूल करता है। और वो एक लम्हा के लिए दलील को पेश करते हुए रुक गई और कहने लगी, ठीक है, अब जरा ठहरो और इस पर गौर करो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये जो खातून आज सुबह यहाँ मौजूद है, बिलाशुबा डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि इसकी मंजिल अब करीब है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब वही डॉक्टर यहाँ मौजूद है। मैं इस डॉक्टर को इल्जाम नहीं दूंगा, वो एक साइंसी आदमी है। वो देखता है कि बीमारी बच्ची के जिस्म में हावी हो गई है, ये तमाम हदूद पार कर गई है, उसके पास कोई दवाई नहीं कि उसे रोक सके। इसी तरह कैंसर उस औरत पर हावी हो गया था। यकीनन मौत ने बच्ची पर फतह पाली थी, लेकिन हमारा अजीम कप्तान, हालेलुया, हमारी अजीम फौज का कप्तान कयामत और जिंदगी है, उस पर कोई चीज फतह नहीं पा सकती। हालेलुया। फौज का दिमाग यानी जहानत उसके सलार के अंदर होता है। जर्मनी में रूमेल जर्मनी का दिमाग था, हिटलर नहीं बल्कि रूमेल, ये दुरुस्त है। आइजनहावर, मर्दे लश्कर, पेटन जो फौज के हरावल थे, उन्हीं पर दारोमदार था कि वो किस तरह का हुक्म जारी करते हैं। आप अपने सिपाह सलार की पैरवी करें। अगर वो दुरुस्त किस्म का जनरल है, अगर वो चार सितारों वाला जनरल है और वो दुरुस्त किस्म का है और अगर वो दुरुस्त साबित हो चुका है, तो उसकी पैरवी करें, चाहे आपको कुछ गलत भी मालूम हो, तो अभी महाज पर चले जाएं, जैसे वो कहे उसी तरह करो। हालेलुया। हमें पांच सितारों वाला यस्सु मिला है, जिसके पांच हिज्जे JESUS, और हमें पांच सितारे FAITH देता है। उसने कभी जंग नहीं हारी। हालेलुया। उसने मौत और आलमे रवा पर और कब्र पर फतह पाई है। उसने शैतान को रास्ते से हटा दिया है। वो सिपा सलार अजीम है, इसीलिए शैतान तस्वीर में भी नहीं है। सबसे बड़ी जंग जो कभी छिड़ी वो अब बिल्कुल तैयार है, यकीनन ये जारी है। ओह हालेलुया, जब मैं इस पर सोचता हूँ, जब मैं खड़ा होता हूँ, उसे मौजज़े करते देखता हूँ, पोशीदा चीजों को उसको खोलते देखता हूँ, तो कहते हैं ये ऐसे वैसे होगा, ये यहाँ है। हो वापिस यहाँ देखें और कहें ये अजीम सिपा सलार कौन है। हो ना मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, ना ये कहता हूँ कि ये डॉक्टर फलां फलां है, मैं ये देखता हूँ सिपा सलार ने क्या कहा है। वो हमारी निजात का सिपा सलार है। हालेलुया। निजात क्या है? आजादी, रहाई, खुदा को जलाल मिले। वो हमारी आजादी का सिपा सलार है। हमले की अजीम घड़ी सर पर है। हालेलुया। सिपाहियों के बख्तर चमक रहे हैं, रंग दमक रहे हैं। ईमान और शक आज सुबह इस टैबरनेकल में बाहम बरसरे पुकार हैं। एक तरफ शक और दूसरी तरफ ईमान है। ऐ सिपाहियों, अपनी अपनी ड्यूटी का मकाम संभाल लो। हालेलुया। हमारा सिपा सलार सुबह का रोशन सितारा राह दिखा रहा है। वो कभी पीछे नहीं हटा, वो कभी नहीं, वो मात के लफ्ज को भी नहीं जानता, वो कभी हारा ही नहीं। आमीन। यकीनन ऐसा ही है। सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई वो इस वक्त जारी है। जी जनाब, जिंदगी और मौत के दरमियान, बीमारी और सेहत के दरमियान, ईमान और शक के दरमियान, ओ मेरे खुदा, आजादी और बंधन के दरमियान जंग जारी है। सिपाहियों, अपने नेजों को चमकाओ, हथियारों को चमकाओ। खुदा अपने सिपाहियों को तैयार कर रहा है। आमीन। खुदा अपनी फौज को मसा करता है। अमेरिका के लिए जहाँ तक मुमकिन है, अपने सिपाहियों को फलाद के खोद, हथियार और बख्तरबंद टैंक, यानी जो कुछ उनके पास है और जो कुछ वो मुहैया कर सकते हैं, उससे लेस करते हैं। खुदा भी अपनी फौज को लेस करता है। हालेलुया। हम कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हैं? रूह की तलवार, खुदा का कलाम। आमीन। खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, अब्रानियों 4, और बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है, बल्कि दिल के ख्यालों और इरादों को परखता है। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पर ईमान लाएं, और किसी को लेस करने का खुदा का यही तरीका है। हवा को भी खुदा ने इसी तरह से बख्तर पहनाया था, लेकिन हवा ने उसके बख्तर को तोड़ दिया। हवा ने ये क्यों कर किया? अपना जहन दलाइल के लिए खोल कर। खुदा के कलाम पर बहस ना करें, ये बहस से बालातर है। आप ये मुकम्मल तौर पर खुदा का कलाम है, ये शको शुबा से बालातर है। इस पर किसी बहस की जरूरत नहीं है, ये खुदा का कलाम है। इतना कहना काफी है, इसके लिए मुकर्रर है, ये हमेशा के लिए तय है। अजीजो, क्या आप मेरा मतलब समझ गए हैं? खुदा का कलाम है, खुदा ने इसका वादा किया है, ये खुदावन ने फरमाया है। उन्होंने इब्राहिम से कहा, आप कैसे जानते हैं कि आपको बच्चा मिलेगा? ऐसा खुदा ने कहा है, इसलिए ये तय है। तो ठीक है, तो वो फिर अभी तक आपके यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ? ये नहीं जानता कि वो कब मुझे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ऐसा खुदा ने कह रखा है। इससे मैं जरा भी रुक नहीं सकता। उसने थामे रखा, आप अपने उस घर की तरफ क्यों नहीं चले जाते जहाँ से आप आए थे? नहीं, मैं इस सरजमीन में परदेसी और मुसाफिर रहूंगा। आमीन। खुदा ने वादा कर रखा है, खुदा मुझे इसी सरजमीन में बेटा देगा जहाँ उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। खुदा आपको पाकरू की इस फिजा में शिफा देगा जहाँ उसने आपको भेजा है। खुदा आपको ये बख्शेगा, सिर्फ ईमान रखें। आमीन। जान और बदन के रास्तों, हवास और शौर और दीगर को खोल दीजिए, और खुदा के कलाम को अंदर आने दीजिए। पहले जेन को खोलें, जो कि मैदान जंग है। यूं ना कहें, ठीक है, अगर मैंने इसे महसूस किया, अगर मैंने खुदा के जलाल के नजूल को महसूस किया, हो ऐसी किसी बात का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, किसी बात का नहीं है। जेन को खोलें, यही मदाने जंग है। महाज अब बिल्कुल ठीक यहाँ आपके जेन के अंदर है। अपने जेन को खोलिए और कहें, मुझे तमाम शकूक पर शक है। आमीन। अब मैं अपने शुबात पर शक कर रहा हूँ, मैं खुदा के कलाम पर ईमान ला रहा हूँ। ऐ शैतान, मैं यहाँ आ गया हूँ, कुछ वकू में आएगा, यकीनन कुछ वकू में आएगा। जी जनाब, वो अपने खादमों को अपने रूह से मसा करता है, वो उनकी तरफ अपने फरिश्ते भेजता है। बाज़ औक़ात लोगों ने फरिश्तों का मजाक उड़ाया। मुझे आपके साथ एक मिनट के लिए यहाँ मुड़ने दें, एक मिनट के लिए। अब्रानियों में मुड़ते हैं, अब्रानियों 4 बाब और आइए, मेरा मतलब है अब्रानियों पहले बाब की 14वीं आयत को पढ़ते हैं। क्या वो खिदमत गुजार रूहें नहीं हैं जो नजात की मेराज पाने वालों की खिदमत की खातिर भेजी जाती हैं? फरिश्तों में से उसने किसकी बाबत कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ खुदा के तमाम फरिश्ते? अब बाइबल हमें यहाँ बता रही है कि खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। खुदा को जलाल मिले, वो क्या है? खिदमत गुजार रूहें। खुदा को जलाल मिले, खिदमत गुजार रूहें भेजी। कहाँ से? खुदा की हजूरी से। क्या करने के लिए? खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए। आमीन। आप किसी तंजीमी ग्रोह के नजरिए की खिदमत करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हैं। ये बात है, खिदमत गुजार रूहें भेजी जाती हैं। हम इनकी मौजूदगी का कैसे पता लगाएं? बाइबल कहती है कि खुदावंद खुदा का कलाम उसके नबियों के पास आता है। क्या ये दुरुस्त है? ये फरिश्ते खुदा के रूह के जरिए उसके कलाम की खिदमत करते हैं, रूल कुछ के वसीला से कलाम की खिदमत करते हैं, और रूह और कलाम नबियों के पास आते हैं और नबियों के पास खुदा का कलाम होता है। यही सबब है कि उनसे मौजजात जाहिर होते हैं और जो उन्होंने किए। ये इंसान ना था, इंसान के अंदर खुदा का रूह था। खुदा के कलाम के लिए मसीह का रूह इंसान के अंदर था। उसने क्या किया था? उसने तमाम रगों को साफ कर दिया। खुदा ने उसे चुना और उसे पाक रूह से मसा किया, और अब वो जिंदा ना था। उसने उस वक्त तक कुछ ना किया जब तक रोया में कुछ ना देखा। एलिया ने कोई करमल पर कहा, मैंने सब कुछ तेरे हुक्म से किया है, अब खुदावन साबित कर दे सिर्फ तू ही खुदा है। ओ खुदा को जलाल मिले। मैंने ये बहुत दफा देखा है, जब आप खुदा के रूह को किसी मकाम पर उतरते देखें तो वो मकाम मसा हो जाता है। अगर ये छोटा ग्रोह जो आज सुबह यहाँ जमा है इस जहन को ले ले और हर शक को रास्ते से दूर कर दे, अब आप मजीद कैसे शक कर सकते हैं? जबकि आप मुर्दों को जिंदा होते, लंगड़ों को चलते, अंधों को देखते और बहरों को सुनते देख रहे हैं। खुदावंत का फरिश्ता, हत्ता के उसकी तस्वीर यहाँ दीवार पर लटक रही है। उसने हर जगह साइंस को लाजवाब कर दिया है। उसने क्या किया? ठीक कलाम के साथ खड़ा रहा। आमीन। ये हर बदरू को काट देता है। जी हाँ, ये ऐसे ही करता है। ये क्या है? खिदमत गुजार रूहें खुदा की हजूरी से भेजी जाती हैं कि कलाम की मनादी करने वालों को मसा करें, जो कलाम के साथ खड़े रहे, और वो कलाम को निशानों के साथ साबित करता है, और यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, साबित करता है मसीह यही है। हम क्यों कर शक करते हैं जबकि वो साइंसी, मादी, रूहानी और हर तरीके से यहाँ पर साबित हुआ है? अब ये मामला क्या है? ये हमारे जेनों के अंदर है। हम चीजों के लिए जेन को खोल कर कहते हैं, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं जानता कि इस तरह हो सकता है या कि नहीं, शायद मैं कल कुछ बेहतर महसूस करूं। हो, इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, शायद इब्राहिम ने सारा से कहा हो, उसकी औरतों वाली उम्र खत्म हो चुकी है। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? उसकी जिंदगी का वो 28 दिनों वाला दौर गुजर चुका है। देखें, उसकी उम्र 65 बरस थी और उसका वो दौर गालबन 15 और 20 साल पहले खत्म हो चुका था। और शायद इसके कुछ रोज बाद इब्राहिम ने सारा से पूछा, क्या तुमने कोई तब्दीली महसूस की? मेरी जान, जरा भी तब्दीली नहीं आई। इससे हरगिज कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा जवान औरत वाला मामला फिर शुरू हो जाए तो हम जानते हैं कि उस जिंदगी के खून के वसीला, ठीक, बिल आखिर बच्चे के होने का वक्त आएगा और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। अब क्या आज तुमने कोई तब्दीली महसूस की है? खुदा को मुझसे वादा किए एक महीना हो गया है, क्या तुम्हें कोई तब्दीली महसूस हुई है? मेरी जान, कोई तब्दीली नहीं। इब्राहिम, अभी कोई निशान जाहिर नहीं हुआ। मैं अभी तक वैसी हूँ जैसी मैं पहले थी, अभी जरा भी तब्दीली नहीं हुई। खुदा को जलाल मिले, हम इसे हर सूरत में हासिल करेंगे। इब्राहिम, क्या तुम्हारा मतलब है? ऊपर देखो, अगर खुदा ने तुम्हारे साथ वादा किया है तो वो हमें इस तरीके से कोई निशान देगा। यकीनन वो हमें निशान देगा। हालेलुया। कमजोर और जनाकार नस्ल निशान तलब करती है, ये सच है। इसके पास निशान था। कौन सा निशान था? खुदा का कलाम, यही निशान था। खुदा इस बच्ची को कैसे शिफा दे सकता है? खुदा का कलाम यूँ कहता है, खा कोई जोश महसूस करूँ या ना करूँ, अगर मैं, परवाह नहीं, कुछ भी हो, खुदा ने यूँ कहा था, इसलिए ये अटल है। इब्राहिम ने कहा, अपना सब मालो सबाब बांध लो, हम उस मुल्क को जा रहे हैं। इब्राहिम, तुम कहाँ जा रहे हो? ये मैं नहीं जानता। आमीन। लेकिन हम किसी भी तरह जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। उन्होंने सामान बांधा और चल पड़े। हालेलुया, ये है खुदा का हकीकी कलाम। इब्राहिम किस चीज को थामे हुए था? खुदा के वादा को, यानी खुदा के कलाम को। हम उसे हासिल करने जा रहे हैं। इब्राहिम अपने लोगों से निकला। ये ऐसे ही है क्योंकि ये शक करने वाले और गैर ईमानदार हैं, और ये तुझे भी यही कुछ सिखा देंगे। बाहर निकला, अपने आप को उनसे अलग कर और मेरे लिए जिंदगी गुजार। ये क्या है? अपने तमाम शौर और अकल और पिछली बातों को छोड़ दे, अपने जहन को खोल और याद रख, ये मैं हूँ, आ और मेरे साथ जिंदगी गुजार। आमीन। आज सुबह इब्राहिम के तमाम फर्जंदों को इसी तरह की जिंदगी के लिए खुदा बुलाता है। बड़ी जंग अब आलमी सतह पर जारी है। खुदा अपने फर्जंदों से क्या चाहता है? कि वो किस चीज से अलग हों? देखने, छूने, सूंघने, सुनने, चखने, तसव्वुरात, शौर, यादाश्त, मंतक, जज्बात, हर चीज से अलग हों। अपने जहनों को खोलकर कलाम को अंदर आने दें और कलाम के साथ चलें। यही हकीकी मुहाफिज है। सितारे इसी तरह खड़े हैं। निजामे शमसी में तब्दीली नहीं होती, यानी मुंतकता अलब्रुज। सुबह का सितारा अपना फर्ज अदा करने को हर सुबह उसी तरह निकलता है जैसे उस वक्त था जब जमीन तख्लीक की गई थी। शाम का सितारा भी अपनी जगह संभाल लेता है, और इसी तरह हर एक सितारा। दुबे अकबर मुकर्रर मौसम पर ऐन उसी जगह होता है जहां उसका होना मुकर्रर समझा जाता है। कुतुबी सितारा अपनी जगह खड़ा है और कोई हरकत नहीं करता। हालेलुया। बाकी तमाम सितारे कुतुबी सितारे के गिर्द घूमते हैं क्योंकि ये जमीन के मरकज की सीध में है। ये मसीह की नुमाइंदगी है। आमीन। खुदा एक जगह खड़ा सिप्पा सलार अजीम की तरह अपनी फौजों को हुक्म देता है। जैसे मूसा अपने हाथ पहाड़ पर उठाए था और बनी इसराइल जंग कर रहे थे और अपने लिए रास्ता बना रहे थे, और मूसा हाथ उठाकर खड़ा था जब तक सूरज डूब ना गया, वो अपने हाथ उठाए रहा। मूसा के साथियों को उसके हाथों को पकड़कर रखना पड़ा। वो मूसा था, वो मसीह का नमूना था। मसीह के हाथों को यकीनी तौर पर बुलंद रखने के लिए उसके हाथों में सलीब पर कील ठोके गए। हालेलुया। और वो जलाल में उठाया गया, और आज वो अपनी खून आलूदा पोशाक के साथ किब्रिया की दैनी तरफ जा बैठा है, और हर सिपाही जंग में मुकाबिल को खुदा के कलाम से काट कर अपना रास्ता बनाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि क्या वाकया होगा, वो खुदा के कलाम के साथ आजाद होने के लिए अपनी खुदी को काट डालेगा। आमीन। जैसे अंडे के अंदर चूजा बाहर झांकने से खौफजदा हो तो क्या होगा? अगर वो अंडा तोड़ने से खौफजदा हो तो क्या होगा? अगर अंडे के अंदर एक छोटा सा चूजा, नन्ना परिंदा, अंडे के छिलके को तोड़ने से खौफजदा हो तो क्या होगा? और अगर वो बाहर से ये आवाज सुने, होल को ना तोड़ना, इस तरह तुम जख्मी हो सकते हो, तो क्या होगा? लेकिन परिंदे के अंदर मौजूद फितरत उसे कहेगी, चोंच मार, इसमें एक और सुराख बना। इसी तरह तमाम तंजीमें कहेंगी, मौजजात के दिन गुजर चुके हैं, आप खुद को जख्मी कर लेंगे, आप मजहबी जनून की जानिब बढ़ रहे हैं। जितनी जोर से मुमकिन हो सके इस खोल को चोंच मारें। हालेलुया। ऐ शैतान दूर हो जा, मैं अब आ रहा हूँ, ये बात है। अब मैं मजीद यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं मजीद यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं अबलीस के मैदान में मजीद नहीं रहूंगा। आज सुबह मैं बाहर निकलने का रास्ता बना रहा हूँ। आमीन। मैं एक अकाब हूँ। आमीन। हालेलुया। लेकिन उस नन्हे अकाब ने अपनी हथौड़ी नमा गर्दन से खोल को चोंच मारी। खोल चाहे जितना भी सख्त था, मगर उसने उसमें सुराख बना लिया। पहली चीज जो आप जानते हैं कि तब उसने पहले थोड़े से पर फड़फड़ाए होंगे, वो बिल्कुल ठीक था। ठोकर मारकर अपना रास्ता बनाएं, यही दुरुस्त है। आप ये किस तरह करेंगे? इसे इसके साथ फाड़ दें। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है। बिल आखिर उसने ताजा हवा में सांस लेना शुरू कर दिया। खुदावंद यूं फरमाता है, अपना सर बाहर निकालें। खुदावंद यूं फरमाता है, अब जोर लगाएं, आप बाहर आ रहे हैं। वो दोबारा खोल में कभी नहीं जाएगा। आमीन। वो आजाद है। ओ मेरे खुदाया, जब कलाम एक बार इन तमाम हवास और शौर से गुजर कर बैठ जाता है और जेन खुल जाता है और इसे अंदर आने देता है, ऐ मेरे खुदा रहम फरमा, तो फिर कभी कोई चीज इस पर दोबारा बंधन नहीं डाल सकती। आप आजाद होते हैं। जिस किसी को बेटा आजाद करता है वो खोल से बाहर आ जाता है। आपकी तंजीम आपको कभी वापस नहीं बुला सकती। शैतान आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब आप पर वो फुंकारता और धाड़ता है, लेकिन आप सलीब के सिपाही बनकर शारा पर, हो मेरे खुदा यानी शहनशाही शारा पर तेज रफ्तारी से भागते चले जाते हैं। ऐ तमाम अकाबो, ईमान के साथ यस्सू को पुकारो कि वो नूरे जहां है, और शहनशाही शाहरा पर दौड़ते चलो। यकीनन जी जनाब, ये तमाम खिदमत गुजार रूहें खुदा की हजूरी से खिदमत को भेजी जाती हैं। खिदमत को? किस खिदमत को? اس کے کلام کی، کسی علم الہیات کی نہیں، بلکہ خدا کے کلام کی خدمت، خدا کی حضوری سے خدمت گزار روحیں خدمت کو بھیجی جاتی ہیں، خدمت گزار روحیں. وہ یاد رکھیں، اگر یہ کوئی خدا کے کلام کے علاوہ کسی چیز کی خدمت کرے تو وہ خدا کا بھیجا ہوا نہیں، کیونکہ اس کے کلام کی ہمیشہ آسمان سے تصدیق ہوتی ہے. خدا ہمیشہ آسمان پر سے اپنے کلام پر نظر رکھتا ہے، اور وہ کسی روح کو کبھی بھی اپنے کلام کے علاوہ کسی چیز کی خدمت کے لیے نہیں بھیجے گا. وہ کسی روح کو ڈی 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 پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں بھیجے گا، اور نہ اس کا کالر پیچھے کی طرف مڑا ہوا ہوگا. وہ پھر یہ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، بے شک معجزات کے دن گزر چکے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں. نہیں نہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں آیا، یہ کلام کے برعکس ہے. آمین. خدا ان کو بھیجتا ہے جو روح کی ہدایت سے کلام کی خدمت کرتے ہیں. آمین. اوہ، میرے پاس ابھی چار پانچ باتیں ہیں، لیکن اس وقت میں انہیں اگلے اتوار پر چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، شیطان اور اس کی بدروحیں بھی مسا کرتی ہیں. اگر فرشتوں کی روحیں آپ کو کلام کی طرف لانے کے لیے مسا کرتی ہیں، آپ کو کلام پر ایمان لانے کے لیے مسا کرتی ہیں، تو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی خدا کے سچے نبی نے خدا کے کلام کا انکار کیا ہو؟ نہیں جناب. جب نبیوں کے زمانے کی تنظیموں نے اٹھ کر کہا اب اس نے غلط کہا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ خود تن تنہا اپنی بات کے ساتھ کھڑا رہا اور کہا یہ ٹھیک ہے. عملہ کے بیٹے مکایا نبی، اس تھوڑے سے جنونی شخص کے زمانے پر ذرا غور کریں. 400 نبی جو ممسوس سمجھے جاتے تھے وہاں کھڑے تھے، پلے ہوئے، تیار، بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پالش کیے ہوئے عالم تھے. وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے وفادار بادشاہ، چڑھ جا، خداوند تیرے ساتھ ہے، وہ علاقہ ہمارا ہے، یشوا نے ہمیں یہ دیا، اس لیے تو چڑھ جا اور اسے حاصل کر لے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، تو چڑھ جا، اسے حاصل کر لے. کیا اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہے؟ یا یہوشوا نے کہا کیا یہاں کوئی خداوند کا نبی ہے؟ ٹھیک، اگرچہ ان کے پاس 400 نبی تھے، لیکن اس نے 400 نبیوں کا یقین کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا لیکن تمہیں یقیناً کوئی نہ کوئی خداوند کا نبی مل جائے گا. اخیب نے کہا میں خیر، ہمارے پاس ایک ہے تو صحیح، لیکن او مجھے اس سے نفرت ہے. سمجھے، یہاں ہے، میں اس شخص سے سننا چاہوں گا. سمجھے، یہوشوا نے کہا اسے بلاؤ اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. بس وہ اس کے پاس جا کر کہنے لگے اب سن، آج صبح اپنا آواز تیار کر لے، کیونکہ تجھے بادشاہ کے سامنے منادی کرنی ہے. تجھے تمام فلسطین کے وزراء اور دیگر مجلس کے سامنے خطاب کرنا ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ اب تو یاد رکھنا کہ دوسرے نبیوں نے اس طرح کہا ہے، بس تو بھی یہی کہنا، تو بھی اس بات پر ایمان رکھنا. وہ غلط آدمی تھا، وہ شخص اس پرانے منطق سے دور ہٹ چکا تھا، اس نے تمام رگوں کو صاف کر لیا ہوا تھا، دیکھیں اس کا شعور. اور ٹھیک، اب تجھے معلوم ہے کہ وہ تجھ سے کیا کریں گے. اگر تو بھی یہی بات کہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجھے ضلع کا بزرگ مقرر کر دیں گے. وہ شاید ایسا ہی کریں گے. اگر تو ہم خیال بن جائے تو وہ تجھے مقامی علاقے کا نگران اعلیٰ مقرر کر دیں گے. وہ خدا کا حقیقی بندہ نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ ایسا کرتا، کیونکہ اس کی تمام رگیں بالکل صاف ہو چکی تھی، اس کا شعور اور باقی ہر چیز صاف تھی، اس کا ذہن خدا کے کلام کے لیے کھل چکا تھا، اور وہ صرف خدا کے کلام ہی پر ایمان رکھ سکتا تھا. وہ ایک خدمت گزار روح تھا، وہ صرف خدمت گزار روح تھا. مکایا نے کہا میں نہیں جانتا کہ اس وقت اب میں کیا کہوں گا، لیکن میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا کہ میں صرف وہی کہوں گا جو مجھے خداوند بتائے گا. پس انہوں نے اس رات انتظار کیا، مکایا نے ایک رویا دیکھی. اب میں تصور کرتا ہوں کہ اگلی صبح مکایا کتاب مقدس میں سے تلاش کرتے ہوئے کہتا ہوگا اب آؤ ذرا غور کریں، کیا اس رویا میں اب ان تمام نبیوں میں کہیں کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو کچھ ان نبیوں نے کہا ہے یہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، مگر اس نے کہا ذرا دیکھیں کہ پہلے ایلیا نبی نے کیا کہا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھا. ذرا ہم دیکھیں، ایلیا کے پاس خداوند کا کلام آیا. جی ہاں، اور اس نے کیا کہا تھا؟ تیرا خون کتے چاٹیں گے، ایزبل تیرا گوشت کتے کھائیں گے، راست باز اخیب کے خون کے باعث، بلکہ راست باز نبوت کے خون کے باعث. تب اس نے کہا دیکھ لیا کہ اس کی رویا عین کلام کے مطابق ہے، اور اسی طرح یہ اب اخیب پر پوری ہونے جا رہی ہے. تب وہ سیدھا اس جگہ چلا گیا اور بولا تو حملہ کر، لیکن میں نے اسرائیل کو دیکھا. دیکھیں، پھر وہ اپنی رویا بتانے سے نہ جھجکا، کیونکہ یہ خداوند کا کلام تھا. وہ جانتا تھا کہ اسے مکمل طور پر قبول کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اس نے اپنا دل، اپنا ذہن خدا کے کلام کے لیے کھول دیا تھا، اور خدا کا کلام اس پر ظاہر ہو گیا تھا، اس لیے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ خدا کا مکمل کلام ہے. अब अगर आप कहें ओ काश मैं मिकायाह बन सकूं, आप बन सकते हैं, बल्कि आप हैं अजीजों, आप भी मिकायाह हैं, आप मिकायाह नबी बन सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, अपने जहन को खोल दें। आज सुबह मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी खुदावंत का कलाम, समझे? अपना जहन खोल कर कहें, अब आप जानते हैं मैं ईमान लाता हूँ कि मैं शिफा पा सकता हूँ। बहुत बेहतर, फिर ये क्या है, क्या ये खुदावंत का कलाम है? यकीनन ये खुदावंत का कलाम है। और कोई शख्स यहाँ कहता है कि मौजजात का जमाना गुजर चुका है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और आप इसको भूल जाइए, खुदा को अव्वल दर्जा दीजिए। और अब यहाँ खुदावंत का कलाम आया और मिकायाह ने उसे बयान कर दिया और वो इस तरह पूरा हुआ। अब शैतान ने क्या किया, शैतान ने दूसरों को मसा कर रखा था, अब भी शैतान अपने खादमों को मसा करता है। ओ यकीनन ऐसा करता है, ओ हो यकीनन ये बात है, वो अपने खादमों को मसा करता है। वो उन्हें किस चीज से मसा करता है, वो उन्हें बे इतकादी के साथ मसा करता है। शैतान और उसकी बदरवा इंसान को खुदा के कलाम पर ईमान ना लाने का मसा देती हैं। अब अगर आप उसकी तस्दीक चाहते हैं तो पैदाइश 3:4 की तरफ रुजू करें। आइए जरा एक मिनट के लिए इस मकाम पर चलें और देखें कि क्या ये उसकी पहली चाल नहीं है, उसका पहला काम जो उसने किया। वो उसको कभी नहीं छोड़ता और वो उसे हमेशा इस्तेमाल करता है। अब आइए जरा इसे देखें कि ये क्या चाल है। अब उसने कलाम के साथ अदम इतफाक नहीं किया, बल्कि उसने हवा को यूं कायल किया, जैसा कि आप जानते हैं, उसने सारे कलाम को ना लिया बल्कि थोड़े कलाम को लेते हुए उसके गलत मैनी बयान किए। शैतान ने कलाम को ऐसे बयान किया जैसे वो चाहता था कि उसे बयान करे। अब पदेश, मैंने पदेश 3:4 को निकाल लिया है, आइए देखते हैं कि ऐसी ही बात है, ये ठीक है। और सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, तुम हरगिज ना मरोगे। देखें उसने किस तरह इसे बयान किया। ओ हमारा ईमान है कि मौजजात के दिन गुजर चुके हैं, हम ईमान नहीं रखते कि आज कल भी लोग इस तरह रुल कुछ पा रहे हैं जैसे पेंतिकोस के दिन हुआ। ओ आप किसी भी तरीके से बपतिस्मा लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शैतान को देखा, क्या आपने उसकी चाल को देखा? ठीक है, अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि आप ठीक नहीं हो सकते तो ये हतमी बात है। अब मैं डॉक्टर की तहकीर या उस पर बेएतकादी की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर साइंसी खतूत पर बात कर रहा है। जहाँ तक हो सकता था डॉक्टर ने हर कोशिश की है कि वो मरीज की जान बचाए, लेकिन वो बचा नहीं सकता क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया जो डॉक्टर कर सके। उसने आखिरी हद तक अपनी समझ को इस्तेमाल कर लिया है, वो दयानतदार आदमी है। मगर अब भी इल्म का दरख्त बिल्कुल है, लेकिन जब आप इससे दूर हट जाएंगे तो जिंदगी के दरख्त पर कदम रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आमीन, ये बात है, ये काम करता है। जी हाँ, अब शैतान की ये चाल क्या करती है, उसने यहाँ क्या कहा? अब पहली और दूसरी आयत को देखें। अब आइए आइए मुझे पहली आयत को पढ़ने दीजिए, 3:3। अब सांप कुल दस्ती जानवरों में से जिनको खुदावंत खुदा ने बनाया था ज्यादा चलाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई ही खुदा ने कहा है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? जरा इसकी बात को सुने, वो कितना मकार बन जाता है और किस तरह वो कलाम पर सफेदी फेरता है, समझे? वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो हवा के जहन में दाखिल होता है, समझे? जब वो उससे बातचीत कर रहा था, इससे पहले कलाम वहाँ चार दीवारी कर चुका था। अब शैतान को फसील खड़ी ना करने दें, समझे? खुदावंत के कलाम को अपने दिल में कला बंदी करने दें, समझे? आप भी इसी तरह करें। अब देखें, सब मिकायाह हों। औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, लेकिन जो दरख्त बाग के दरमियान में है, दरमियान में, समझे, उसकी बाबत खुदा ने कहा है, ना उसके फल में से खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। देखें, अब ये कलाम था और वो कलाम बयान कर रही थी। अब गौर करें, और सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे। क्या आपने इसकी चाल देखी, समझे? वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो पहले इंसान, उस बेशकीमत औरत को खुदा के कलाम पर ईमान ना रखने का मसा देने की कोशिश कर रहा था। वो औरत से यही कुछ कराना चाह रहा था। अजीजो, वो आपसे भी यही कराने की कोशिश करेगा, वो हम में से हर एक को यही मसा देने की कोशिश करता है। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको अब करनी है, आप आजाद मर्जी के मालिक हैं, आप उसको कबूल कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, उसे ठोकर मारकर उड़ा दें। काश हवा इसकी बात सुनने के लिए ना रुकती, किसी बात के लिए ना रुकिए, हरगिज ना रुकिए। जब अलीशा ने जहाजी को कहा, मेरी लाठी ले जा, और इसे ले जाकर उस मुर्दा बच्चे के ऊपर रख दे, और यहाँ तक अगर कोई तेरे साथ बात करने की कोशिश करे तो बात मत करना, और अगर कोई तुझे रोकने की कोशिश करे तो तू चलता रहना। उस औरत को देखें जिसने अपने नौकर को बुलाया और उसने कहा गधे पर जीन डाल और चलता जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तू मत रुकना। ये बात है, जब आप पैगाम हासिल कर लें तो फिर चलते ही रहें। आमीन। ये मत कहें मैं आगे नहीं चल सकता, नहीं मैं कमजोर हो रहा हूँ। सिर्फ चलते ही रहें और कभी मत रुकें। हर चीज को एक तरफ रख दें, सिर्फ कलाम के जरिए काटते जाएं। भाई तलवार अपने हाथ में लें और दुश्मन को चीरते जाएं। मैं एक दफा फुटबॉल के एक स्टेडियम में गया जहाँ इबादत होनी थी। मैंने दरवाजे पर रुककर ऊपर निगाह डाली और उस पर लिखा था लड़ाई में कुत्ते की जिसामत नहीं देखी जाती बल्कि कुत्ते के अंदर लड़ाई की जिसामत देखी जाती है। बस जंग जीतने के लिए ये चीज है, समझे? आप कहते हैं ठीक है, देखा है तमाम बड़ी कलीसियाएं इसके खिलाफ हैं, मुझे इनकी जिसामत से कोई गर्ज नहीं। जिस चीज की अहमियत है कि कुत्ते के अंदर लड़ाई की कितनी जिसामत है, अहमियत ईमान की है जो किसी फर्द के अंदर होता है। अगर आप बुजदिल हैं तो अपने बिल के अंदर चले जाएं, लेकिन मेरे भाइयों अगर आप सिपाही हैं तो मजबूती से खड़े रहें। जंग जारी है, हक और बातल मसरूफे कार हैं, आइए जंग लड़ें। पीटर कार्ट राइट की तरह जो एक शहर में गया उसने कहा खुदावन ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ आऊँ और बेदारी लाऊँ। उसने एक पुराना गोदाम किराए पर ले लिया और उस गोदाम की सफाई शुरू कर दी, और शहर का बड़ा बदमाश पहलू से पिस्तौल लटकाए उधर आ निकला। दरवाजे पर पहुँचा, किसी से पूछा वो शख्स यहाँ क्या कर रहा है। उस शख्स ने बताया ये एक मनाद है, वो कहता है वो यहाँ इबादत कराएगा। ठीक है, उस बदमाश ने कहा मेरा ख्याल है मुझे जाकर इसे उठाकर गली में फेंक देना चाहिए और मुझे इसे यहाँ से भगा देना चाहिए, बस इतना ही काम है, हम अपने इलाके में कोई इबादत नहीं चाहते। बस वो बदमाश उधर दरवाजे पर पहुँच गया और पस्त कद पीटर कार्ट राइट अपना कोट पहने हुए था, और आप जानते हैं वो खिड़कियों और दीवारों को धो रहा था। आप जानते हैं वो छोटे कद का आदमी था। पुराना मनाद उस पर हंसने लगा, जानते हैं क्यों? वो बदमाश मुर्गी का गोश्त खा रहा था। आप जानते हैं आजकल का सलीका क्या है? बस वो खिड़कियों को तो रहा था और काम मुकम्मल कर रहा था। जसीम बदमाश उसके पास गया जिसका पिस्तौल पहलू से लटक रहा था, उसका कोट खींचकर कहने लगा तुम क्या कर रहे हो? ओ, मनाद ने जवाब दिया मैं खिड़कियां धो रहा हूँ। उसने खिड़कियों की सफाई जारी रखी। आप जानते हैं उसके सामने एक मकसद था, वो ये कि खुदा ने इसे बेदारी लाने को कहा है। उसने खिड़कियों की धुलाई जारी रखी। उस बदमाश ने कहा हम यहाँ बेदारी की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उस मनाद ने कहा ओ, लेकिन खुदावन ने मुझको यहाँ बेदारी लाने के लिए भेजा है, समझे? उसने अपना काम इसी तरह जारी रखा, समझे? समझे? बहुत बेहतर, वो बदमाश बोला एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। बदमाश ने कहा ये शहर मेरी मर्जी पर चलता है। मनाद ने कहा ओ, तुम्हारी मर्जी पर? और आप जानते हैं उसने खिड़कियों की धुलाई जारी रखी। उस बदमाश ने कहा तुम्हें बेदारी लाने से पहले मुझे शिकस्त देनी होगी। उसने कहा ओ, क्या मैं दूं? ठीक है, मैं पहले यही काम करूंगा। उसने अपना कोट उतार दिया और उसके पास जाकर उसे कॉलर से पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और उछलकर उसके ऊपर चढ़ गया, और उसने कहा अगर मुझे गाली बाने की जरूरत है तो मुझे लड़ना भी होगा। खुदावन मेरी हिम्मत को बढ़ा और उसने मार मार कर उसका कचुम्बर निकाल दिया और फिर कहा क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? उस बदमाश ने कहा हाँ बस इतना ही काफी है। उसने उठकर उसके साथ मुसाफा किया। उस रात वो बदमाश कलीसिया में निजात पा गया। यह है आपका मकाम, समझे? बस खुदा के कलाम को ले लें और हर शक को काटते हुए गुजरते जाएं। क्या आप ये बात समझ गए? यकीनन ये इसी तरह है। अगर पहला काम यह है तो आइए इसे शिकस्त दें। ठीक है, सबसे बड़ा काम जो मैं जानता हूँ वो तमाम शकूक से निजात हासिल करना है, और हमारा अगला काम अपने अज़्तराबात से छुटकारा हासिल करना है। अगर मेरे हवास मुझसे कहें ठीक है तुम्हारी हालत खराब है, अगला काम इसे काट गिराना है, यही दुरुस्त है। आप कहते हैं ठीक है, आप वो मुझे बताते हैं, आप जानते हैं मेरे हवास मुझे बताते हैं कि भाई ब्रैनम कि मैं ठीक है, लेकिन आपको इस चीज को काट फेंकने की जरूरत है वरना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने इस अगले काम को सरंजाम दें, डंडे बरसाएं, काम करते रहें, सिर्फ आगे बढ़ते रहें, एक ही मकसद सामने रखें, मैं जीतूंगा, आमीन, मैं हार नहीं सकता, मैं जीतूंगा, आमीन। शैतान भी मसा देता है, समझे? उसकी पहली चाल क्या है? सबसे पहले वो किस जगह पर कब्जा करता है? जहन पर। हवा थोड़ी देर सुनने के लिए रुक गई जो सांप ने कहा था, ओ क्या आपको इसी तरह नहीं कहना चाहिए? यही जगह है जहां बहुत सारे मर्द और औरतें गलती कर जाते हैं। ये सच है, एक लम्हा के लिए रुक जाइए, एक लम्हा के लिए ठहर जाइए। मैंने कई दफा तलाक के मुकदमात देखे हैं और कई बातें मेरे सामने आई हैं। ठीक है भाई ब्रैनम, मैं आपको बताती हूँ, वो इस तरह की आवाज़ निकालता था। आप जानते हैं मैं रुक गई, और दयानतदारी की बात है कि मेरा ऐसा मकसद ना था। ओ हो, यहाँ हैं आप। ओ, वो मेरी मेज के दूसरी तरफ बैठी थी। उसकी आंखें इंतहाई खूबसूरत थी, समझे? ओहो, क्या आप समझ गए हैं? यही बात है, शैतान भी इसी तरह काम करता है। ओ, डॉक्टर ने मुझे बताया था मैं तंदुरुस्त नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ है आप। ये वही बात है, देखें, यही सबसे बड़ी जंग है जो कभी लड़ी गई थी। बहुत बेहतर, मुझे बताया गया था, मैंने देखा कि फलां फलां शख्स रूल कुछ से मामूर है। जी हाँ, आपने किसी पुराने रयाकार को देखा होगा जो वाकई ही एक पाक रू रखते हैं, वो कैसे हैं? ओ हो, जी हाँ, शैतान आपको किसी पुराने कौवे की तरह मतवज्जो करेगा, लेकिन वो आपको हकीकी कबूतर नहीं दिखाएगा। ओहो, ये बिल्कुल ठीक है, वो आपको कबूतर नहीं दिखाएगा, और वो इसकी तरफ से आपको अंधा रखेगा। ओ, याद रखें, वो भी एक जंगजू है, लेकिन हमारा अजीम कप्तान जो आपके अंदर है, वो इससे बड़ा है जो दुनिया में है। खुदा के कलाम को थामे रखो, इसलिए ऐ फौज के कप्तानों, खुदा के कलाम पर ईमान रखो। भाइयों, अपने कला को थामे रहो, ये सच है, अपने मकाम को थामे रहो। इसी तरह एक दफा यहाँ एक छोटी सी लड़की थी, हो सकता है कि वो खतून यहाँ मौजूद हो, उसका नाम नेली सैंडर्स था। ये उन वाकयात में से एक था जब मैंने बदरुओं को निकलते देखा। अब जहाँ हम उस वक्त रहते थे वो कब्रिस्तान से परे 3 ब्लॉक पार वाकया था। उस वक्त मैंने नई नई मनादी शुरू की थी और मैं ठीक यहाँ कोने वाली जगह पर साहिबान लगाकर इबादत करा रहा था, और ये छोटी लड़की मशहूर डांसरों में से एक थी। वो हाई स्कूल की तुलबा थी, और वो लड़की और ली हान बेहतरीन डांसर थे। आप में से बहुत लोग ली हान को जानते हैं, जो एक तालाब का मालिक था। इसी तरह वो लड़की और ली हान मुल्क के नामवर डांसर थे, अगरचे वो खुद भी एक कैथलिक था। बिलाशुबा मजहब भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, बस इस तरह नेली और ली के लिए मजहब कुछ ना था। बस वो एक बड़ी रकासा थी और ली भी बड़ा डांसर था, और वो यहाँ ब्लैक बॉटम और जेटरबग्स जैसे रक्स करते थे और इसी तरह के और डांस करते थे। और वो लड़की, बल्कि ये दोनों मुल्क भर में बहुत मशहूर थे। एक दिन वो रात को लड़खड़ाती हुई इबादत में आई और मजबा के आगे गिर पड़ी। बेचारी नेली, खुदा उसके दिल को बरकत दे। वो मजबा के आगे लेटी रही, उसने अपना सर उठाया और रोने लगी, और उसके आंसू चेहरे से बह रहे थे। उसने कहा, बिली, वो मुझे जानती थी। उसने कहा, मैं इस बुराई से निजात पाना चाहती हूँ। मैंने कहा, नेली, तुम निजात पा सकती हो, यीशु तुम्हें निजात दे चुका है। ऐ लड़की, अब तुम्हें इस निजात को उसके कलाम की बुनियाद पर कबूल करने की जरूरत है। वो वहाँ ठहरी रही और रोती और दुआ करती रही, और उसने खुदा से वादा किया कि वो फिर कभी दुनिया की नहीं सुनेगी। और अचानक एक प्यारा और शीरी सुकून कल्बी उसकी रूह में उतर आया। वो वहाँ खड़ी हुई और बुलंद आवाज से उसने नारे लगाने और खुदा की तारीफ करना और खुदा को जलाल देना शुरू कर दिया। और उसके 6 या 8 माह बाद वो एक रात स्प्रिंग स्ट्रीट में चली आ रही थी, और वो अभी एक नौजवान लड़की, बल्कि अभी 9 उम्री में थी। उसकी उम्र कोई 18 साल के करीब थी। वो मेरे पास आई और उसने कहा, होप, ये मेरी पहली बीवी का नाम था जो फोत हो गई थी। उसने कहा, काश मैं होप और आयरिन की तरह दिखाई देती। उसने मजीद कहा, आप जानते हैं, उन्होंने कभी दुनिया की रविश इख्तियार नहीं की। उसने कहा, दुनिया हमारे ऊपर निशान लगाती है। उसने कहा, मैं कितनी बदनमा दिखाई देती हूँ। उसने फिर कहा, अब मैंने मेकअप वगैरह छोड़ दिया है, लेकिन मैं बद्दी दिखाई देती हूँ, हत्ता कि मेरा चेहरा भी बिगड़ चुका है। उसने कहा, मैं बदनमा दिखाई देती हूँ। उसने कहा, लेकिन वो कैसी मासूम और नाजुक दिखाई देती हैं। उसने कहा, काश मैंने ये कभी ना किया होता। मैंने कहा, नेली प्यारी बहन, यीशु का खून तमाम गुनाहों से पाक करता है, बस इस पर ईमान रखो। आप में से अक्सर लोग वैन ब्लैडसो को जानते हैं, जो साल हर साल मेरा जिगरी दोस्त रहा। वो शराबी था, और मेरे भाई एडवर्ड के साथ वो यहाँ आ गया। उसने यहाँ बाजार में शराब पी रखी थी, और मैंने उसे उठा लिया, वरना पुलिस वाले उसे पकड़ ले जाते। मैं उसे घर ले आया। मैं एक खादम था और शादी से पहले अपने माँ बाप के साथ रहता था। मैंने उसे लाकर बिस्तर पर डाल दिया और मैं खुद दोरे पलंग पर सो गया। आप जानते हैं, यहाँ ब्रहनम अफराद का बड़ा हजूम था। हम 10 अफराद थे और हमारे पास 4 कमरे थे, और इसलिए हमें 2-2 होना पड़ता। इसीलिए मैंने सोने के लिए दोरा पलंग रखा हुआ था। मैंने उसे बचा लिया और शराबी वैन को अपने साथ सोने दिया। मैंने शराबी को लटाकर घर बंद कर दिया। मैं लेटा हुआ था और मैंने कहा, वैन, क्या तुम्हें अपनी इस हालत पर शर्म नहीं आती? उसने कहा, विली, मेरे साथ ये बात मत करो। मैंने अपना हाथ उस पर रखा और कहा, वैन, मैं तुम्हारे लिए दुआ करने लगा हूँ, खुदा तुम्हें बरकत दे। मैंने तकरीबन एक साल पहले हो मेरा अंदाजा है निजात हासिल की थी। और इसी तरह अचानक बाहर एक गाड़ी का दरवाजा बंद करने की आवाज आई और किसी ने हमारे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू किया, भाई बिल, भाई बिल। मैंने सोचा मेरे खुदा कोई मरने के करीब होगा। मैं दरवाजे की तरफ लिपटा, मेरा पुराना लिबास वहाँ पड़ा था। मैंने अपना पुराना लिबास इस तरह पहना और वैन पर कपड़ा डाला और दरवाजे की तरफ दौड़ा। ये किसी औरत की आवाज सुनाई देती थी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर यही लड़की थी। उसने कहा, ओ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा, अंदर आइए। और मैंने लाइट जला दी। वो सिर्फ रोए जा रही थी और फिर बोली, ओ भाई बिल, मैं तबाह हो गई, मैं तबाह हो गई। मैंने कहा, नेली क्या बात है, क्या तुम्हें दिल का दौरा पड़ गया है? उसने कहा, नहीं। उसने फिर कहा, भाई बिल, मैं स्प्रिंग स्ट्रीट में जा रही थी। उसने फिर कहा, यकीन करो भाई बिल, यकीन करो भाई बिल, मेरा कोई बुरा इरादा ना था, मेरा कोई बुरा इरादा ना था। मैंने कहा, मामला क्या है? मैंने सोचा अब मैं इसका क्या करूं, मैं नहीं जानता क्या करूं, मैं महज एक नौजवान खादम था। उसने कहा, ओ भाई बिल, मैं तो बिल्कुल रेजा रेजा हो गई हूँ। मैंने कहा, अब हौसला रखो बहन और मुझे सारा मामला बताओ। और उसने कहा, ठीक है। उसने बताया, मैं गली में चली आ रही थी और रेडमैन हॉल के करीब, वहाँ वो हफ्ते की रात को महफिल रक्स मनाया करते थे। और उसने कहा, मेरे पास कुछ सामान था और मैं एक लिबास तैयार करने को घर जा रही थी। उसने मजीद कहा, और मुझे मौसीकी की आवाज़ सुनाई दी। और उसने कहा, आप जानते हैं, उसने बताया, मैं एक मिनट के लिए रुक गई। और उसने कहा, मुझे अच्छा महसूस होने लगा, आप जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर उसने गलती की थी, वो एक लम्हा के लिए रुक गई थी, उसने सिर्फ उसको सुना था। उसने कहा, ठीक है, और वो सोच में गुम हो गई और कुछ देर बाद बोली, ऐ खुदावन, तू जानता है मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। फिर कहा, खुदावन, तू जानता है मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे यकीनन वो वक्त याद आता है जब मैं और ली तमाम कप जीत लिया करते थे। और इसी तरह मजीद यादें। उसने कहा, मेरे खुदा, मुझे याद है कि वो मौसीकी मुझे खींच लिया करती थी, मैं जानती हूँ। ओहो, आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए, उसने पहले आपको वहाँ पहुँचाया। ये इतना मजबूत है जितना कोई शख्स हो सकता है, समझे? कितने लोग हैं जो नेली सैंडर्स को जानते हैं? मेरा ख्याल है कि आप सब तकरीबन जानते हैं। जी हाँ, यकीनन जानते होंगे। बस वो, उसने कहा, वो बोली, ठीक है, आप जानते हैं? क्या बोली? उसने कहा, शायद मैं वहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाऊँ, मजीद कहा, और वहाँ उनमें अपनी गवाही दे सकूँ। ओ देखें, आप ठीक शैतान के मैदान में हैं, इससे बाहर ठहरें, आपको तमाम बुराई से बचना होगा। लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ी और कुछ देर वहां खड़ी रही, और फिर आप जानते हैं क्या हुआ? वो फर्श पर किसी लड़के के बाजू में रक्स में शामिल हो गई। फिर उसको अकल आई और वो मुसलसल रोए जा रही थी और कहती थी, ओ मेरी सारी नेकी बर्बाद हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा, ठीक है, मैं बाइबल को ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मेरा ईमान है, यीशु ने कहा था वो बद्रूहों को मेरे नाम से निकालेंगे। मैं और अब वैन भी कुछ कदरे होश में आ गया था और वहाँ बैठा ये सब कुछ देख रहा था, समझे? मैंने कहा, अब ऐ शैतान, मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये मेरी बहन है और तेरा इसके साथ कोई काम नहीं कि तू इसे पकड़े रखे। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, इसी मकाम पर तो इसने गलती की थी। मैंने कहा, लेकिन तुझे इसमें से निकलना पड़ेगा, क्या तूने मेरी आवाज सुनी? और ऐ खुदा, मेरी मदद कर, खुदा अदालत के कटहरे में ये जान लेगा। और यूं हुआ कि दरवाजा खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगा, फड़फड़ फड़फड़। दरवाजे में आवाज थी, एक मोटा जसीम चमकादड़ नुमा शह। मैं सोच रहा था और उसी लम्हे नेली ने कहा, बिल इधर देखो, इधर देखो। मैंने कहा, हाँ, ये क्या है? उसने कहा, मैं नहीं जानती। मैंने कहा, मैं भी नहीं जानता। और दरवाजा बार बार फड़फड़ फड़फड़ करके खुद ब खुद बंद होता और खुलता जा रहा था। और मैंने सोचा, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या मसला है? मैंने फिर इसी तरह देखा और मैंने कहा, ऐ शैतान, इसे छोड़ दे, यीशु के नाम से इसमें से निकल जा। जब मैंने ये कहा तो एक बहुत बड़ी, तकरीबन इतनी लंबी चमकादड़ नजर आई जो नेली के पुष्ट की तरफ से बुलंद हुई। उसके लंबे बाल परों और पांव से नीचे लटक रहे थे और वो ऐसे जा रही थी, और उसने मुझ पर झपटना शुरू कर दिया जितने जोर से उसके लिए मुमकिन था। और मैंने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, यीशु मसीह का खून मुझे इससे महफूज रखे। और वैन ने जब ये देखा तो वो बिस्तर से उछल पड़ा और यहाँ ये बड़ा साया दायरे में ऊपर नीचे उड़ता घूम रहा था। वैन कमरे से उठा और पूरे जोर से भागता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। इसी तरह फिर मैंने नेली को उसके घर पर छोड़ा और फिर मैं वापस आ गया और मेरी वालदा ने अंदर आकर बिस्तरों की चादरों और दूसरी तमाम चीजों को हिलाकर देखा, लेकिन पलंग में कोई चीज ना थी। ये क्या था? उसमें से बदरू निकल गई थी। वजह क्या हुई थी? ये कि वो एक मिनट के लिए रुक गई थी। यही बात है, कभी भी हरगिज ना रुकिए। खुदा अपने कलाम को आपके दिल में उतारता है, उसी तलवार को लेकर काटते और गिराते जाएं। हालेलुया, मेरे पास किसी चीज का इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है। मैं पार हो गया हूँ, हत्ता के मेरे पास बैठने के लिए भी वक्त नहीं है। अलीशा ने कहा, ठीक है, तू मेरा आशा ले जा और बच्चे के ऊपर रख, और अगर कोई रास्ते में तुझसे बात करे तो मत बोलना। अगर शैतान कहे, हाय, क्या तुम जानते हो तुम्हारे एहसासात क्या हैं? उससे बात मत करना, बस चलते ही जाना। शैतान, आप जानते हैं कि शैतान कहता है, क्या तुम कुछ जानते हो? तुम जानते हो फला फला शख्स को, जब उन्हें रुल कुछ मिला था तो तुम्हें याद है कि उनका जहन तकरीबन खो गया था। उसके साथ बात ना करें, बस चलते ही जाएं। आप किसी फला फला को जानते हैं? ये आपका और खुदा का मामला है, ये दुरुस्त बात है। खुदा को पकड़े रखें। वो अपने खादमों को मसा करता है, मुझे जल्दी करना होगा। खुदा अपने खादमों को मसा करता है, समझे? अब मैं यहाँ कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहना पसंद करूँगा। अब यहाँ बड़े गौर के साथ और ध्यान के साथ सुने खातून, अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हम शैतान की चाल देख रहे हैं, हम कैसे काम करते हैं। अब यहाँ मेरे पास बहुत सारे हवाला जात हैं जो कि बाइबल मुकद्दस में से मैंने लिए हैं, कि शैतान किस तरह नबियों और दीगर लोगों के पास आया और उसने यही कुछ किया। वो हमेशा यही चाल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि लोग खुदा के कलाम पर एतमाद ना करें। सुनो ऐ सलीब के सिपाहियों, जब आप खुदा की लिखी हुई बाइबल के किसी एक लफ्ज पर ईमान छोड़ देते हैं तो आप गैर मुसल्ला और असीर हो जाते हैं। अजीजो, क्या इस पर ईमान रखते हो? आप गैर मुसल्ला हो जाते हैं, आप असीर हो जाते हैं। ए जेलीफिश, खुदा के सब हथियार पहन लो। आमीन। हम जंग में हैं। जो कुछ खुदा ने कहा है वो सच है और हर एक आदमी का कलाम झूठा है, समझे? लेकिन जू ही शैतान की ये चाल है कि जू ही आप इसकी बात सुनने के लिए तैयार हो तो आपको गैर मुसल्ला कर दे। हवा ने कितनी बातें सुनी थी? एक ही, और उस वक्त वो गैर मुसल्ला हो गई थी। शैतान ने क्या किया? शैतान उसके जहन के रास्ते उसकी रूह में चला गया और तब वो बरगश्ता हो गई। क्या ये दुरुस्त है? जू ही उसने खुदा के कलाम पर एतमाद छोड़ा, वो गैर मुसल्ला होकर बरगश्ता हो गई। ये ठीक है, हम यहाँ शैतान की चाल को देख रहे हैं। खुदा के सिपाहियों को हुक्म है कि खुदा के सब हथियार पहन लें। क्या ये दुरुस्त है? अगर आप ये हवाला जात तहरीर करना चाहते हो तो ये इफ़्सियों 6:10-13 आयत तक है, समझे? हमने थोड़ी देर पहले इसे पढ़ा था, यही तो हमारा मतन है। ठीक है, गौर करें। खुदा के सब हथियार ले लो। क्या आपके पास चंद मिनट हैं? आइए थोड़ी देर के लिए जरा वापस चलें, जरा देखें कि खुदा के पूरे हथियार क्या हैं। ठीक है, आइए 10 आयत से शुरू करते हैं। अब बड़े गौर के साथ सुनिए, आइए खुदा के पूरे हथियार मालूम करें। आखिर में मेरे भाइयों, अब मैं बताने जा रहा हूँ, मैं अब तकरीबन 12 बजने में तकरीबन 20 मिनट कम है। मैं नहीं जानता, आज मैं आपको कोई तवील सबक नहीं देना चाहता, लेकिन शायद अब मेरे पास कोई नया पैगाम ना हो जब तक मौसम गर्मा के दौरे मुकम्मल ना कर लूँ। आप समझ गए? क्या आपको कुछ मालूम है? क्या आपको इल्म है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको बताऊँगा। एक रोज मुझे एक ख्वाब दिखाई दिया, मैं इसे बताना नहीं चाहता था लेकिन ये मेरे जहन में था, इसलिए मुझे बता देना चाहिए। इसके बाद खुदावर ने मुझे ताबीरें दी। मैंने देखा कि दीगर ममालिक में मैं खिदमत के लिए एक दरिया को अबूर कर रहा हूँ, और तब पहले मैं वहाँ अपनी बीवी के हमरा था। और आप में से कितने लोग जॉर्ज स्मिथ, 6 सेकंड स्मिथ, जो इसी शहर का रिहायशी है, जानते हैं? जॉर्ज स्मिथ का बेटा यहाँ पुलिस में है और वो बेचारा जॉर्ज अब अल्कोहल साफ करने का काम करता है, लेकिन वो बेहतरीन लड़ाका हुआ करता था। वो हमें ट्रेनिंग देने वाला था, इससे पहले के YMCA में गया वो हमें ट्रेनिंग देता था, और वो बहुत पोर्थीला था, सही पोर्थीला था, और उसका वजन भी कम था, सिर्फ 145 पाउंड, और उसने मुझे ट्रेनिंग दी थी। और वो जब खड़ा होता था और वो अपना घोंसा इस तरह सीधा मेरे पेट में मारता था, मुझे उठाकर दीवार पर मार देता था, देखें, लेकिन मुझे इससे कोई तकलीफ ना होती थी। उसने सिर्फ मुझे ट्रेनिंग दी थी और ये इसके अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग। और फिर मैंने एक ख्वाब देखा, अगली रात को मैंने ख्वाब में 6 सेकंड स्मिथ को देखा। अब ये एक रोया ना थी, ये ख्वाब था। मैंने देखा कि एक नौजवान आदमी 6 सेकंड स्मिथ से कुश्ती लड़ने के लिए आ रहा है, मगर ये बूढ़ा आदमी तकरीबन, मेरा ख्याल है मैं 52 साल का हूँ, वो 58 या 60 साल का था, लेकिन उन जवान आदमियों में से कोई उसको छू नहीं सकता था। वो उनकी गठड़ी सी बांध कर फर्श पर रख देता, बिल्कुल इस तरह, और फिर अपने हाथ से उठा लेता। अब मैंने सोचा ये हैरतअंगेज बात है, और मैंने सोचा मेरी बीवी मेरे साथ है, और मैंने उससे कहा ये हैरतअंगेज बात है। मैंने कहा मेडा तुम्हें कुछ याद है, ये मेरा उस्ताद हुआ करता था। उसने कहा मुझे याद है, आप मुझे बताया करते थे। मैंने कहा जी जनाब, इसकी अच्छी तरबियत की वजह से मैंने 15 पेशावराना लड़ाइयां जीत ली, लेकिन अंजील की मनादी के लिए ये कारोबार छोड़ दिया। फिर मंजर तब्दील हो गया और मैंने देखा कि मैं पानी को अबूर कर रहा हूँ, लेकिन जब अबूर कर रहा था तो मैं एक इंजन वाली कश्ती के जरिए सफर कर रहा था, और मैंने निगाह उठाई तो मुझे अपने दो भाई नजर आए जो एक डोंगी में बैठे हुए थे, और वो मेरे साथ चलने को तैयार थे। मैंने कहा ए भाइयों, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ओहो मुझे अकेला ही जाना होगा। और मलाह ने मेरे पास आकर कहा ये आपकी कश्ती है, जो सफेद रंग की प्लास्टिक की कश्ती थी। मैंने कहा नहीं, ओह ये वैसी नहीं है। उस मलाह ने कहा ठीक है, आप इसमें इस रुख पर 50 मील फी घंटा रफ्तार से चल सकते हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे इसको इस तरफ को पार करना जरूरी है, समझे? बहुत बेहतर। उसने कहा फिर आप इन आदमियों के साथ चले जाएं। मैंने कहा वो कश्ती रान नहीं है, वो इसके मुतल्लक काफी इल्म नहीं रखते, वो महज जोश से भरे हुए हैं, वो इसे चला नहीं सकते, वो दोनों डूब जाएंगे, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। और उसने कहा क्या तुम भरोसा कर सकते हो? मैंने कहा सुनिए, मैं कश्तियों के मुतल्लिक इनसे ज्यादा जानता हूँ, और मैं इस किस्म के सामान से इसे चलाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने कहा इसे पार करने के लिए एक इंजन वाली कश्ती की जरूरत है, और मैंने कहा मैं इससे अच्छी चीज को कबूल करूँगा। और मैंने देखा कि उसने भाइयों में से एक की तरफ देखकर कहा क्या आप कश्ती चलाना जानते हैं? भाइयों ने कहा जी हाँ, समझे? मैंने कहा ये गलत है। मलाह वापिस आया, उसने कहा मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें। उसने बताया वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आप पर एतमाद करते हैं, लेकिन उसने कहा अगर आप इंजन वाली कश्ती में पार जाएंगे तो वो अपनी डोंगी में आपके पीछे आने की कोशिश करेंगे और वो दोनों डूबकर मरेंगे, समझे? उसने मजीद कहा वो आपका पीछा नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? घाट पर मौजूद उस मलाह ने कहा आप वापस चले जाएं। कहा इस पूरे इलाका में सिर्फ एक ही गोदाम है, छोटा सा गोदाम है, आप वहाँ बेशुमार सामान के दरमियान लेट जाएं। और मजीद कहा और वो भी यहाँ ठहर जाएंगे, जब आप चले जाएंगे तो वो भी यहाँ ठहरे रहेंगे, लेकिन उसने कहा आपको सामान के दरमियान लेटे रहना होगा। और मैं हर किस्म की गोभी और शलजम और मूलियों और चीजों वगैरह का ढेर जोड़ रहा था। फिर मेरी आँख खुल गई। उस वक्त मैं ना जानता था कि ये क्या था, लेकिन अब मैं जानता हूँ। देखें भाइयों, हम सामान के बीच में लेटे हुए हैं, इस जिंदगी में हमें अकेले ही चलना होगा। लियो, क्या आपको जब आप पहली बार यहाँ आगे आए थे तो अपना मखरूत के मुतल्लिक ख्वाब याद है, मखरूत के मुतल्लिक, और आपका ख्याल था कि आप उस मकाम तक पहुँच गए हैं? और मैंने कहा था लियो कोई इंसान खुद यहाँ नहीं आ सकता, खुदा आदमी को यहाँ लाता है। आप हर फितरी बादशाहत पर जिस पर चढ़ना मुमकिन था चढ़ गए। मैंने कहा था लेकिन लियो आप यहाँ नहीं आ सकते, समझे? वापिस जाइए और लोगों को बताइए कि ये चीज सिर्फ खुदा से आती है, समझे? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आप इंसार नहीं कर सकते। भाई और बहने, मेरी कलीसिया और सब चीजें बहुत अच्छी हैं, और दूसरी कलीसियाएं और तमाम भाई सभी बहुत अच्छे हैं। अब मैं बाहर कलीसिया से दूर होकर नहीं रह सकता। कोई कहता है ठीक है, आप उन लोगों की तरफ क्यों जाते हैं जो तसलीस प्रस्त और ये और वो, और दूसरी तरफ क्यों जाते हैं जो तहीद प्रस्त यस्सु नाम वाले हैं, और बाकी सबके साथ क्यों हैं? आप इन सब के साथ ही मेलजोल क्यों रखते हैं? वो मेरे लोग हैं, खा उन्होंने कुछ भी किया है, वो मेरे हैं, वो मेरा पुलपट है। जब बनी इसराइल ने बड़ा गुनाह किया, अत्ता के खुदा ने मूसा से कह दिया उनसे अलग हो जा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तो भी मूसा ने खुद को खुदा के आगे डाल दिया और कहा इनको हलाक करने से पहले मुझे मार डाल। उन्होंने खा कुछ भी किया हो, मैं उनकी तरफ ही तो भेजा गया हूँ। खुदा रोशनी भेजता है वहाँ चमकने के लिए नहीं जहाँ रोशनी मौजूद है, बल्कि वहाँ चमकने के लिए जहाँ तारीकी है, जहाँ रोशनी की जरूरत है। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनके साथ बिला इम्तियाज खड़ा होना पड़ेगा। उनकी गलती के बावजूद ये लाजिम है, इसराइल की गलती इंतहाई बड़ी थी, उन्होंने ऐसी बड़ी गलती की थी कि खुदा ने उन्हें तर्क कर दिया था। लेकिन मूसा, मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि ये कैसी बात थी, मगर ये मसीह का रूह था जो मूसा के अंदर था, समझे? देखें, हम सब गलत हैं, और जब हम गुनाहगार ही थे मसीह हमारी जगह खड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, खा कोई कितना ही गलत है, हम किसी से अदम रफाकत या कत तल्लुक ना करें। जब तक हम किसी रूह को जीत सकते हैं, तब तक हमें सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेअजर रहना चाहिए। देखें, हमें हर रूह को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो कुछ आज सुबह मैं कह रहा हूँ वो है खुराक जमा करना, खुराक को जखीरा करना खाने के लिए। आपके पास कुछ मौजूद होना चाहिए ताकि ज़ियाफ़त के लिए आपके पास मौजूद हो। इसे टेपों पर महफूज कर लें, कमरे के सुकून में इनको सुने। शायद जब मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊं तो आप याद कर सकें कि ये सच्चाई की बातें हैं। अपने कमरे में बैठकर इन्हें सुने, समझे? और ये खुराक है, और इसे जखीरा कर लें, जखीरा खाना में महफूज कर लें। मैं नहीं जानता अब किस तरफ सफर करूंगा, लेकिन खुदा को मालूम है कि कहां रहनुमाई मेरी करेगा। मैं नहीं जानता, मैं फक्त पैरवी करता हूं। अब क्या आपने देखा पालूस ने यहाँ क्या कहा? बड़े ही ध्यान से सुनिए। गर्ज ए भाइयों, खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, मजबूत बनो उसकी कुदरत के जोर में। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, यानी हमें गोलियां चलाना या खंजरों से नहीं काटना है। देखें, ये इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकमों से, तारीकी के हाकमों। दुनिया पर कौन हुक्मरानी करता है? शैतान। यकीनन ऐसा ही है। इन तमाम कामों को करने वाला कौन है? बेदीनी के कामों को और इन हुकूमत को और दीगर कामों को करने वाला कौन है? ये सब कुछ शैतान करता है, ये बाइबल कहती है। शैतान अमेरिका पर कंट्रोल रखता है, वो जर्मनी पर कंट्रोल रखता है, वो दुनिया के हर मुल्क पर राज कर रहा है। मैं चंद मिनटों तक इस तरफ ही आ रहा हूँ और हम मालूम करेंगे शैतान ऐसा करता है या के नहीं, बल्कि क्या हर बादशाही जो कभी थी या कभी होगी शैतान के कंट्रोल में है, जब तक खुदा अपनी बादशाही कायम ना करे। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें शामिल हर शख्स शैतान है। सरकारी दफ्तरों में दीनदार लोग भी होते हैं। ऐसा ही एक शख्स चंद रातों के बाद एन इस जगह पर आएगा और ठीक इसी जगह पर भाई ऑर्गन ड्राइव के साथ एक फिल्म बनाएगा और उसका नाम भाई रॉय है, और वो 5 मुख्तलिफ सदरों का सियासी सफीर रहा है, और वो यहाँ होगा। मेरा ख्याल है कि वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आएगा। भाई नेवल इसका ऐलान करेंगे, और वो बड़ा हैरत अंगेज शख्स है। उसका कहना है कि वो 8 जुबानें बोल सकता है, और मैं यकीन करता हूँ। लेकिन जब उसे रूह कुछ मिला तो खुदा के साथ उसे बात करने के लिए कोई जुबान नहीं आती थी, इसीलिए खुदा ने उसे एक नई जुबान दी। वो कहता है कि इससे वो खुदा से बात कर सकता है, इसे एक नई जुबान दी गई है जिसका उसे पहले कभी तजर्बा नहीं था। ये सच है। और शरारत की इन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, कहाँ पर? अब ऐ सिपाहियों, गौर से सुनो, इससे पहले कि हम दुआया कतार का आगाज करें, खुदा के सब, तुम सब, WHOLE, सब, इनमें से सब, कुछ नहीं बल्कि सब, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। और अब हम उसी दिन में हैं, और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको, कायम रह सको। आमीन। क्या आप ये समझ गए हैं? देखें अजीजों, क्या समझ गए हैं? जब आप खड़े रहने के लिए सब कुछ कर चुके हो तो फिर कायम रहें, जुम्बश ना खाएं, सच्चाई पर अपनी कमर कसकर कायम रहें। इसे सुनिए, गौर से सुनिए कि ये क्या है, अपनी कमर कसकर, यहाँ ये आपका दरमियानी हिस्सा है, समझे? सच्चाई से अपनी कमर कसकर। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम सच्चाई है, यही दुरुस्त है। तेरा कलाम सच्चाई है, बिल्कुल ठीक बात है। और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, इसका मतलब क्या है? वही करें जो दुरुस्त है। खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लें और दुरुस्त तौर पर चलें। रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, जहाँ भी जाएं, जिस भी जगह, जिस वक्त जाएं, पांव में खुशखबरी के जूते हों, समझे? और ध्यान दीजिए, और इन सब के साथ, सब के ऊपर ईमान की सीपर, यही चीज है जो तमाम तीरों को रोकती है। देखें, ईमान की सीपर लगाकर, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और निजात का खोद ले लो। ये जान है, यहाँ जहन, जहन यहाँ है सर के अंदर, खोद सर को डांकता है, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। आप इस खोद को कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये किसके लिए होता है? ये मुहाफजत के लिए होता है। खोद किस चीज से बनता है? पीतल से। पीतल को नरम नहीं किया जा सकता, ये सख्त होता है। लोहे से भी ज्यादा सख्त पीतल की चीज क्या है? ये निजात है। ये इस बात का इल्म है कि मेरी शिफा खुदा से आती है, मेरी निजात खुदा से आती है, मेरी रूह उस कलाम से मुताबकत रखती है, ना कि किसी कलीसिया के नजरिए से, बल्कि कलाम मुकद्दस से। आमीन। ये है आपका मकाम। आप एक खोद से ढके हुए हैं, निजात का खोद यानी छुटकारे का खोद। ये पहन लें और फिर आगे बढ़ते ही जाएं। ओ, अब यही काम है जो करना लाजिम है। शैतान की फौज को देखें। अब ध्यान करें। अब मैं जल्दी पैगाम खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस नुक्ते की गहराई में जाना जरूरी है। शैतान की फौज बीमारियां लाती है। शैतान यही कुछ करता है, वो तबाहकार है। शैतान की सारी सल्तनत, बीमारी, मौत, गम और अज़्तराबात और रंजो फिकर, ये सब शैतान के हैं। खुदा जिंदगी, ईमान, खुशी और सलामती रखता है, समझे? अब ये दो बड़ी ताकतें हैं जो एक दूसरे के मुकाबिल हैं। वो लड़ रही हैं, वो इस वक्त इस इमारत के अंदर भी लड़ रही हैं। वो फौजें हर रोज आपके साथ लड़ाई करती हैं। हर कुवत जो शैतान आपके मुकाबला में लाता है, वो महीब, शाहाना, बड़ी कहाना, जूलियत जैसी है और आपके दिल को खौफ ज़दा करने की कोशिश करता है। वो दुरुस्त है, लेकिन आप अंजील की हिफाजत में हैं। आमीन। आप सच्चाई के कलाम के कमर बंद से बंधे हुए हैं। खुदा को जलाल मिले। खादमों, यही निजात का खोद है। निजात का खोद, ईमान की डाल और आपके हाथ में लहराती हुई तलवार। शैतान, मैं तेरे मुकाबला में आ रहा हूँ। तू मेरे साथ साइंस के नाम से मुकाबला करता है, तू मेरे साथ सकाफत के नाम से मुकाबला करता है, तू मेरे साथ तंजीम के नाम से मुकाबला करता है, तू मेरे साथ इस या उस या फला फला नाम से मुकाबला करता है, लेकिन मैं तेरा मुकाबला खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम से करता हूँ। मैं तेरे मुकाबले में आ रहा हूँ, आगे से हट जा। हत्ता के मौत भी ठहर नहीं सकती, काट कर अपने लिए रास्ता बनाए। ये सच है। शैतान की फौज अमराज लाती हैं और खुदा की फौज को उन्हें निकाल देने का इख्तियार हासिल है। आमीन। यह है आपका मकाम। जब भी शैतान कोई चीज आप पर डाल देता है, खुदा की फौज उसे निकालने का इख्तियार रखती है। आमीन। बाहर निकाल दें। खुदा इन्हें निकाल देने ही का तरीका इस्तेमाल करता है। शैतान ने फना करने और खुदा के कलाम पर ईमान न रखने की फौज इस्तेमाल की और मिकाएल की बादशाही से बुलंदो बाला बादशाही हासिल करना चाही और खुदा ने इसे बाहर निकाल दिया। खुदा का तरीका है बुराई को निकाल देना, तकरार को निकाल देना, बिदतों को निकाल देना, रंजो गम को निकाल देना, बीमारियों को निकाल देना और गुनाह को निकाल देना। आमीन। आप उस पर गालिब हैं। आप यीशु मसीह में मुर्दों में से जिंदा करके आसमानी मकामों में बिठाए गए हैं और तमाम शयातीन आपके पांव के नीचे हैं। अगर वो सर घसीटना शुरू कर दें तो आप जानते हैं कि आप मर चुके हैं, आपकी जिंदगियां छुप गई हैं। कौन सी चीज मुर्दा है? आप अपने हवास के एतबार से मुर्दा हैं, आप अपने शौर के एतबार से मुर्दा हैं, आपकी अपनी इंसानी ख्वाहिश कहेगी हाँ मैं समझता हूँ कि मैं, आप अपने मंतक के एतबार से मुर्दा हैं, आप अपनी तमाम चीजों के एतबार से मुर्दा हैं और यीशु मसीह के नाम में दफन हुए हैं और उसके साथ जिंदा हो गए हैं और जहां वो है वहीं आप हैं। जब शक करने वालों में से एक आसमान में जाहिर हुआ तो क्या हुआ? खुदा ने उसे बाहर निकाल दिया। खुदा ने उन सिपाहियों से जो मसीह में जिंदा हो गए हैं क्या कहा है? ये कि जब शैतान मुकाबला में आए उसे निकाल डालो, उसे बाहर निकाल दो। जब यीशु ने अपनी फौज को तरबियत दी तो दुनिया के आखिर तक उन्हें ये इख्तियार दिया, तमाम दुनिया में जाओ और तमाम खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों, मेरे सिपाहियों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, तरह तरह की जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पी लेंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। ऐ मसीही सिपाहियों, जंग में कदम बढ़ाते जाओ, यीशु की सलीब को लेकर आगे ही बढ़ते जाओ। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। कलाम आगे बढ़ रहा है। खुदा अपनी दो धारी तेज तलवार से काट कर रास्ता बना रहा है। इसलिए हैरत की बात नहीं कि जब ग्रांट ने रिचीमंड को हासिल किया और जनूबी इलाके की उस औरत ने ग्रांट को आते देखा तो वो रूह की तहरीक से कहने लगी, मेरी आंखों ने खुदावंद की आमद के जलाल को देख लिया है। वो गजब के हाउस में अंगूर रौंदता रहा है। उसने अपनी खौफनाक तेज तलवार की बरक से ईमानदारों को छुड़ाया है। उसकी अफवाज आगे बढ़ रही है। आमीन। ग्रांट ने रिचीमंड पर कैसे कब्जा किया? जब वो उसकी तरफ आया, आमीन। यही तरीका था जिससे उसने रिचीमंड को हासिल किया। इसी तरह खुदा के सिपाही जब गुनाहों और बीमारियों की तरफ आते हैं तो उन पर फतह पाते हैं, आमीन। इसी तरीके से वो अपने शकूक और खौफ और दूसरी चीजों पर हावी होते हैं। जब कोई उठता है तो वो उसे चत कर देते हैं और रास्ते से हटा देते हैं। ओ मेरे अजीजो, ये बात है। खुदा ने उन्हें बाहर कर दिया जैसे उसने आसमान पर किया था। हमारा अजीम सिपा सलार हमें दिखाता है कि ये कैसे किया गया था, आमीन। राय रॉबर्टसन और बाई फंक, आप में से बहुत से पुराने तजर्बाकार लोग जानते हैं कि हकीकी सिपा सलार कैसा होता है। एक बार जेफरसन व्हील के आग बुझाने वाला महकमा जो यहाँ है, पफवा की इमारत में आग लग गई। जेफरसन व्हील का आग बुझाने वाला अमला खड़ा था और उनका कप्तान इधर उधर चलते हुए कह रहा था, थोड़ा सा पानी यहाँ छिड़क दो। उनके पास छोटा सा नल था। क्लेरेक्स व्हील वालों ने कहा, थोड़ा पानी यहाँ भी छिड़क दो। पफवा की इमारत जल गई। उन्होंने लॉइस व्हील में फोन किया और तरबियत याफ्ता लोग आ मौजूद हुए। ओ, उनके सारन हर तरफ कैसे बज रहे थे। और यहाँ के महकमे का कप्तान यही कह रहा था, थोड़ा सा पानी यहाँ छिड़क दो, थोड़ा सा पानी यहाँ छिड़क दो। वो गैर तरबियत याफ्ता लोग थे। भाइयों, जब वो इंजन रुका तो सीढ़ी के सिरे पर कौन था? कप्तान। जब सीढ़ी ऊपर गई तो वो भी उसके साथ ही था। जब वो खिड़की से जा लगी, अभी वो खिड़की से अंदर नहीं गुजरा था और उसने अपनी कुल्हाड़ी संभाली और खिड़की से अंदर फेंक दी और कहा, जवानों आ जाओ। और चंद ही मिनट में आग बुझ गई। यही होता है कप्तान। वो इस तरह कहने वाला कप्तान ना था, थोड़ा सा पानी यहाँ छिड़को, यहाँ थोड़ी सी कोशिश करो, बल्कि उसने कहा, जवानों आ जाओ, आमीन। उसने रहनुमाई की, उसने हमें दिखाया कि इसे किस तरह करना है। मैंने सोचा ये दुरुस्त तरबियत याफ्ता शोभा है। उन्होंने मिनटों में ही आग बुझा दी थी। क्यों? इसलिए कि उनके पास ऐसा कप्तान था जो जानता था कि ये क्या कर रहा है। भाई, आप अपने इल्मे अलायात, इंसान की बनाई हुई तंजीमों और अपने अदारों की जितनी भी बातें चाहे कर लें, इससे खेल लें। मेरे पास सिपा सलार है जिसने मुझे इस काम का तरीका बताया है। वो कहते हैं, ठीक है, अगर मैं इसे सूंघ सकूं, अगर इसे महसूस कर सकूं, और यही हमाकत है। सिपा सलार ने इसका तरीका अमली सूरत में दिखाया था, लूका 4 बाप में। मेरे पास पढ़ने का वक्त नहीं, आप खुद इसे पढ़ लेना, ठीक है? लूका 4 बाप की पहली आयत से पढ़ना। यीशु ने ये कभी नहीं कहा था, अब मैं तुम्हें कहूँगा, तुम जाओ और एक बड़ी तंजीम बनाओ, प्रेसबिटर और डीकन बनाओ, और या कार्डिनल और बिशप बनाओ, तुम इसे हासिल करोगे। इसने कभी नहीं कहा था। जब शैतान यीशु से मिला तो उसने कहा, तुझे भूख लगी है, इन पत्थरों को हुक्म दे कि ये रोटियां बन जाएं। यीशु ने कहा, यूं लिखा है। शैतान ने कहा, यहाँ ऊपर आ, हम तुझे कुछ दिखाएंगे। लिखा है, अगर तू ये करे तो मैं ये करूँगा, ये लिखा है। अजीम सिपा सलार ने बताया था कि ऐसे कहा जाता है। बहन, ये किस तरह किया जाएगा? यूं लिखा है, अगर तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो सेहतयाब हो जाएंगे। ये भी लिखा है, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, आमीन। ये क्या है? ये यूं लिखा है, ये सिपा सलार के हकाम है। ये लिखा है, जो कोई मेरी बातें सुनता और मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी रखता है। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये हकाम है, ये सिपाही है, ये तरीका है, हमारे आत्मशीन हथियार है। दाऊद ने क्या किया? वो एक जूलियत के मुकाबल खड़ा हुआ और उसने दिखाया। दाऊद ने फौज को किस तरह दिखाया कि उसका तरीके कार क्या था। दाऊद ने इसराइल को किस तरह दिखाया कि ये क्यों कर हुआ। दाऊद का मतलब है प्यारा नजात दहिंदा, समझे? दाऊद ने ये किस तरह किया? उसने कहा, इसे करने का ये तरीका है, खुदावंद के कलाम पर भरोसा करो। और जूलियत ने उसके मुकाबला में आकर कहा, क्या तू जानता है क्या होगा? मैं तुझे अपनी बर्छी पर टांगूंगा और तेरा गोश्त हवा के परिंदों को खिलाऊंगा। दाऊद ने कहा, तू तंजीम की सूरत में मेरे मुकाबले में आता है, तू जदीद साइंसदान की सूरत में मेरे मुकाबले में आता है, तू अपनी 14 फीट लंबी तलवार लेकर मेरे मुकाबले में आता है, तू पीतल का खोद और बारी सिपर लेकर मेरे मुकाबले में आता है, जिसे मैं जमीन पर से भी उठा नहीं सकता। तू एक तरबियत याफ्ता जंगजू की हैसियत से मेरे मुकाबले में आता है, तू अपनी PhD और LLD और LLD लेकर मेरे मुकाबले में आता है, तू इन सब चीजों के साथ मेरे मुकाबले में आता है, मगर मैं तेरे मुकाबले को खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम से आता हूँ और आज मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा, आमीन। वो छोटा सा तिल जितना लड़का एक देव के मुकाबला में आ गया, लेकिन वो जानता था कि कहाँ खड़ा था। इसराइल पीछे बैठे कांप रहा था। ओ वो बेचारा लड़का, जूलियत ने कहा अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या करूंगा, और वो निकल आया। दाऊद के पास ईमान था, FAITH, देखें यीशु में JESUS, पांच पत्थर, एक छोटा पत्थर इब्तदा करने के लिए था। जब उसे घुमाया गया तो रूल कुछ ने पत्थर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और जब उसे फेंका गया तो जूलियत जमीन पर गिरा। ये इसी तरीके से किया गया था, इसी तरीके से यीशु ने कहा था। उसने इसी तरह कहा, अब ऐ भाइयों, अगर तुम खिदमत में निकलते जा रहे हो और अगर तुम जानना चाहते हो कि इन शयातीन पर कैसे गलबा हासिल किया जा सकता है, तो मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि ये कैसे मुमकिन है। शैतान ने कहा, मैं तेरा मुकाबला करूंगा। जूलियत ने कहा, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तू भूखा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह ये रोटियाँ बन जाएं, और तू इन्हें खा क्योंकि तू भूखा है। और अगर तू खुदा का बेटा है तो तुझे ये करने की कुदरत है। यीशु ने कहा, लेकिन ये लिखा है कि अब आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि यही तरीका है जिससे हमारा सिपहसालार फतायाब हुआ। फिर शैतान उसे हैकल के किंगरे पर ले गया और कहने लगा, खुद को यहाँ से नीचे गिरा दे। फिर बोला, तू जानता है इस तरह लिखा है। यीशु ने कहा, हाँ। यीशु ने जवाब दिया, मगर ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। देखें उसने खुद अपने आप को क्या कहा, तू खुदावंद अपने खुदा हो, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, मगर ये भी लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, समझे, ओ मेरे खुदाया। यीशु ने कैसे शिकस्त दी? यीशु ने उसे खुदा के कलाम से शिकस्त दी। शैतान की चाल ये है कि वो आपको खुदा के कलाम पर ईमान ना रखने पर उकसाए, और सिपहसालार ने कहा, खुदा के कलाम को लेकर मुकाबला करो, वो मेरे नाम से बद्रोहों को निकालेंगे। ओ शैतान उनका सिपहसालार है। हो जी हाँ, आपको इल्म है कि कुछ तंजीमें हमें यकीन दिलाना चाहती हैं कि उसकी सुम दो शाखा है। आप जानते हैं ओ दुम शाखदार है, और कई और बातें। इस पर भरोसा ना करें, वो इस तरह का नहीं है। नहीं जनाब, मेरे भाइयों, वो एक चलाक शख्स है। इसका यकीन ना कीजिए कि वो इस तरह का है। वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आप डर जाएं। शैतान इस तरह का नहीं है। शैतान के शुरू ही से सुम नहीं है, मुझे उस पर शुबा है। वो एक रूह है, शैतान एक रूह है। उसके दो शाखा सुम वगैरह नहीं है, जैसा वो डराने वाला तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो अकलमंद है भाइयों। वो हमेशा और हर लिहाज से दुनियावी अकल की तालीम का मालिक और हकीकी अकलमंद शख्स होता है। ओ जी हाँ, वो खूबसूरत होता है। उसने अपनी फौज को दुनियावी अकल से मुसल्ला रखा है, यहाँ तक कि आप भाई कुछ कहने से कासर हो जाते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। जब आप किसी ऐसे शख्स को कहते सुने कि मौजजात का जमाना गुजर चुका है, नहीं, उसके सुम नहीं होते, नहीं, वो एन सेमिनरी से आता है भाइयों। वो पॉलिश किया होता, मेरा मतलब है कि वो बड़ा पुरकशिश होता है, PhD, LLD, QUST और बाकी सब कुछ पर तकिया करता है, समझे। वो इंतहाई हद तक पुरकशिश होता है, अकलमंद। यकीनन वो एक सांप है, और वो इन सब में से होशियार होता है। उसके बाल संवरे हुए भाइयों, और मेरा मतलब है उम्दा लबास और कोट, बगैर किसी शकन के खूबसूरत और ज्यादा से ज्यादा अकलमंद और तेज तरार होता है। ये सच है, आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते जब तक आप अपनी बात के लिए पूरी तरह तैयार ना हो। ये सच है। ओ, लेकिन हम उसकी पुरानी चाल को जानते हैं। हमें इल्म है कि वो इस कोशिश में होता है कि खुदा के कलाम पर ईमान ना रखें। उसके सुम दो शाखा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि अगर उसके सुम दो शाखा नहीं है, तब उसे कोई और चीज होना चाहिए। वो चर जुबान है, वो अकलमंद और तलीम याफ्ता और मुनज्जम होता है। भाइयों, उसने अपनी फौज को तैयार कर रखा है। तवज्जो फरमाएं, एक दफा मैं स्विट्जरलैंड में था, लोगों मुझे वहाँ रुकने की वजह नहीं मिल सकी। वहाँ एक दफा एक स्विट्जरलैंड में एक गैर मुल्की अफवाज दाखिल हो गई, यानी जर्मन अफवाज आ गई। देखें, वो एक पुख्ता दीवार की तरह नजर आ रहे थे। हर शख्स तरबियत याफ्ता, हर नेजा तना हुआ, बिल्कुल इस तरह 8 या 10 फीट सामने की तरफ। वो बेचारे स्विस लोगों पर चढ़ाए। उनके पास क्या था? वो दरांतियों, लाठियों और पत्थरों से मसल्ला थे, और वो वहाँ खड़े हुए थे और उन्हें मात दे दी। पहाड़ी की दूसरी तरफ उनके घर थे। स्विस फौज यहाँ उनके मुकाबला में आ गई। उन्होंने उनके साथ कुछ ना किया था, बल्कि उन्होंने आकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस मासूम बच्ची ने दुनिया में क्या किया है? ये शैतान ही है जिससे अगर हो सका तो इसकी जिंदगी ले लेगा। यकीनन वो ऐसा करता है और ये उसका बेवक्त कदम है, समझे। स्विस लोगों ने कुछ नहीं किया था, वो अच्छे लोग थे, वो अपने घरों के दफा के लिए कोशिश कर रहे थे, वो अपने दफा के लिए खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक शख्स बनाम आर्नट वॉन विंकल राइट आ मौजूद हुआ। इधर ये फौज आ गई, वो सब घेरे गए थे। उन्होंने कहा, हम क्या कर सकते हैं। हर तरफ तरबियत याफ्ता आदमियों का समंदर था। शैतान भी इसी तरह करता है, तमाम तरबियत याफ्ता अपने नेजे ताने, हर शख्स आगे कदम बढ़ाता, 1-2, 1-2 करते उस नन्ही फौज पर लपक रहे थे। उन्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहने की जरूरत थी, बस यही काम उन्हें करना था, और वो सब अपनी तलवारें और नेजे उठाकर उन्हें हला कर सकते थे। इससे स्विस फौज का खात्मा हो जाता, सारा काम खत्म हो चुका होता। पहाड़ी के ऊपर उनके घर और उनके प्यारे थे, खतरा करीब था। उनकी औरतें छीनी और बेहुरमत की जाती और उनकी बेटियों और उनके बच्चों को कत्ल किया जाता और घरों को जला दिया जाता। उनकी खुराक और मवेशी और सामान और सब कुछ छीन लिया जाता। वो इस मकाम पर थे। लेकिन क्या हुआ, आर्नट वॉल वंकन राइड के दिल में एक तहरीक उठी। उसने कहा, अहले स्विट्जरलैंड, आज मैं स्विट्जरलैंड के लिए मर रहा हूँ, आमीन, आज मैं स्विट्जरलैंड के लिए मर रहा हूँ। लोगों ने पूछा, तुम क्या करोगे। उसने कहा, तुम सिर्फ मेरी पैरवी करो और जो तुम्हारे पास है उससे लड़ो। वो वहाँ खड़ा हुआ, उसने अपनी बर्ची नीचे फेंक दी और छोटी सी छड़ी उसके हाथ में थी, बिल्कुल इस तरह, और अपने हाथ बुलंद करते हुए ललकारते हुए आगे बढ़ा, इस तरह, ओ पुकारता हुआ आगे बढ़ता और कहता, आजादी के लिए रास्ता बनाओ। वो अपने पूरे जोर से दौड़ता हुआ सीधा फौज की तरफ गया, और जब उसने ऐसा किया तो जिस नेजे तक उसका हाथ पहुंचा, उसने उसको पकड़कर अपने सीने में चबोया और मर गया। अपने मरने से पहले उसने उन लोगों को बताया, कहा, मेरा एक छोटा सा घर और एक बीवी और कुछ छोटे बच्चे हैं। मेरा छोटा घर जिसे मैंने हाल ही में खरीदा है उसे छोड़ रहा हूँ, और कहने लगा, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आज मैं स्विट्जरलैंड के लिए मरता हूँ। उसने कहा, मैं कौम को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा हूँ, और वो एक हीरो था। अभी उन्होंने कोई जंग न लड़ी थी और उसका खात्मा हो गया। उन्होंने ऐसी बहादुरी से मुखालिफ फौज को मात दी कि उनकी फौज में अफरा तफरी फैल गई। स्विस लोगों ने इन पर पत्थर लड़का दिए और उन्हें मुल्क से भगा दिया। इसके बाद वो कभी वापस ना आए। ये कई सौ साल पहले का वाकया है, समझे। क्यों, एक अजीम कारनामा था। मगर ओ मेरे भाइयों, एक दिन जब जहालत, बिदतों, शकूक और बीमारियों और खौफ ने खुदावंत के लोगों को कैद कर रखा था, तो यीशु मसीह नामी शख्स ने कहा, आज के दिन मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, ये सच है। आर्नट ने अपनी फौज से क्या कहा था, मेरी पैरवी करो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से लड़ो। अगर तुम्हारे पास एक लाठी है तो लाठी ही से लड़ो, खौफ ना करो। अगर तुम्हारे पास छड़ी है तो छड़ी से लड़ो। अगर तुम्हारे पास पत्थर है तो पत्थर से लड़ो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से लड़ो। आज हमारा सिपा सलार भी हमें यही कह रहा है, मैंने खुदा के कलाम को लिया है और शैतान और उसकी कुदरत को मात दी है। उसने कलाम से शैतान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, आमीन। अब जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, अगर आपको इतना ही कलाम मिला है, खुदावन तेरा खुदा जो तुझको शिफा देता है, तो इसी से उसके टुकड़े कर दें, पैरवी करें, आमीन। अपने सिपा सलार की पैरवी करें। जी जनाब, यीशु ने उसे रेजा रेजा कर दिया। शैतान की ये तमाम खूबसूरत सल्तनतें, ज्यादा हुसन और हर चीज और तमाम जदीद अशिया जिसका हमारे साथ वास्ता नहीं, ये सच है, वो आज भी तमाम दश्ती जानवरों से ज्यादा चलाक है। जी जनाब, यीशु ने कहा था, दुनिया के फर्जंद खुदा की बादशाही के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। अब ये दो बड़े मोतारब, हम जा रहे हैं, अब मैं पैगाम खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। अब ये दो बड़े मोतारब फरीक सामने आ रहे हैं। ठीक यही वो घड़ी है जब बीमारियां दुनिया पर हमलावर हो रही हैं, तिब्बी साइंस लाजवाब हो गई है और हर चीज लाजवाब हो गई है। अब कुछ बाकी नहीं रहा और हम सिर्फ और फौज, खुदा की छोटी फौज, खौफ के बाज से किसी कोने में छुपी बैठी है। भाइयों, यही वो वक्त है जिसमें हमें आर्नट वॉन विंकल राइड की जरूरत है। यही वक्त है कि खुदा का दूसरा बंदा आगे खड़ा हो। ये एलिया के जाहिर होने का वक्त है, ये किसी चीज के वकूफ में आने का वक्त है। खुदा की फौज, अपने जहन बंद कर लें, कोई ऐसी बात सोचने के लिए मत रुकें जो शैतान आपके हवास के जरिए आपको देना चाहता है। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम कभी नाकाम नहीं हो सकता। ये दो बड़े लश्कर, जब दुश्मन सैलाब की तरह चढ़ आता है, जैसे कि आज के दिन है, तो खुदा क्या कहता है वो करेगा। खुदा का रूह उसके मुकाबला में एक मियार खड़ा करेगा। क्या आप इनमें से एक हैं? जी जनाब, हमें यकूब 4:7 में सिखाया गया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इसे पढूं। यकूब 4:7 है, शैतान का मुकाबला करो और तो वो सिर्फ दूर नहीं हो जाएगा बल्कि वो भाग जाएगा। शैतान का मुकाबला करें। आप शैतान का मुकाबला किस तरह करेंगे? उसी तरह जैसे हमारे सिपा सलार ने हमें करने को कहा। खुदा के कलाम को लें। खुदा का कलाम ही शैतान का मुकाबला करने का तरीका है। सिपा सलार ने हमें बताया कि ये काम किस तरह होगा। ठीक है, अब आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सोचते होंगे कि अब ये पुराना शैतान गजबनाक है, क्या आपका ख्याल है कि वो किसी बच्चे पर हमला करेगा? वो हर चीज पर हमला करेगा। उसने यस्सु पर भी हमला किया था। उसने यस्सु पर 3 खतरनाक हमले किए। क्या आप ये जानते हैं? शैतान सिर्फ एक ही बार हमला नहीं करता। वो किसी बीमारी के साथ आप पर हमला करेगा, फिर वो दूसरा हमला करेगा और कहेगा मौजजात का जमाना गुजर चुका है, तुम शिफा हासिल नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि ये सच है? उसने 3 यस्सु पर हमला किया। उसने खुदा के कलाम पर ईमान ना रखने के 3 खतरनाक हमले यस्सु पर किए। यस्सु कलाम था। यकीनन शैतान इसका यकीन नहीं करता था। अगर तू है, यहाँ वो किसी दुश्मन की तरह खतरनाक हमला करता है। यहाँ उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो मुझे एक मौजजा करके दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। भाइयों, उसने 3 खतरनाक हमले करते हुए कहा, अगर तू है। अब यस्सु ने क्या किया? यस्सु खुदा का कलाम था, वो कलाम था। उसने कलाम के साथ हमले का जवाब दिया। खुदा को जलाल मिले। मैं पूरी दयानतदारी से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त कलाम पेश करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सच है, यस्सु कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यस्सु कलाम था। उसने क्या किया? उसने शैतान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हो मेरे अजीजो, अब मैं पैगाम खत्म कर रहा हूँ। यस्सु ने क्या किया? वो कलाम था। बस उसने कलाम से शैतान के खतरनाक हमलों को काट डाला। उसने तूफान सिफ्त गोर सवारों के दस्ता की तरह यस्सु यानी कलाम पर हमला किया और यस्सु ने कलाम को लेकर शैतान के टुकड़े कर डाले। हालेलुया, यकीनन शैतान के टुकड़े कर डाले और उसे कलाम से शिकस्त दी। क्या आपने शैतान के हमला को देखा? ध्यान कीजिए, अब आखिर में गौर से सुनिए। उसका हमला क्या है? उसका हमला ये है कि हम खुदा के कलाम पर ईमान ना रखें। क्या यहाँ आपको सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई नजर आ रही है? सिर्फ 2 ताकतें हैं, शैतान और खुदा। आपके खिलाफ शैतान का हथियार क्या है? ये कि आपके अपने हथियार पर ईमान रखने से हटा दे। वो आपको गैर मुसल्ला करता है। आइए आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। अगर वो आपके अंदर बेइत्तेकादी पैदा कर दे तो आपका हथियार आम हैसियत का बन जाता है। अगर वो आपको यकीन दिला दे कि आपका हथियार पूरा मजबूत नहीं तो वो आपको गैर मुसल्ला कर देता है। हो भाई नेवल, मुझे उम्मीद है कभी बेइत्तेकादी का शिकार नहीं होंगे। देखें, जब वो आपके हथियार की तरफ से आपको अंदर से बेइत्तेकाद कर देता है तो वो फिर आपको गैर मुसल्ला कर देता है। जब आप हथियार डाल दें तो आपकी जंग खत्म हो जाती है, आप खत्म हो जाते हैं। अपना हथियार संभाले रखें और इसको फेंक ना दें। हम शैतान की बेइत्तेकादी को समझते हैं। आए, अब मैं थोड़ी देर में मजीद एक और बात कहना चाहता हूँ। रूस, ये मैं पुराने तजर्बाकार लोगों और बाइबल के तालब इल्मों और इसी तरह यहाँ और लोगों के फायदा के लिए कहना चाहता हूँ। आप रूस पर क्यों बहस और शोरगुल कर रहे हैं? क्या आप मुझे कहते नहीं सुन रहे कि बम से बचाव के लिए पनाहगाह तैयार करें? आप रूस के मुतल्लिक क्यों बहस कर रहे हैं? रूस कुछ नहीं है, वो कोई जंग नहीं जीतेगा, वो दुनिया को फतह नहीं करेगा। कम्युनिज्म दुनिया को फतह नहीं करेगा। लोगों को क्या हो गया है? क्या खुदावंत का कलाम नाकाम हो सकता है? सुनिए, अब ये टेप पर रिकॉर्ड हो रहा है। मैं पूरी दुनिया से और जहां कहीं भी ये टेप जाएगी मुखातिब हूं। और जो लोग यहां मौजूद हैं, मेरा ख्वाह कुछ भी हो, आप इस पर ईमान रखें। रूस यानी कम्युनिज्म कुछ भी फतह नहीं करेगा। खुदा का कलाम नाकाम नहीं हो सकता। रोमनिज्म दुनिया को फतह करेगा। आइए दानियल की रोया को लें, जो खुदा का कलाम है। तू ए दानियल, तू ए नबूकदनज़र बादशाह, ये सोने का सर है, यानी बाबल। इसकी जगह एक और सल्तनत बरपा होगी जो चांदी की होगी, देखें, जो के मादी और फारसी हैं। इसके बाद यूनानी आए, यानी सिकंदर आजम। इसके बाद फिर रोम आया। इसके बाद किसी कम्युनिज्म का जिक्र नहीं आता। रोम ने दुनिया को फतह किया। यीशु मसीह रोमी सल्तनत में पैदा हुआ और सताया गया। उसका पहला वक्त रोमी सल्तनत के जरिए आया, और अब उसकी दूसरी आमद के वक्त उसके पैगाम को रोमी तंजीमों से सताया जा रहा है, जो के उन सब की माँ है। और जब वो वापिस आएगा तो रोमी सल्तनत का सफाया कर देगा, और यहूदी भी हमेशा से इसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और रोमी सल्तनत का खात्मा करे। कैथोलिक मजहबी फिरका दुनिया की तमाम तंजीमों को इकट्ठा करके एक तंजीम बना रहा है। कलीसियाओं का इत्तेहाद खुद को मुनज्जम कर रहा है। ये रूस नहीं है, ये रोम है। खुदावंद यूं फरमाता है। जी हाँ, मुझे किताबे मुकद्दस का कोई एक हवाला दिखाएं कि रोम के अलावा कम्युनिज्म या कोई और दुनिया पर हुकूमत करेगा। क्या मादी और फारसी ने नबूकदनज़र की जगह ली? यकीनन। क्या उनकी जगह यूनानी आए? जी हाँ। क्या उनकी जगह रोम बरपा हुआ? क्या ये 10 ताकतों में तकसीम हुआ, जिसे अब हमने समझ लिया है? क्या आइजनहावर, जिसका मतलब है लोहा, क्रोशेव, जिसका मतलब है मट्टी, क्या ये वहां इकट्ठे हुए? उनका इजलास हुआ और क्रोशेव ने अपना जूता उतारा और उसे वाजे करने के लिए मेज पर मारा, बिल्कुल इस तरह, ताकि लोगों को दिखाए। बहुत अच्छा, मगर आज के लोगों के साथ क्या मसला है? ईमान को कहाँ होना चाहिए? क्यों आप ईमान नहीं रखते कि खुदा का कलाम सच है? और ये चीज यहाँ नहीं है। आजकल के खादमों को क्या हो गया है? कम्युनिज्म। आज हर मुनाद इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है। कम्युनिज्म कुछ नहीं, इसी चीज को शैतान एंड आपकी नाक के नीचे बुन रहा है, और आपको इलम तक नहीं। ये रोमनिज्म है, ये तंजीम प्रस्ती है, और रोम तमाम तंजीमों की माँ है। बाइबल कहती है कि वो बड़ी कस्बी है और उसकी बेटियाँ कस्बियाँ हैं, खुदा के खिलाफ, उसके कलाम के खिलाफ। ऐ सिपाहियों, कलाम को उठा लो। रहम का फरिश्ता मौजूद है, उसके कलाम के साथ खड़े रहें। मैं एक दिन मर मिटूंगा, लेकिन ये कलाम मिट नहीं सकता। ऐ कम उम्र लोगों, अगर ये मेरी पुश्त में ना हो सका तो आप ये देखेंगे, यही चीज है। क्या आपने आज सुबह की खबर सुनी? मिसिस केनेडी पोप से मिलने जा रही है, और पोप ने कहा, देखें, दुनिया के तमाम मजाहब, वो बहुत अच्छा, गालबन हम अगले इतवार इस पर मजीद तफसील मालूम करेंगे। देखें, रूस के मुतालिक परेशान ना हो, रूस साहिल पर की एक छोटी सी कंकरी है। कम्युनिज्म की फिक्र ना करें, आप रोमनिज्म पर निगाह लगाएं, जो कलीसियों के साथ इत्तेहाद कर रहा है। कलामे मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि कम्युनिज्म दुनिया पर हुकूमत करेगा। मैं तो कलामे मुकद्दस के मुताबिक चलता हूँ, मुझे इससे गर्ज नहीं कि कोई और चीज कैसी है। मेरा ईमान खुदा के कलाम पर है। ये रोमनिज्म है जो दुनिया पर काबिज होता है, और रोमनिज्म तंजीमों की माँ है। रोम से पहले कोई तंजीम ना थी, और हर तंजीम इसी में से निकली है, और ये बात बाइबल बताती है, वो कस्बियों की माँ है। मैं इस मौजू पर आधा दिन बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जब दुश्मन हम पर हमला करता है, तब ओ मैं आपको बताता हूँ, आपको हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? वापिस चले जाएं? क्या समझौता कर ले? नहीं, कोई हकीकी सिपाही तो ऐसा नहीं करेगा। नहीं जनाब, तब हम क्या करें? जहन, जो जहन मसीह के अंदर था, क्या बाइबल यही नहीं कहती? जो जहन मसीह के अंदर था, वही तुम्हारे अंदर हो। मसीह के अंदर किस किस्म का जहन था? कलाम के साथ खड़ा होना, ये सच है। वो कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ खड़ा रहा, और हर बार दुश्मन को शिकस्त दी। जब दुश्मन आप पर हमला करे और आपसे कहने की कोशिश करे कि आप ये करें या वो करें, तब आप क्या करेंगे? कलाम के साथ खड़े रहें, यही दुरुस्त है। तब आपको क्या करना चाहिए? कलाम को लें। कलाम क्या है? जो कुछ बाइबल कहती है, वो हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि खुदा का रूह ही कलाम है। समझे? गौर करें, और निजात का खोद और तलवार, यानी रूह की तलवार ले लो। रूह की तलवार क्या है? रूह जो आपके जहन के रास्ते आती है और आपके अंदर दाखिल होती है, और उस रूह की तलवार खुदा का कलाम है। रूह किसके साथ लड़ाई करता है? रूह कुछ किससे लड़ता है? हवास से या छूने की हिस्से? कलाम यानी दिल से। वाह, खुदा को जलाल मिले। वो किस चीज के साथ लड़ाई करता है? कलाम से, कलाम से। मुझे कहने दें, कलाम से, कलाम से। ये खुदा का कलाम है जिसको लेकर रूह लड़ाई करता है। खुदा का रूह सीधा शैतान के मुकाबले आता है और कहता है, यूं लिखा है, आमीन, यूं लिखा है, और शैतान भाग जाता है। हमें क्या करना है? तलवार को लेना है जो कि खुदा का कलाम है, और उसे खींचना है। किसके साथ? ईमान के साथ, ईमान की मजबूत हाथ से। ये दो धारी तेज तलवार है। अब्रानियों 4 में बाइबल कहती है ये दो धारी तेज तलवार है जो आते हुए भी काटती है और जाते हुए भी काटती है। भाइयों, वो क्या करता है? कलाम को लें, रूह को लें, रूह को अपने दिल में आने दें, अपना ज़हन खोलें और कहें, तेरा कलाम सच्चाई है। अब बहन, आप भी यही करें, तेरा कलाम सच्चा है। खुदावंद, मैं कोई तवज्जो नहीं करूंगा कि मैं क्या महसूस करता हूं या और कोई क्या कहता है। मैं ठहरा हुआ हूं। मैं अपनी तमाम रविशों को दूर करता हूं, मेरे तमाम तफकरात, तमाम शकूक और बेइतकादी जो कभी थी, हर एहसास जो कभी मौजूद था, तमाम बीमारी जो कभी मुझ में थी, और इसके अलावा जो कोई भी बात मुझ में थी, मैं इन सब को निकाल रहा हूं। मैं इनसे नजरअंदाज हो रहा हूं और सीधा अपनी रूह की तरफ आ रहा हूं। ऐ खुदावंद, उतरा। तूने कहा था, मैंने तुझे आजाद मर्जी बनाया है, तुम मेरे बेटे हो। ठीक है, मैं अपना दिल और अपना ज़हन खोलता हूँ। खुदावंद यीशु, अंदर आ। ईमान पर गिरफ्त मजबूत कर लें जो कि रूह की तलवार है। खुदावंद यूं फरमाता है, पुकारें हालेलुया, आमीन, फिर अपने सामने आने वाले हर शख्स को काटते जाएं, आमीन। ये बात है, हर दुश्मन को काटते जाएं। अगर कोई एक पुरानी रूह आपको कुछ एहसास दिलाने लगे तो उसे खुदावंद के कलाम के साथ काट दें। लेकिन हमारी कुवत इस बात में है, खुदावंद की खुशी ही हमारी कुवत है। मुझसे दूर हो, जरब दें, इसे दूर से जरब लगाकर कलाम से काट डालें। खा वो कोई बदरू हो, खा वो कोई दुश्मन हो, खा बीमारी हो, खा कमजोरी हो, जो कुछ भी हो, कलाम को लें और अपनी तलवार खींच लें। अगर आपकी पहली जरब पर ये ना हिले तो फिर जरब लगाएं, फिर जरब लगाएं, फिर जरब लगाएं, और उस वक्त तक जरब लगाते रहें जब तक आप नन्हे चूजे की तरह सुराख ना बना लें, या जब तक आप अकाब की तरह सुराख बनाकर झांकने के काबिल ना हो जाएं। कमजोरी के पुराने खोल से बाहर झांकें, काट कर अपना रास्ता बनाएं और कहें, हालेलुया, इससे आगे कौन है, आमीन। ये जंग है, ये सिपाही है, ये सलीब का सिपाही है। जी जनाब, हर दुश्मन को भगा दें। क्यों? क्यों? क्योंकि हम पहले से मुकरर शुदा इब्राहिम की शाही नस्ल हैं। जब इब्राहिम ने खुदा के कलाम की मुखालफ हर चीज का इनकार कर दिया तो उसने अपने रास्ते में आने वाली हर रिकावट को पामाल कर दिया। लोगों ने कहा, इब्राहिम तेरी बीवी ज़हीफ हो गई है, उसने इस चीज को रास्ते से हटा दिया। शैतान ने कहा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। इब्राहिम ने उसे रास्ते से हटा दिया और वो उस पर जरब लगाता रहा, यहाँ तक कि उसने काट कर रास्ता बना लिया। इससे आगे क्या है? खुदावंद, अपना खेमा यहाँ ले आ। वो गया और अपने लिए कुर्बानगाह बनाई। इस जगह पर शैतान आया और कहा, अब इब्राहिम, मैं तुझे बताऊंगा कि ये जगह दुरुस्त नहीं है, मैं यही काम करूंगा, तू इस जगह से दूर हो जा। वो कहता है, हालेलुया। लूत ने कहा, बेहतर है कि तू यहाँ आ जा, हम यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, हमने यहाँ एक तंजीम काम कर ली है, क्योंकि मेरी बीवी तालीमी सोसाइटी और शहर की हर चीज की सरबराह है। मैंने तुझे बताया था कि तुझे यहाँ आना चाहिए। सारा ने कहा, इब्राहिम, सारा चुप हो जा, हालेलुया, ठीक यही खड़ी रहे, यहाँ मुझे खुदा ने रखा है, मैं ऐन यही खड़ा रहूंगा। ये वो मकाम है जहाँ खुदा ने मुझे रखा है। तमाम ओले यस्सु नाम की कुदरत है, तमाम फरिश्ते सिजदे में गिर जाएं, शाही ताज को ले आएं और उसे ताज पहनाएं। मैं ठोस चट्टान मसीह पर खड़ा हूँ, बाकी तमाम दुनिया गिरती हुई जाएगी, बाकी तमाम दुनिया गिरती हुई रेत है, हत्ता के मौत भी, बल्कि हर चीज गिरती हुई रेत है। मैं ठोस चट्टान मसीह पर खड़ा हूँ। इब्राहिम की शाही नस्ल, शाही नस्ल, इसीलिए इंग्लिस्तान की इंतहाई मुंतखब फौज शाही फौज है, शाही खून और सब कुछ, और मसीह की शाही नस्ल, रुलकुस से ममूर कलीसिया है जो कि रुलकुस से ममूर है। ये क्या है? ये वादे के एतबार से शाही नस्ल है, ना कि अकल के एतबार से, बल्कि खुदा के वादे से। वो खुदा के कलाम के साथ खड़े रहते हैं और अपना रास्ता बना लेते हैं ये पुकारते हुए हालेलुया, यहाँ तक कि मौत भी आकर कहे ये तेरी आस्तीनों तक आ गया है। कहें यर्दन रास्ता दे दे, मैं पार जाऊंगा वादे की सरजमीन की तरफ, काट कर रास्ता बनाऊंगा। आमीन। क्या वाकया होता है जब जंग खत्म हो जाती है? अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ, यकीनन काफी हो गया है। जब जंग खत्म हो जाती है और मुकद्दसीन मार्च करते हुए घर को आते हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उस वक्त क्या हुआ था जब हिटलर फ्रांस में गया, तो क्या हुआ था? क्यों वो कहते थे कि हवाई जहाजों की वजह से आसमान को देखना भी मुश्किल था? जर्मन अंदर दाखिल हो गए, देखें वो उनके पास से गुजरते हुए फतह का जश्न मना रहे थे। जब स्टॉलन रूस में आया तो उसके पीछे कई मील तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर टैंक ही टैंक थे। उन्होंने बर्लिन में इतनी बमबारी की कि कुछ बाकी ना रहा था, इतनी बात है। और जब वो गए और ये जर्मन, ये रूसी फौजी जश्न मना रहे थे और इसी के साथ दाखिल हुए, आप जानते हैं कि वो कैसा मजाया सा काम कर रहे थे। एक दफा मैंने लंदन में एक तस्वीर में देखा था कि वो किस तरह दाखिल हुए। ये उस वाक्य की असल तस्वीर थी कि वो क्या हुआ था जब जश्न मनाते आ रहे थे। ओ मेरे अजीजों, जब हमने सुना कि जंग खत्म हो गई है तो हम पुकार उठे, हमने सीटियां बजाई। जब बहादुर वापिस आए तो हम उन्हें मिलने को गए, वो ललकारते थे, वो नारे लगाते थे। मेरा एक कजन भी जंग में गया था, उसने बताया जब वो वापिस आए थे तो तमाम पुराने लड़ने वाले लोग इतने ज्यादा जख्मी हो चुके थे कि उनका बिस्तरों से उठना भी मुमकिन ना था। बस जब वो आए तो उनको उठाकर बैरी जहाज की छत पर चढ़ा दिया गया ताकि दूर से आजादी के मुजस्मा को देख लें। उसने बताया जब उन अजीम आदमियों ने आजादी के उस मुजस्मा को देखा तो वहीं पुकारने और अपनी जगह से गिरने लग गए। वो 4 साल तक घरों से दूर जंग लड़ते रहे और जंग का हर सदमा उठाया था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी बीवियां, उनकी मंगेतर और माँ और बाप और बच्चे और तमाम प्यारे उस आजादी के मुजस्मे के पीछे थे। ये उसी चीज की नुमाइंदगी करता है जिसके लिए वो लड़ते रहे हैं। ओ, जब हीरो मार्च करते हुए आए तो सीटियां बजाई गईं और न्यूयॉर्क नारों से गूंज उठा। क्या ये छोटी बात थी? एक दफा जब कैसर एक बड़ी जंग से वापस आया तो उसने कहा दुश्मन पर फतह के इस जश्न में मैं चाहता हूं कि मेरा सबसे नामवर जंगजू मेरे साथ सवारी करे। और तमाम अफसरों ने अपने तमगों को चमकाया, सिपरों को चमकाया और आप जानते हैं मार्च किया बिल्कुल ऐसे जैसे हकीकी सिपाही करते हैं। थोड़ी देर के बाद एक जख्म खुर्दा बूढ़ा सा आदमी आ गया, वो जख्मी था। मेरे अजीजो, उसने ऊपर देखा और उनके साथ बिल्कुल इस तरह चल पड़ा। कैसर ने कहा ठहर जाओ, तुमने इन अफसरों की तरह वर्दी भी नहीं पहन रखी। कैसर ने कहा तुम यहाँ आओ। कैसर ने पूछा तुम ये जख्मों के निशान कहाँ से लेकर आए हो? उसने कहा मैदाने जंग से। कैसर ने कहा ऊपर चढ़ाओ, तुम ही तो वो शख्स हो जिसे मैं अपने साथ बिठाना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि उसने दिखाया कि वो जंग में था। ऐ खुदावंद, ऐसे शख्स पर रहम फरमा जो जंग में अपना हाथ कलाई से कटवा सके। मैं जंग के दाग लेना चाहता हूँ, जैसे पालूस ने कहा था मैं यीशु मसीह के जख्म अपने बदन पर लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मैदाने जंग में रहूँ। किसी रोज जब हमारा सिपा सलार आएगा जिसने हमें मुसल्ला किया है, जिसने हमें खुदा की जिंदगी यानी रुलकुस दिया है, जिसने हमें लड़ने के लिए अपना कलाम दिया है, जब हमारा सिपा सलार सवार होकर आएगा तो मैं उसके रथ पर बैठकर उसके साथ घर जाऊंगा। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? जब मैं अपनी बीवी का बाजू पकड़ा हूंगा, मैं इधर निगाह करता हूँ तो अपने भाइयों और उनकी बीवियों और उनके बच्चों को देखता हूँ। जब हम खुदा के फरदोस में चले फिरेंगे और फरिश्तों के नगमों से फिजा गूंज उठेगी, ऊपर बिल्कुल इसी तरह एक जश्न की तैयारी हो रही है। जब जंग खत्म हो जाती है तो हम ताज पहनेंगे। ओ मेरे अजीजो, ओ सलीब के सिपाहियों, आज सुबह ईमान के बाजू को खींच लो और इस हथियार को थाम लो। बहन, आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? क्या आप तैयार हैं? अपना हथियार तान कर कहें, ऐ खुदा मुझे कोई परवाह नहीं, शैतान ने मुझसे क्या कहा या किसी और ने मुझसे क्या कहा, आज सुबह मैं ईमान ला रही हूँ। जैसे कि कुछ रोज पहले मैं बयान कर रहा था, میرا خیال ہے کہ کچھ اتوار گزرے ہیں میں نے ایک آدمی کا خواب بیان کیا تھا. اس خواب میں اس نے دیکھا شیطان بالکل چھوٹا سا تھا اور وہ بھاگ کر اس کی طرف لپکا اور اس نے کہا باؤ. آدمی اچھل کر پیچھے ہو گیا اور شیطان اور بڑا ہو گیا. باؤ آدمی پھر پیچھے ہو گیا اور شیطان اور بڑا ہو گیا. بالآخر شیطان اس کے برابر ہو گیا اور اس پر غالب آنے والا تھا. آدمی جانتا تھا کہ اسے کس چیز کے ساتھ اس سے لڑنا ہوگا. اس نے ارد گرد دیکھا, اسے کوئی چیز نظر نہ آئی جس سے وہ اس کے ساتھ لڑ سکتا. اس نے بائبل اٹھائی اور شیطان نے کہا باؤ. اس آدمی نے بھی کہا باؤ. بالکل اسی طرح جواب دیا اور شیطان چھوٹا ہو گیا اور چھوٹا اور بھی چھوٹا ہو گیا اور بالآخر اس شخص نے کلام کے ساتھ اسے ہلاک کر ڈالا. بہن جی آپ بھی ایک سپاہی ہیں کیا آپ نہیں ہیں؟ کلام کو لے کر کہیں یوں لکھا ہے آمین. میں مرنے نہیں جا رہی, میں زندہ رہوں گی. میں اس ٹیبرنیکل میں بیٹھوں گی اور دوسرے لوگوں کے لیے خدا کی بلائی کے لیے اس کی ستائش کروں گی. مقدسوں کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. اے خداوند خدا, آسمان اور زمین کے خالق, آج ثابت کر دے کہ تو ہی خدا ہے. میں جتنی بھی منادی کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جتنی بھی باتیں کہوں لیکن خداوند تیرا ایک لفظ اسے ثابت کر دیتا ہے. یہاں جو رومال پڑے ہیں یہ بیمار لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. آسمانی باپ میری دعا ہے جب میں ان پر ہاتھ رکھوں تو تیری برکت اور قدرت ان میں سے ہر ایک پر ٹھہر جائے. اے خدا میں یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی مقدس حضوری سے ان رومالوں کو مسا کر, کیونکہ یہ کلام میں لکھا ہے. یہ کلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ رومال اور کپڑے پالوس کے بدن سے چھوا کر لے جاتے تھے اور جن مریضوں پر ڈالتے تھے ان سے بدروحیں نکل جاتی تھیں اور مختلف بیماریوں سے شفا پا جاتے تھے. اب ہم تو پالوس رسول نہیں ہیں مگر تو وہی خدا ہے اور تو آج بھی وہی رول کس ہے. میں خداوند یسوع کے نام سے ان رومالوں پر ہاتھ رکھتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ تو ہر ایک کو برکت دے اور شفا عطا کر. اور اے خدا یہاں بستر پر ایک بچی بیمار پڑی ہے. وہ ایک خوبصورت بچی ہے, وہ زندہ نہیں رہ سکتی. خداوند شیطان نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس دنیا کے پیارے ڈاکٹروں نے اس بچی کی جان بچانے کے لیے بے شک بڑی کوشش کی ہے لیکن ان سے کچھ ہو نہیں پایا. انہوں نے اپنا علم آخر تک استعمال کیا, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اے خداوند میں بہت خوش ہوں کہ یہاں ایک اور باب لکھا پڑا ہے. ہم ایک اور صفحہ پلٹ سکتے ہیں اور اس صفحے میں ہم عظیم ڈاکٹر کو آتا دیکھ سکتے ہیں. آج صبح ہم اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں. اب اے خداوند کیا تیرے کلام میں نہیں لکھا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے؟ خداوند اگر میں ایماندار نہیں ہوں تو مجھے آج صبح ایماندار بنا دے. اگر یہ چھوٹی لڑکی ایماندار نہیں ہے تو اسے اب ایماندار بنا دے. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. اگر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے. یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. خداوند یہ تیرے الفاظ ہیں, یہ تیرے الفاظ ہیں, یہ تیرا کلام ہے. اور اب تیرا خادم ہوتے ہوئے جیسا تو نے فرمایا ہے, جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. اور اگر تم اتفاق کر کے کسی کو چھو گے اور مانگو گے تو وہ تمہیں دے دوں گا. اے خدا غالباً یہ بچی آج اس عمارت کے اندر سب سے زیادہ بیمار ہے, کیونکہ تیرے بغیر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتی. وہ سب سے زیادہ بیمار ہے. بس ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں جیسا کہ یہاں ہر سپاہی موجود ہے اور اس گروہ میں ابراہیم کی شاہی نسل موجود ہے. ہم شیطان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور اے شیطان تو پہلے ہی سے بھاگنے کی تیاری کر چکا ہے, کیونکہ ہمارے ہتھیار چمک رہے ہیں اور رنگ دمک رہے ہیں. اس لڑکی کے لیے مرد اور عورتیں تلواریں تھامے ہوئے تیرے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. اے شیطان اس لڑکی میں سے نکلا, اس بچی کو چھوڑ دے. ہم زندہ خدا کی فوج کی حیثیت سے تیرا مقابلہ کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے اسے چھوڑ دے. میں اس پر ہاتھ رکھنے جاتا ہوں اور اے شیطان تو نے اس بچی کو باندھ رکھا ہے, تو نے اس پر ظلم کیا ہے. میں جانتا ہوں کوئی انسان تیرے مقابلہ میں کچھ نہیں, لیکن تو میرے خداوند کے مقابلہ میں کچھ نہیں. بس میں اسی کے نام سے آتا ہوں. اے شیطانی روح اسے چھوڑ دے. اے بیماری کی بدرو اس بچی میں سے نکلا اور آج کے بعد یہ آزاد ہے. میں یسوع مسیح کے نام سے یہ اعلان کرتا ہوں. اب اے خداوند خدا तू जिसने मुर्दों को जिंदा किया और साबित किया कि तू ही खुदा है। इस नौजवान औरत को दोबारा सेहत और कुव्वत के साथ खड़ा कर ताकि वो इस इमारत में खड़ी हो जाए। शैतान इसमें से निकल गया है। खुदावंद खुदा इसे सेहत याब कर दे, बख्श दे कि वो खुदा की इज्जत और जलाल के लिए जिंदा रहे। ये बोला जा चुका है, बस अब पूरा हो। क्या यहाँ और लोग भी हैं जो हाथ उठाकर कहना चाहते हों, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए दुआ की जाए, मैं बीमार हूँ, मुझे खुदा की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि हमारे पास कितना वक्त है, हमारे पास इतना ही वक्त है कि वो लोग यहाँ से गुजर सकते हैं। आज सुबह मैं हकीकी तसल्ली महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ बिली, मैं चाहता हूँ कि यहाँ आ जाओ और इस तरफ से पहले उस ग्रुप को अकेले आगे लाया जाए। पहले इस ग्रुप को आगे लाएं, फिर इनके पीछे वालों को लाएं, जितनी निश्चितों के दरमियान रास्ते में हैं, फिर हम उनको इस तरह ले लेंगे, फिर उन्हें। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई नेवल और कुछ खादम भी आकर मेरे साथ खड़े हो जाएं, ठीक यहाँ पर, ताकि बाद में आप उन्हें फिर निश्चितों के दरमियानी रास्ते से ले जाएं, ठीक है? ठीक है। अब आप में से कितनों ने अपने हथियार पहन लिए हैं? अब इस मरीजा की हालत बदल गई है, घर जाइए और अब आप बिल्कुल सेहत याब हो जाएंगी। आमीन। ओ मेरे खुदाया, ए तमाम सिपाहियों, तलवार खींच लो, ए सलीब के सिपाहियों, आगे बढ़ते जाओ। मैं ठोस चट्टान मसीह पर खड़ा हूँ, बाकी सारी दुनिया गिरती हुई रेत है। ठीक है, यहाँ आ जाइए, प्लेटफॉर्म की इस तरफ आ जाइए। जब बीमार लोग गुजर रहे हैं तो बाकी सब लोग दुआ में मशगूल रहें। यीशु के नाम में इस औरत को शिफा मिले, आमीन। अपनी तलवार खींच लें, आगे बढ़ें और ललकारते रहें।
Thank you. Father, just a minute of the gospel. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago. 2 years ago. The prostate. The doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one this I for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Ever had.
Yes.
Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. And here he is, 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or
81.
2 weeks revival, just held 2 weeks revival and preached every night. 81 years old, healed with faith.
ठीक है बहन, अब आपका वक्त है. क्या आपका ईमान है? ए मसीही सिपाहियो, आगे बढ़ो. ठीक है बहन जी, आप सबके सब बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं. खुदावंद यूं फरमाता है, हम यहाँ लटके क्या कर रहे हैं? ऐ शैतान, तू खत्म हो चुका है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. हम माऊदा सर जमीन की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं. ये क्या है? ये पहाड़ जरबाबल के आगे क्या है? ये कौन है जो इसके आगे खड़ा रह सकेगा? ये मैदान हो जाएगा. क्यों? हम इसे दो धारी तलवार से जमीन पर दे मारेंगे. ये सच है. हालेलुया! उन्होंने क्या किया था? इसराइल जब जंग के लिए गए तो पहली चीज जो उनके आगे चली, ये पहली चीज क्या थी? सबसे पहले गाने वाले चले. उन्होंने किसकी पैरवी की? ऐद के संदूक की. फिर जंग हुई. ठीक है, क्या अब आप इस पर ईमान रखते हैं? हम मसीही सिपाहियों आगे बढ़ो गा रहे हैं. हम हर शक को दूर कर रहे हैं. अब हम अपने पाँव पर खड़े होकर जंग के लिए मार्च करेंगे. आइए अब सब लोग खड़े हो जाएं. हम उसे कैसे शिकस्त देंगे? कलाम से. अब जितने खुदावन पर ईमान रखते हैं कहें आमीन। हालेलुया। क्या आप सब इस पर ईमान रखते हैं? हम फतेह हैं। अब दुश्मन कहाँ है? हमारे पांव के नीचे। क्या आज सुबह आप तैयार हैं? मसीह में उठ खड़े हों। बहन, ये अब खत्म हो चुका है। क्या आप ईमान रखती हैं? अब आप घर जाइए। क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? बहन कहती है, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है। दीगर कितने लोग ठीक महसूस कर रहे हैं? जब वो जोर से ललकारते तो दीवारें गिर पड़ती। आमीन। और उन्होंने शहर को ले लिया। आमीन। उन्होंने यरूह को कब्जे में ले लिया। आमीन। आमीन। क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं? अब आज रात की इबादत को फरामोश ना करना। भाई नेवल शाम को इबादत कराएंगे और पैगाम देंगे, और इतवार, और अगर खुदावंत की मर्जी हुई तो अगले इतवार मैं यहाँ आ मौजूद हूँगा। आइए अब रवाना हों, और अब इस इमारत से निकलते हुए यूं कहते चलें, ऐ मसीही सिपाहियों, आगे कदम बढ़ाओ, और आज के दिन से फिर कभी तलवार को म्यान में ना डालें, इसे खींच लें, फतह करें। वो फतह करने के लिए फतह करते हुए आगे ही बढ़ते गए। ठीक है, आइए फिर पहले मिस्र से शुरू करें।